نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير طارق قرآن 2021 اس کا اللہ کے حکم سے آج ہم پارہ نمبر 5 کریں گے پارہ نمبر 5 کا ٹاپک نام کیا ہے والمحصنات ذرا سا رکھئے اور ایک عورت ہونے کے ناطے اس نام پر نظریں گاڑ دیجئے والمحصنات خواتین عورتیں شادی شدہ قلعہ بند عورتیں یعنی یہ پارہ نہ صرف یہ ہے کہ عورتوں کے نام سے بلکہ شادی شدہ عورتیں اور بہت ہی محفوظ خواتین کیونکہ لفظ محصنہ حسن سے ہے ہا سوات نون کہتے ہیں قلعے کو تو قلعہ بند عورتیں اسلام میں عورت کی شادی اس کی آزادی ہے کس رنگ میں کہ اب کوئی اس کے بارے میں نہیں سوچے گا کسی مرد کے خیالات پہ وہ عورت نہیں آئے گی اب وہ ایسی محفوظ اور سیکیور عورت ہو چکی کہ جب تک اس کا شوہر زندہ ہے یا وہ اس عورت کو اپنے نکاح میں رکھتا ہے یعنی ایک عورت جب تک کسی ایک مرد کے ساتھ رشتہ ازدواج میں رہتی ہے دنیا کے ہر مرد کے لیے وہ عورت حرام ہے اس سے بڑی آزادی اس سے بڑی سیکیورٹی کا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں مختلف رشتوں میں جو بانٹ دیا تو اس میں شوہر بیوی کا رشتہ بہت سا ہے تو اس بارے میں انشاءاللہ خواتین سے متعلقات باتیں ہیں اور جہاں عورت کی بات آئے گی وہاں شہوت کی بات آئے گی تو یہ پارہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 24 سے لے کر 147 پر محیط ہے اور سورۃ نساء قرآن پاک کی طویل سورتوں میں سے اگر دیکھیں سورۃ الفاتحہ کے بعد تو یہ چوتھے نمبر کی سورت ہے آج ہم اس پارے کو جس تھیم پہ لیں گے وہ بہت ہی زیادہ جس کو آپ کہہ سکتی ہے کہ ضرورت طلب موضوع ہے جس پہ بات کی جائے اور قرآن اللہ کا یہ کلام چاہے ہمیں ایک مہینے کے لیے ہی ادھر کیوں نہیں مل رہا یا ایک مختصر سا شارٹ سا ورژن ہی کیوں نہیں لیکن معاشرے کے رجحان اور معاشرے میں جو پھیلی ہوئی چیزیں ہیں ان کو ڈسکس کیے بغیر اگر ہم آگے چلے جائیں تو یہ زیادتی ہوگی تو آج اسی پارے کی آیت 27 کو ہم اس پارے کے مرکزی خیال کے طور پر سمجھیں گے واللہ یرید ان یتوب علیکم اور ہاں اللہ تو تم پر اپنی رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے لیکن اللہ کی شریعت کے ساتھ ساتھ معاشرے میں ایک اور گروہ بھی ہے اور وہ کون ہے وہ یرید الذین یتبعون الشہوات مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کیا ان تمیلو میلن عظیما کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ تو گویا کہ آج ہم شہوت کی بات کریں گے شہوت کی بات کیا ہوتی ہے میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے مجھ میں سے کوئی آج کے دور میں اس لفظ سے نا آشنا ہو ہاں جن کی اردو اچھی نہیں تو ان کے لیے لسٹ خواہش اور ایسی خواہش وہ جو انسان کو دیوانہ کر دے ایک انسان اس طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بے چین ہو جائے کہ ماں بہن بیٹی کا فرق مٹ جائے اگر وہ جنسی خواہش ہے شاپنگ کی خواہش ہے تو یہ بھی بھول جائے کہ میرے پاکٹ میں کتنے پیسے ہیں میرے بینک میں کتنے پیسے ہیں اور اتنی شاپنگ کر لے کہ پھر قرضوں کے بوجھ میں چلا جائے اور شہوت کیا ہے کہ ایک انسان اتنا زیادہ اس چیز کے اوپر اپنے آپ کو مائل کر لے کہ ایٹ اینی کاسٹ لکھیں ہم نے پہلے پارے کے میں اور پھر دوسرے پارے میں بھی ایک چیز سیکھی تھی ایک دعا کی صورت میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرتی حسنتم وقنا عذاب النار سورۃ بقرہ کی یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک ایمان والا اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگتا ہے لیکن حسنہ کی شرط کے ساتھ تو لکھیے شہوات کی دنیا حسنہ کی قید کو ہٹا دو اور یہ قید نہ صرف یہ ہے کہ دنیا کے رزق کو لینے میں حلال اور حرام کی حدوں کو پامال کرنے میں ہے بلکہ یہ قید ہے وہ कि जिसको लोग हर जरूरत को पूरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसमें आप जितना ज्यादा अपने आप को इंडल्ज करेंगे, आप महसूस करेंगे कि आज ये आवाजें आ गई। एक बहुत बड़ा नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, या हमारी आदत नहीं ना हमारी ये पॉलिसी है, लेकिन एक बहुत बड़े रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उनका ये जुमला बहुत दिन अखबारों की जीनत भी बना और मीडिया पे भी आया, थोड़ी सी पीछे की बात है, और उन्होंने कहा कि जब मुझे कदम कदम पे फ्रेश दूध मिल सकता है तो मैं क्यों गाय भैंस पालने की जहमत गवारा करूं। मुराद क्या था कि बीवी को रखना, शादी करना, एक औरत का खर्चा पालना, ये तो बहुत मुश्किल है, तो एक भैंस पालने के बराबर है, क्योंकि भैंस ने खाना भी मांगना है और पीना भी मांगना है। तो जब मुझे बाहर हर कदम पे एक अच्छी खूबसूरत हसीन औरत मिल रही है तो मुझे क्या जरूरत है जिम्मेदारियां लूं। और ये जुमला ऐसे लोग बहुत खुशी से प्रमोट करते हैं जिनको कुरान इस आयत में कहता है वह युरीदुल्लज़ीन यत्तबेउन शहवात। ये पैरवी नबी की नहीं करते इत्तबाए रसूल की सूरत में, ये पैरवी नहीं करते किताब हिदायत की, क्योंकि ये ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन है, बल्कि ये पैरवी करते हैं अपनी शहवात की, यानी इनको गाय से सिर्फ दूध ही चाहिए। जिन और लोगों को औरत एक सेक्स ऑब्जेक्ट के लिए चाहिए, उनके लिए तो ये तारीफ बहुत प्यारी है, वो तो जीवारे जाएंगे, सदके जाएंगे, बड़े फूल बूटे भेजेंगे, बहुत सारी चीजें भेजेंगे कि जो आपने तारीफ किया ये तो कभी भी ना की, ना सुनी गई, ना किसी ने बताया। जब मुआशरे में ऐसी आवाजें चंद बड़े लोगों और चंद चमकते दमकते नामों के साथ शुरू हो जाती है ना, तो मुआशरा जो है फिर वो जिस पुकार के ऊपर चलता है, तो लिखे उस मुआशरे में दो शरीयतें साथ साथ चलती हैं। यानी आप ये जुमले खुद लिखिए ताकि आपका पूरा फोकस रहे और आप फिर मेरे साथ साथ चले इस मौजू को समझने में। यानी शहवत की तारीफ क्या है, शहवत क्यों पैदा की गई, शहवत में लोग क्यों इंडल्ज हो जाते हैं, इसके असबाब क्या हैं, फिर हराम शहवत का इलाज क्या है, ये तमाम मौजूद हमारे आज के इस बारे में रहेंगे। बजाय इसके सब कुछ शुरू में आपको दे दूं, साथ साथ आयतों के बीच में ज्यादा दूंगी, लेकिन याद रखिए कि जब ऐसा दौर आ जाता है तो फिर उसका नतीजा क्या निकलता है कि लोगों को सच्चा दीन मुश्किल लगता है, दीन की बात हद से बढ़ी हुई, एक्सट्रीमिज्म और बहुत ही ज्यादा हदों से गुजरती हुई दिखती है, क्योंकि सीधी सी बात है, लिखिए शहवत वर्सेस शरीयत। शहवत के तो आप पैरोकार हैं, जो शहवत के पीछे लगेंगे उनको शरीयत अच्छी नहीं लगेगी। मैं इसकी अक्सर एक मिसाल देती हूँ, शायद आप में से किसी को मैं फायदा दे सकूं। माँ का दूध बच्चे को बहुत अच्छा लगता है, जब तक बच्चा दूध पीता रहता है ना, तो वो बाहर की दूसरी चीजें जो चॉकलेट्स और ऐसी चीजें नहीं मांगता। एक दफा जुबान को टेस्ट लग गया तो फिर फीका दूध भी अच्छा नहीं लगता, फिर वो बच्चे दूध छोड़ के और किस्म के फिजी ड्रिंक्स पे आ जाते हैं। इंसान के नफ्स का भी यही हाल है, जब शरीयत पे रहें तो शरीयत अच्छी लगती है ही बहुत प्यारी। आप खुद इसको डेली सुन रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। शरीयत में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको समझना है, लेकिन जब मुआशरों में ऐसी चीजें आम कर दी जाती हैं कि जिसके बाद फिर चलो तुम जिधर हवा हो जिधर, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा माल मेरी मर्जी, मेरा घर मेरी मर्जी, फिर जब इस छोटे से खोपड़ी के बर्तन के अंदर आप इतने मालिक के कायनात की शरीयत को डालना चाहते हैं तो आपको बात समझ नहीं आती। नुकसान क्या होता है कि लोगों को फिर वो लोग अच्छे लगते हैं जो कहते हैं कि नमाज़ें भी पढ़ो और जो चाहो देखो, जो चाहो सुनो, जो चाहो करो। और याद रखिये कि शहवत का ताल्लुक ना सिर्फ ये कि दिल से है, शहवत का ताल्लुक आंख से भी है। आंख गलत देखती है, यह है शहवत। कान गलत सुनते हैं, यह है शहवत। जुबान हराम के चस्के लेती है, यह है शहवत। होंठों से भी कुछ काम लिए जाते हैं, हाथों से भी चिटचैट होती है, कदम भी चलते हैं। सही बुखारी की रिवायत है कि जिस्म का हर उस जो है वो जिना करता है। पहले इंसान के दिल में ख्याल आता है गलत चीज का, फिर हाथों से टच करता है, और कदम का चल के जाना। कहीं ना कहीं कोट करूंगी हदीस जहां ये मौजू आगे जाकर आएगा, लेकिन आज सिर्फ समझिए इस बात को। क्या आज आपको चारों तरफ ये राल टपकता हुआ कल्चर नहीं दिख रहा? शहवत क्या है? राल का टपकना। کتے کی بہت بری مثال ہے آٹھویں پارے میں آپ پڑھیں گے جا کر انشاءاللہ تعالی، کہ رال ٹپکاتا رہتا ہے۔ یہ رال ٹپکوانا، عورتوں کا سچ سمر کر بڑی بڑی سکرینوں پہ آ جانا، اور ایک کال پہ کال گرل کا آ جانا، اور دوسری طرف سیدھی سادی گھر کی عورت جس کو ماں باپ بڑے لاڈ اور چو سے بہا کے لائے، اس کی دن رات کی ضروریات کا پورا کرنا، اس کو سبزی بھی چاہیے، گوشت بھی چاہیے، دال سبزی بھی چاہیے، اس کے کپڑے لگتے بھی ہیں، کہتے ہیں چھوڑو۔ آج ہماری مسلم یوتھ میں بھی اکثر لوگ شادی سے اوائڈ کرنے لگے۔ بس مائیں تڑپتی ہیں، کہتی ہیں بچے شادی نہیں کرنا چاہتے، اور بیٹے، میں کہتی ہوں اگر بیٹا جوان ہے اور اس معاشرے میں رہ رہا ہے کہ جہاں ہر طرف دل پھینک دنیا ہے، تین لفظ تو عام کر دیے، آپ گوگل پر ڈال کے دیکھیے، پھر جو گندگی دیکھے، بچوں کو بھی وہ تین لفظ آتے ہیں، ہر طرف تو دل پھکے ہوئے، ہر طرف تو خرابیاں ہیں۔ تو جب اس معاشرے میں ایک جوان بالغ بچہ کہتا ہے میں نے شادی نہیں کرنی ابھی، تو دیر از سم تھنگ رانگ، یہ ایک سائن ہے، یا تو فزیکلی کچھ ویکنیس ہے اس میں جس سے وہ اب اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے کہ میں کسی طرح اپنے آپ کو سیٹ کروں، یا پھر اس کی کوئی اور گڑبڑ ہے۔ ورنہ عام مرد شادی کے فوراً بعد، یعنی بلوغت کے بعد، اس کی خواہش ہوتی ہے۔ آپ چھوٹی سی عمر میں لڑکوں کو شادی کا ذکر کریں تو ایک دم اس کے اندر ایک جھیمپا پن آ جاتا ہے۔ تو لہذا ہوا کیا، کان آنکھیں زبان گندی ہو گئی۔ تو آگے چلیں گے، دعا سیکھیں گے آج کے اس موضوع سے متعلقات میں سے، اس پارے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منیش۔ ایک ایک عضو کو اللہ کے نبی نے اس آیت میں کھول کر دے دیا، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ ایک ایسا دور آنے والا ہے امت مسلمہ میں بھی کہ جس میں لوگ اپنے جسم کے ہر عضو سے شہوت کا شکار ہو چکے ہوں گے، اور پھر وہ ایسے ایسے کام کریں گے خواہش کو پورا کرنے کے نام پہ کہ وہ انسانوں نے بھی کبھی نہ سنے نہ دیکھے۔ اور جتنا کلوز سرکٹ بڑھتا جاتا ہے غیر مسلم کلچر، غیر مسلم معاشرے، جب ہماری رینج میں زیادہ سے زیادہ آنے لگتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، پھر آپ روک نہیں سکتے۔ آج ان ساری ماؤں سے پوری محبت اور ہمدردی کے ساتھ، جو پوری کوششیں کرنے کے باوجود بھی بچوں کے اندر ابھی وہ ایمان نہیں دیکھ پاتی جو ابو بکر، عمر اور عثمان کا ایمان تھا، اور ابھی ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ والی صداقت اور سچائی نہیں دکھتی، تو معاشرے کا اثر ہے۔ آج سے یہ دعا جو آپ کے سامنے ہے، اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کو یاد دلانے کے لیے رکھ لیجئے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتی ہوں اور مانگتا ہوں اپنے کان کی برائی سے، نظر کی برائی، زبان کی برائی، دل کی برائی، اور اپنی منی کی برائی سے۔ آپ سم کان سے بھی واقف ہیں، نظر سے بھی واقف ہیں، زبان سے بھی، دل سے بھی۔ آخری لفظ شاید کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آئے، تو وہ مادہ جو شہوت کے ساتھ بہایا جاتا ہے، بچے کی تخلیق میں آنے والے مراحل میں ایک چیز۔ یہ دعا ہے جس کو آج کثرت سے یاد کیجیے۔ کان غلط سنتے دیکھتے، کانوں سے جب غلط چیزیں سامنے آئیں گی، اشتہا امیز باتیں، وہ خوبصورت جملے، وہ سینٹیمنٹل ڈائلاگ ہیں، وہ غنا کی صورت میں میوزک کے ساتھ دل کے تاروں کو چھو جانے والے گانے ہیں کہ جس میں حلال حرام تو ہوتا نہیں، اس میں تو بس ایک لڑکی ہے اور ایک لڑکا ہے، اور اب ایک لڑکی اور ایک لڑکے سے بھی بات آگے بڑھ کے گینگز تک جا چکی ہے، کیا کریں گے آپ ان کا؟ کانوں کا شر ہے یہ، یہ شہوت کی طرح لے جائے گا، پھر آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں اس میں کیا مشکل ہے۔ آپ کو تو لگے گا کہ فلاں بچہ سبق پڑھ رہا ہے، اور اللہ کرے گا ایسے ہی ہوگا، لیکن آپ اپنے اوپر رکھ کر سوچئے، یہ جو دور آگے آنے والا ہے، آپ اپنے بچوں کو چیز نہیں کر سکیں گے۔ پہلے آپ پاسورڈ بدل دیتے تھے، پہلے آپ گھر کا وائی فائی بدل کر دیتے تھے، اور یہ آنے والے دور میں ہر بچے کی چپ اس کے اپنے ہاتھ میں ہوگی، اور آج بھی ہے، ماں باپ بھی تو بچوں سے پاسورڈ مانگتے ہیں۔ پابندیاں اندر لگانی ہے۔ یہ موضوع سننے کے بعد آپ کے دل میں یہ تڑپ آنی چاہیے کہ اللہ، میرے بچوں کو اردو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی، بس ہدایت کی بات تو سمجھ آتی ہے، پاس بیٹھ کر، یعنی کہ تمہیں سنا رہی ہوں، خود سننے کے ساتھ اپنے بچوں کو ایسی چیزوں کی طرف مائل کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں، من شر قلبی، قلب کا ٹاپک ہے، اور یہ ہے وہ لفظ جس نے کل سے مجھے سونے نہیں دیا، اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ، پانچواں پارا جو شریعت ورسز شہوت سے بھرا پڑا ہے، میں اس موضوع پہ کیوں نہ بولوں۔ میں آپ کو ہلکی سی بات نئے لوگوں کو بتا دوں، پہلے والوں کو تو پتہ ہی، الحمدللہ بہت اوائڈ کرتی ہوں، ऐसे मौजूआत कि जिसमें बज़ाहर लोगों को वो रंग ना दिखे जो कुरान के कह लीजिए कि रस्मी रिवायती रंग में होता है, मैं नहीं बोलती उस पर। जहां बात आती है वहां बात करती हूँ। अक्सर लोग कहते हैं हमारे बच्चों को समझाएं, हमारी बेटियों को समझाएं, ऐसे कपड़े ना पहने, वैसे ना पड़े, मैं नहीं बात करती। मैं उनको हमेशा एक जुमला कह देती हूँ जो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की तरफ कोट किया जाता है कि तुम अपने बच्चों को कुरान सिखा दो, कुरान उनको सब सिखा देगा। लेकिन यकीन कीजिए कि सवा कल्ब के टॉपिक ने मुझे इधर ही पांचवें पारे पे इस बात करने पे माइल कर दिया, क्योंकि हमारा टॉपिक है हिदायत का तलबगार दिल। जब दिल में हिदायत की तलब है, और मैं आपसे ही मुखातिब हूँ इस वक्त, आप में जो साथी इस वक्त अपनी हिदायत की तलब से ये पारा सुन रहे हैं, तो आपके लिए यह है ये पारा। कोई बात नहीं, माशरे का बुरा असर है, दोस्तों का मामला है, कुछ भी है वो आगे हम देखेंगे। लेकिन अगर आपकी आंख, आपके कान, आपकी शर्मगाह, आपके प्राइवेट किसी हराम के मुर्तकिब हो चुके हैं, कोई बात नहीं, इस दुआ को आज से मांगना शुरू कर दें। इंशाल्लाह आप इसकी तासीर देखेंगे। देख के पढ़िए, उर्दू तर्जमे से पढ़िए, नॉर्वेजियन तर्जमे के साथ पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए। आप इस दुआ को मांगते वक्त रो पड़े, इस वक्त भी आप मेरी बात सुने तो रोए, क्योंकि अल्लाह का कलाम आपकी जुबान, आपके कान, आपके दिल को पाक करने के लिए बिल्कुल अपना सारा कुछ देने को तैयार है। और इस वक्त कोई नहीं रोक सकता आपको आपकी हिदायत से करीब आने पे। मत सोचिए लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, मत सोचिए कि माशरे में आपका नाम क्या है, मत सोचिए कि आप मशहूर किस नाम पे, और ये भी ना सोचिए कि आपके फेसबुक चैनल और आपके यूट्यूब चैनल से क्या जाता है। मत सोचिए कि लोग अमूमन आपको कॉल किस बात पे करते हैं। हर बंदा अपने ऊपर लेकर सोचे, आखिर कब्र में मैंने तन्हा जाना। और मत कोई सोचे कि शो बिजनेस में मेरा कहां नाम आ गया, मेरे कितने फैन, मेरे कितने परस्तार हैं। ये सोचिए कि जिस्म से रूह निकल रही है, और जिस्म से रूह के निकलते ही आपका बस एक नाम रहेगा, मेरे नाम की तरह जब मेरी रूह निकलेगी, और वो डेड बॉडी है, वो मैयत है, वो लाश है। तो उस वक्त हमसे जिन बातों का सवाल होना है ना, वो हमारे कान आंख का है। इंशाल्लाह आगे हम अगले पारों में इसको बहुत पढ़ेंगे, क्योंकि हिदायत के एतबार से यही नाम है। तो आप आज से बस अपने रब से चुपके चुपके किसी को मत बताएं कि आपसे क्या गुनाह हुआ। ये भी मैं आप सब प्यारों को कहूंगी, आपकी आंख ने क्या देख लिया, आपके कान ने क्या सुन लिया, आपकी जुबान ने क्या चख लिया, हलाल और हराम का फर्क मिट गया। मत सोचिए इस वक्त, बस इस वक्त आप ये कहिए कि आपका रब तव्वाबुर रहीम है, और वो आपसे इंशाल्लाह राजी होना चाहता है। तभी तो उसने आपके अंदर हिदायत की ये तलब डाली। और आप देखिए कि अमूमन इंसान जब इन चीजों में इंडल्ज होता है ना, तो कभी कभी दूसरे उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अगर अनमैरिड शख्स है तो घर में दूसरे भाई बहन है, माँ बाप है, घर में बहनें होती हैं। कोई किसी गैर औरत के साथ जब कर जिना का इरादा करता है तो अपनी बहन को याद कर ले। अल्लाह के नबी ने ऐसा इलाज किया था एक शख्स का कि जिसमें मुख्तलिफ बुराइयां थी, तो उसने आकर पूछा अल्लाह के नबी जिना पे दिल आता है क्या कर? और याद रखिये यही आज पढ़ने लगे हैं कि कभी कभी लोग कहते हैं क्या करें, तो ये क्रेविंग हो जाती है। आप जो काम ज्यादा करेंगे ना, आपको उसकी आदत होगी, फिर मजा खत्म हो जाता है। ऐसे लोग, यानी हमारी बहुत अच्छी साथी हैं, अल्लाह ताला उनको भी इसमें यूज करे, इस मौजू को सुनने में, कि उन्होंने मुझे बताया कि उनका फील्ड ही है, साइकाट्रिस्ट है, लेकिन साइकाट्रिस्ट होने के नाते वो ये काम करती हैं कि लोग उनसे टाइम लेते हैं और वो अपनी ये चीजें, किसी को पोर्नोग्राफी की आदत है, मुझे तो ये नाम भी नहीं लेने आते, बिलीव मी, गंदी फिल्में कोई देखता है, कोई बच्चों के साथ मामला आता है, कोई होमो, कोई जिस्म की ख्वाहिश पूरी करता है, कोई खुद लज्जती पे है, कुछ शौहर बीवी है, कपल्स हैं, लेकिन एक दूसरे को रिलैक्स नहीं कर पाते, तो वो फिर इनके साथ काउंसलिंग करके बकायदा जैसे डॉक्टर से टाइम लिया जाता है ये काउंसलिंग करती है। तो मैंने ऐसे इनसे जब बात की तो मैंने पूछा, तो मैंने कहा फिर आपके तो सारे गैर मुस्लिम होंगे, क्योंकि हमारे दिल में तो इस्लाम से हटके आता है। तो उस वक्त जो उनकी आह थी ना, जिसने मेरे भी दिल पे इस चीज का दर्द रखा जो आज मैं बोल रही हूँ आपसे, तो उन्होंने कहा कि साजा अक्सरियत मुस्लिम बल्कि अपने लोगों की, क्योंकि जहर सेम कल्चर के लोग होंगे, दूसरे भी होंगे जो दूसरों के पास जाते होंगे। उसके बाद तो फिर मेरा दिल फटा, और हाईली एजुकेटेड, पढ़े लिखे और मेडिकल प्रोफेशन के लोग, मैं खुद मेडिकल को इतनी क्लोजली ऑब्जर्व करती थी कि मैं कहती थी कि डॉक्टर जो बन जाता है उसको इमोशनल कहां रहता होगा, वो इतनी दफा बॉडी को देख चुका है कि उसको किसी को देखने में क्या कशिश होगी। लेकिन इस वक्त का ये दौर ऐसा गंदा दौर आ गया कि ऐसी चीजों को बेस किया जा रहा है। तो लिहाजा इन सारी चीजों को पढ़ते वक्त आपने दुआ करनी है। फिर आगे हदीस भी देखिए, आज आपके लिए उसी मौजू पर रखी गई है, ابو داؤد کی روایت ہے, 1550 سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کے بارے میں کسی ساتھی نے پوچھا کہ آپ کیا کہتے تھے, یعنی آپ کیا مانگا کرتے تھے, تو کہنے لگے اللہم انی اعوذ بکا من شری ما عملت ومن شری ما لم عمل, اے اللہ میں ہر اس کام کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جسے میں نے کیا ہے اور ہر اس کام کے شر سے بھی جسے میں نے نہیں کیا. تو یہ دعا اس حدیث میں آپ کو مل گئی, دو دعائیں آپ کو آج کے دن کے لیے مل گئی ہیں. حدیث سمجھ کے پڑھیں گے تو نبی کی سنت کا اور حدیث کا اجر بھی ملے گا. تو انشاءاللہ ان دعاؤں کو اپنی زندگی پہ لے آئیں. اب تھوڑا سا مختصر سا تعارف کروا دوں کہ شہوت کہتے کس کو ہیں, یعنی شہوت کی تعریف کیا ہے. تو شہوت جب کسی چیز سے محبت کی جائے اور اسے حاصل کرنے میں رغبت کی جائے, عام طور پہ تو آپ کو یہی ملے گا. عرب لوگ شہوت کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں کسی کو کہنے کے لیے, رجل شہوان, شہوت پرست آدمی, اور شہا کہتے مرغوب چیز کو. یہ کوئی اپنی جگہ سے بری نہیں چیز, تبھی تو دنیا چل رہی ہے. پچھلے پاروں میں ہم پڑھ کے آئے آل عمران سورت میں کہ زین للناس حب الشہوات, اللہ نے انسان کے دل میں شہوات کی محبت رکھی ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جب کسی چیز کو حاصل کرنے میں حلال اور حرام کی پابندی کو ختم کر دیا جائے, یہ ہے وہ چیز جو انسان کو نقصان دیتی ہے. رغبت تو ہے, اگر دیکھیں عورت میں کشش نہ ہو تو شادی کیسے کریں گے. وہ بچے جو شادی کے قابل نہیں ہوتے ان کی شادی کر دیں تو ماں باپ کی بدنامی ہوگی. تو پہلی بات لکھی ہے کہ شہوت بری چیز نہیں ہے, لیکن اور یہ انسان کی طبیعت میں داخل ہے, یہ جسمانی فطرت ہے جس پر اللہ نے بندوں کو پیدا کیا اپنے مقاصد اور اپنے اہداف کو, اپنے ضروریات کو پورا کیا جائے. پھر عورت اور مرد کے بیچ میں معاشرت کا تصور اور شعور ہے, اسی سے تو گھر بنے ہوئے ہیں. دیکھیں شوہر بیوی کتنے مختلف ہونے کے باوجود ایک چھت کے نیچے جو جمع ہو جاتے ہیں وہ شہوت کی وجہ سے. اللہ نے جوانی کے ساتھ کچھ ایسے جذبات ڈال دیے, یہ الگ بات ہے کہ جب پاورٹیڈ سوسائٹیز ہیں جیسے آج کی, تو جوانی سے پہلے یہ کچھ ہوتا ہے. اب تو بچوں کے بارنے ہاگنوں میں, آج تو ڈے کیئرس میں, آج تو چھوٹی چھوٹی کلاسوں میں یہ جذبے ابھارے جا رہے ہیں. وقت نہیں ہے اس وقت, میرے پاس ایسی گواہیاں موجود ہیں سسٹرز کی جو خود ٹیچ کرتی ہیں اسکولوں میں اور آ کے سناتی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو بتایا اور سکھایا جاتا ہے اور جو حرکتیں ہم بچوں کی ڈے کیئرس میں دیکھتے ہیں, کبھی آپ تصور نہ کریں. شادی ہو جاتی تھی کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کیا جذبہ ہے, لیکن آج آپ دیکھیں تو جب جذبے بھڑکا دیں, بھوک تو ڈال دی اور شادی پہ پابندی, پہلے 18 سال تھی تو اب 24 سال کر رہے ہیں. تو جب یہ پابندیاں تو یہی ہے کہ آپ خوب بھوکا, ابھی آج ہی دیکھ لیجئے افطاری کا وقت ہے, آپ وہ کھانا جو افطاری کے وقت پہ پکانا ہے, خوب گرم گرم کھانا اور پلاؤ اور بریانی اور پکوڑے, وہ آپ بنائیے ابھی اثر کے بعد اور رکھیے سامنے, تو دیکھیے آپ کے نوجوان بچے جو بےچارے نئے نئے روزے کے عادی بننے لگے ہیں وہ کتنے کے روزے رکھیں گے, تو نہیں رکھ سکیں گے. آج یہ ہو رہا, ہر طرف میدان گرم کر دو, لیکن اس کے بعد اس کو لینے کے لیے ابھی کھا نہیں سکتے. اب ایک سوال آپ کے بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ شہوت کیوں پیدا کی گئی, نہ ہوتی اس کو لذت بھی کہہ لیجئے, لش کہہ لے, لذت کہہ لے, فن کہہ لے, فرولک کہہ لے. تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ اس لیے پیدا کی تھی کہ اس سے انسان اپنی مسلطیں پوری کرے, دنیا میں جینے کا فائدہ ہے. مطلب دیکھیں کھانے پینے کی لذت نہ ہو تو آپ اچھے کھانے کیسے بنائیں, اور کھانے نہ بنائیں نہ کھائیں گے تو پھر دنیا میں یہ سب کچھ کیسے ہے. تو یہ چیزیں شہوت اپنے نفس کے اعتبار سے رحمت ہیں, لیکن جب ہم اس کو غلط طریقے سے استعمال کریں تو یہ غلط ہے. ایسی جیسے اسلام کسی کا مال چوری نہیں کرنے دیتا, کوئی شخص کسی کی کا پیزا اٹھا کر بھاگ جائے یا کسی کی رکھی ہوئی چیز کو چرائے تو اس کو تو ہم چور کہتے ہیں, اس کو لٹیرا کہتے ہیں. تو کوئی کسی کی بہن کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر لے, کوئی کسی کی بیٹی کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کرے, کوئی بیٹھ کر للچائی نظروں سے آپ کے پیزے کو دیکھتا رہے تو آپ کو گھبراہٹ ہوگی, تو کوئی للچا کر آپ کی بیٹی اور بہن کو دیکھ رہا ہے جو ایک ماڈل بن کے سٹیج پہ, تو بعد کی بات ہی, آپ تو پروفائلز پہ لگی ہوئی پکچرز ہیں. آج اسی جملے کو شاید بعد میں نہ منہ پہ آئے, ابھی آ گیا, اپنی پروفائل پکچر سے ہٹا دیجئے. یہ آپ کی حسن بھری تصویریں جو آپ اصل ہیں بھی نہیں اتنی پیاری, نارمل واجبی شکلیں سجا سنوار کر کیمروں کے نام پہ آپ نے اس کو سجا لیا, یہ شہوات کو بھرنے والی چیزیں ہیں. اللہ نے اگلی نسل کے لیے یہ رکھا تھا, ایک شوہر بیوی کے بیچ میں یہ کشش نہ ہوتی تو نئی نسل نہ پیدا ہوتی. تو یاد رکھیے جذبات بہت پیاری چیز ہے, اسی پہ زندگی کا ایک دار و مدار ہے, لیکن جب جذبات کو غلط جگہ پہ غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو اس میں ہی بری بات ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ شہوت کی آگ جو بھڑکتی ہے, آپ اس کو شہوت کی آگ لکھ سکتے ہیں, کیسے, یہ کون ہے شہوت کے پیروکار, یہ کن کے ساتھ کیا معاملات ہے؟ تو کہہ لیجئے کہ جو دنیا میں کوئی بڑا مقصد نہیں رکھتے, اللہ کی طرف سے یہ ایک آزمائش بھی ہوتی ہے, کیسے آپ ان چیزوں کو لے کر چلے. اور جو دنیا کی زندگی میں شہوتوں پر غالب آ جائے گا, یہی ہے وہ شخص جس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے. یہ مالک بن دینار کا ایک قول تھا جو یاد آ گیا, کہ کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنی شہوت پہ قابو پا لے اس سے پھر شیطان بھی بھاگتا ہے. کیوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر شیطان بھاگ جایا کرتا تھا؟ کیونکہ اپنی شہوت پہ قابو پایا. اور قرآن میں آتا ہے وَأَمَّا مَن نَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, تو اس ساری چیزوں کو پڑھنے کے لیے بہت کچھ چاہیے, لیکن اس وقت صرف اتنا کہہ دوں کہ عورتوں کی خواہش دنیا کی شہوات میں سب سے بڑی شہوت ہے. اسی لیے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ میں سب سے پہلے عورت کا تذکرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا مسئلہ شروع ہوا تھا یا ایک بڑی چیز تھی, وہ عورت تھی. اور امت مسلمہ کے لیے احادیث موجود ہیں کہ میری امت کے لیے عورت ایک بہت بڑا فتنہ ہے. تو لہٰذا اس فتنے کے لیے اسلام نے جو پابندیاں دیں وہ سب ہم پڑھیں گے. نکاح, ورڈ لاک, شادی کا اسلامک طریقہ, یہ سب کچھ شہوات کو کنٹرول میں رکھنے کا ہے. ابو سعید خدری سے روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ دنیا سے بچو اور عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچو, کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ یہی تھا. تو سوال لکھیے کہ پھر حب الشہوات کے اسباب کیا ہیں, کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ شہوات میں آتے ہیں. تو پہلی تو بات ہے شہوت کا پیروکار بن کے, شہوت کے پیروکار جو ہو جاتے ہیں, جو اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھنے لگ جاتے ہیں, فٹ سٹیپ پہ پاؤں رکھتے ہیں, وہی اس میں جاتے ہیں. اور اگر آپ اس کے اسباب ڈھونڈنا چاہیں, حرام شہوت میں پڑنے کے اسباب میں سب سے پہلی چیز ایمان کی کمزوری ہے, ایمانی کمزوری. جب ایمان کمزور ہوگا, کیونکہ ایمان تو مومن کا اسلحہ ہے اور یہی ہے وہ مضبوط قلعہ جس میں چھپ کر انسان ایمان بچاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی میں چھپ کر ایمان بچایا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگی, ایمان کے قلعے کے اندر آ گئیں, پھنس بچ گئیں. کیسے حضرت مستوں کے اوپر, یعنی مستو جو صحابی تھے, انہوں نے تو اس بات میں بات چھیڑ دی تھی, لیکن صفوان بن معطل ایمان کے قلعے میں تھے. مرثد بن مرثد کی واقعات سنتے ہیں آپ مجھ سے کئی بار, ایمان کے قلعے میں چھپے ہوئے تھے. کیسے ایک ایسی عورت جو بندے کو بلائے رات کی تنہائی میں اکیلے میں, اور بندہ کہہ دے کہ چلی جاؤ یہاں سے, تمہیں کچھ فائدہ نہیں ملے گا, تو یہ سب کچھ کیا ہے, ایمان پختہ کیجیے. اور جتنا زیادہ آپ اپنے ایمان کو بڑھاتے جائیں, اپنے بچوں کے ایمان کو بڑھانے کا طریقہ بھی تو یاد رکھیے نا, قرآن, اللہ کی بات, اللہ کے نام اور اس کی بات, دو چیزیں ہیں. جس کے ہاتھ میں ایمان ہے تو وہ المومن سے تعلق پیدا کر لے, انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اور یاد رکھیے گا کہ جتنا زیادہ تین چیزوں کو اپنی زندگی میں اصول بنا لے, تین باتیں اس بات کی علامت ہیں کہ آپ کے اندر تقویٰ ہے, جو رمضان کا سبق ہے. پہلی بات ہے قدرت ہونے کے باوجود حرام شہوت کو ترک کر دیجئے. تین لوگ جن کا آپ نے غار کا واقعہ کئی بار سنا ہوا ہے, کیسے پتہ چلتا ہے ان کا معاملہ, آپ سب جانتے ہیں. غار کے اندر راستہ بنا دیا تھا اللہ نے اس شخص کی بات پہ, کہ جس نے اپنی محبوب یعنی اپنے چچا کی بیٹی, جس سے پیار بھی تھی محبت بھی تھی, لیکن عین وقت پہ اس نے اس کو چھوڑ دیا. اللہ نے اس کا یہ عمل پورا قبول کیا, شہوت پہ قابو پا لیا. پھر اسی طرح نیک اعمال کرنے پہ اپنے نفس کو مائل کرنا, اگر آپ کے اندر ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ متقی ہیں. اور پھر امانتوں کے واپس کرنے کو, تو پہلی چیز جس پہ آپ اور میں آج فوکس کریں گے وہ کیا ہے, اپنے ایمان کو بڑھانا ہے انشاءاللہ اپنی نسلوں کے ایمان کے ساتھ. اور اسی کے اوپر وہ آپ کو واقعات ملتے ہیں کہ کیسے صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 60 سے زائد بار میں نے یہ واقعہ سنا تھا, جس کو کفل کا واقعہ کہتے ہیں, سب نے سنا ہوا. آپ نے کیسے اس نے ایک عورت کی ضرورت خریدی اور عین وقت پہ صرف اس کے اس ایک لفظ پہ کہ اتق اللہ, اس عورت کو جانے بھی دیا اور مال بھی دے دیا. تو چاہے آج کی عورت تو وائف ہے, پروسٹیٹیوشن ہے, آج لوگ پیسہ کما رہے ہیں ویب سائٹس بنا کر کچھ اور چیزوں کے اوپر, ان ساری چیزوں سے بچنے کا طریقہ کیا کہ ایمان بڑھائیں. پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش کیا تھا کسی نے کہ ایک شخص تھا, اچانک اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور جب فوت ہوا کسی کو نہیں پتا تھا, लेकिन बाद में चीजें खुलती गईं। एक ऐसी वेबसाइट वो चलाता था कि जिसमें गंदी फिल्में होती थी, पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं गलत बोलूं इससे बेहतर है मैं ना बोलूं। तो बहरहाल वो वेबसाइट, उसके अंदर लोग सब्सक्राइब करते थे, कुछ पैसे लेते होंगे, इस बेचारे को मोहलत नहीं मिली। ये रिसेंट का वाक्य है। और वो जब ऐसा कर गया, अब उसके दोस्तों को कुछ को पता थी बात, उन्होंने कोशिश की कि वो वेबसाइट बंद कर दें। और उधर उसकी मां कहती है कि रोज मुझे ख्वाब आ रहा है कि मेरे बेटे की कब्र पे कुछ जवान लड़के लड़कियां जाके वो पेशाब कर रहे हैं और कुछ ऐसी कहानियां। इन्होंने जाकर उस वेबसाइट कंपनी से बहुत मिन्नतें की कि वो बंदा मर गया है, उसकी वेबसाइट बंद कर दो। उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, हमें पासवर्ड चाहिए। वो पासवर्ड किसी को नहीं पता। अब अल्लाह करे वो जो था अल्लाह उसकी बख्शिश का जरिया कोई बना दे, इंशाल्लाह अल्लाह बना देता है जब कोई भी होते हैं। लेकिन क्या मैं और आप चाहते हैं? सवाल कीजिए, हिदायत के तलबगार दिल के लिए एक सवाल है, क्या मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही अचानक मैं मर जाऊं और मेरे सारे बुराइयों के अकाउंट पीछे मेरे लिए सदकाए गुनाह बन जाए। जैसे नेकियों का सदका जारी है वैसे बुराइयों का सदका जारी है। तो दूसरा बड़ा सबब जिसमें अक्सर अच्छे लोग फंसते हैं, मैं इस पे हर उस बंदे को साइड दे रही हूँ, अपने दिल में उसकी कुर्बत और मोहब्बत महसूस करती हूँ जो इन चीजों में पड़ चुके हैं, लेकिन उसकी वजह बुरे दोस्त है, बुरे साथी, बैड कंपनी। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया अलमरु अला दीनी खलीली, आदमी अपने दोस्त के दीन पर है। अरजुल अला दीनी खलीली का लफ्ज भी आता है। तो बुरी दोस्तियों से अपने आप को बचा दें और ऐसे वाकयात पढ़ा करें। एक लड़का 17 साल की उम्र का, वो अपने गुनाहों में मुब्तला होने की बात करते हुए कहता है मैंने पहली बार हराम फिल्म उस वक्त देखी जब मैं अपने किसी दोस्त के साथ था और उसको सोने के लिए गया, स्लीप ओवर था, तो उसने मुझे एक फिल्म दिखाई, ये मेरी इब्तदा थी और उसके बाद फिर मैं रुक नहीं सका। और आज भी बच्चियां अपने आप को काटती हैं लेकिन इन गंदी चीजों से पीछे नहीं हो पाती क्योंकि वो किसी बुरी दोस्ती में आ चुकी होती हैं। फिर इसी तरह बदनजरी शैतान के तीरों में से एक तीर है। आज आप देखिए बदनजरी की जाहरी क्या सूरत हो, अब तो मीडिया ही बहुत है, आपकी स्क्रीन ही आपको गंदे सीन दिखाने के लिए बहुत है। तो कुरान कहता है यगुद मिन अफसारी हिम व यकफजु फुरूज हम, सूरत नूर में जो आयात है। और जो मैं यूथ के नाते से समझती हूँ वो है फरागत, फारिग वक्त बहुत है। फारिग वक्त को सही कामों में लगाने की बजाय गलत में डाला। और फारिग क्यों है? क्योंकि हमने उनको कोई बड़ा गोल नहीं दिया। कहते हैं ना कि एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, शैतान खाली जहनों में बैठकर अपने प्लान्स करता रहता है। इसलिए नफ्स को अगर आप इताअत के कामों में नहीं लगाएंगे तो वो मासीहत के कामों में लग जाएगा। और इसके लिए अपने वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया था नेमतानी मगबूनुन फी हिमा कसीरो मिननास, दो नेमते ऐसी हैं जिसमें अक्सर लोग धोखे का शिकार हैं, सेहत वल फराग, सेहत और फराग। फिर इसके बाद पांचवी चीज के नजरबाजी, बदनजरी क्या थी? आप बुरी नजर से देखते हैं। नजरबाजी के कि औरतों की तरफ देखने को छोटा सा गुना सोचना, और औरतें हैं तो मर्दों को आप देखिए, गुलकारों को, अदाकारों को, फैंस को, जो भी आप कह लीजिए कि क्या आप उसको बोलते हैं स्टार्स वगैरह, बुरी नजरों से देखना। स्क्रीन से भी आप किसी को शहवत की नजर से देखते हैं तो ये चीज भी बाज दफा दिल में ऐसे जज्बात को पैदा करने का जरिया बनती है। और फिर इसी बार इसके बाद शहवत अंगेजी की कुर्बत, जितना आप ऐसी चीजों के करीब होते जाएंगे, आपके हाथ में वो गैजेट है, आप हराम करिए अपने ऊपर, मैंने ऐसी कोई वेबसाइट नहीं देखनी, चेकआउट लगाइए, चेक्स लगाइए। आज भी ऐसे बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह गैजेट्स मौजूद हैं, आप अपने फोन में लगा लीजिए, खुद कीजिए, माँ बाप कहाँ लगाएंगे, आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि जन्नत जहन्नम आपकी है। तो हर वो चीज जिससे शहवत उभरे उससे रुकिए। तन्हाई में एक लड़की का लड़के से बैठना, फिल्में, गाने, ड्रामे, जिसमें जाहिर बात है उन्होंने अपनी इस चीज को पब्लिसाइज करने के लिए बहुत कुछ देना होता है, तो इन सारी चीजों से अपने आप को बचाना है। और सवाल यह है कि फिर इसका तरीका क्या है, बचें कैसे? क्योंकि शहवात के साथ अपने आप को जिंदा रखना बिल्कुल ऐसे है कि आपके हाथ में छुरी है और आपको नहीं पता कि वो सोते जागते में किसी वक्त आपकी जुबान काट दे, आपके हाथ काट दे, आपको कट कर दे। तो इसके लिए सबसे पहले शरीयत का इल्म जो इस वक्त हम ले रहे हैं, यही है वो कुरान खूबसूरत जिसमें आपको एक एक करके ये चीजें मिलेंगी। और जितना ज्यादा इस इल्म के साथ रहेंगे दिल में अजमत इलाही आएगी, अल्लाह की बड़ाई को आप अपने दिल में महसूस करेंगे। फिर गौर फिक्र करें, अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया? क्या मेरी माँ ने 9 माह मुझे इसलिए पेट में रखा? मेरे बाप ने पेट काट के मुझे इसलिए पढ़ाया लिखाया कि मैं इन गंदगियों में आ जाऊं? और मैं क्या अल्लाह के आगे जाकर अपने आप को इस चीज के साथ रखूंगा? फिर इसके खौफ इलाही लाइए, आजकल खूबसूरत रहते हैं, रातों को जागिए, रोइए, धोइए, क्या मेरे मालिक मुझे इस गंदगी से निकाल दें। देखिए, एक दलदल में फंसे शख्स को ऊपर से हाथ चाहिए होते हैं। अगर आप किसी ऐसे को जानती हैं और आप जानते हैं तो आप उसको प्यार से बुलाइए। ऐसे शख्स को गुस्से में बात करना, ताने देना, ये दुरुस्त नहीं होगा, बल्कि वो चीजें फिर उसको और ज्यादा दूर कर देती हैं दीन से। और आज दीन की बात करने वालों को भी जरा सी आवाज में सख्ती की बजाय नरमी लाकर दर्द महसूस करते हुए इस चीज को लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि कि वो बिचारे जो निकलना चाहते हैं उनको निकलने में मदद हो, क्योंकि उसके ऊपर पता नहीं कितने शैतान मुसल्लत हैं। शैतान कैसे ऐसे बंदे को निकलने दे, क्योंकि शैतान का दरवाजा शहवात है और उसके अंदर से वो निकल के लेके जाता है। और फिर उसके बाद हयादारी, बाहया कपड़े पहनिए अपनी बेटियों को, छोटी बच्चियां वो 1 साल की हैं या 10 महीने की हैं या वो 10 साल की हैं, एक नजर उसके कपड़ों को देखिए, क्या उसके कपड़े शहवत को फैलाते नहीं रहे। वो ड्राइवर, वो माली, वो बाहर के मर्द, वो क्लर्क, वो सड़कों पर चलते मर्द, आपकी बेटी आपके ड्रेस को देखकर क्या सोचते हैं। मर्दों को भी बाहर लिबास पहनना चाहिए, क्योंकि आज ये सिर्फ मर्दों का इशू नहीं रह गया, आज औरतें भी इसी तरह की चीजों के अंदर इन्वॉल्व हो गई। और सबसे बड़ी बात, अपने दिल के अंदर गैरत लाइए। माँ का तसव्वुर लिखिए, बहन का, बेटी का, क्या मैं अपनी बेटी के बारे में ये चाहता हूँ जो मैं अपनी जिंदगी में महसूस करूँ। क्या बहन, खाला, फूफी, अल्लाह के नबी ने यही कहा था जब एक शख्स ने कहा जिना करना चाहता हूँ, कहा अपनी माँ से करना चाहते हो, कहा नहीं, बहन से, बेटी से, खाला से, कहा नहीं, तो कहा फिर जिस भी औरत से तुम ये ख्वाहिश पूरी करोगे वो भी तो किसी की माँ, बहन, बेटी तो होगी। तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारी नस्लों को इससे बचाए। और मेरी बहुत हमदर्दी है ऐसे सब लोगों के साथ, कोई नफरत नहीं है, इंसान बहुत प्यारा है, अल्लाह का मास्टरपीस है। बीमार भी तो इंसान हो जाता है ना, तो ये रूहानी बीमारियां अगर लग गई हैं, ये काम छोड़ दीजिए तो फैखफान हुकुम फिद्दीन, फिर तुम दीन के भाई बहन हो। फिर आप देखिए किस पारे में दिल की मुख्तलिफ किस्में, जब हम देखें तो अनवाल खुलूब इस पारा 7 में सूरत निसा 63 में अलकलबुल आसिन की बात है। वाकया आएगा तो आप खुद भी देखेंगे कि पीछे से तस्करा था उन लोगों के गुनाहों में मुलव्वस होने का। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उलाइकल्लज़ीना यालमुल्लाहु मा फी कुलूबिहिम, अल्लाह ताला जानता है जो कुछ इनके दिलों में है। फिर इसके बाद सूरत निसा 108 में अलकलबुल खाइन, खयानत वाला दिल, यस्तग़फ़ूना मिनन्नास वला यस्तग़फ़ूना मिनल्लाह वहुवा माहुम इज़ युबय्यितूना मा ला यर्दा मिनल क़ौल वकानल्लाहु बिमा यअमलूना मुहीता। ये लोग इंसानों से अपनी हरकत छुपा सकते हैं मगर अल्लाह से नहीं छुपा सकते। वो तो इस वक्त भी इनके साथ होता है जब ये रातों को छुप कर इसकी मर्जी के खिलाफ मशवरे करते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसी सारी चीजों से बचा दे। और इसके बाद फिर अगर इस बारे में से आप हिदायत के मौजू से मुतल्लिक आयात देखेंगे तो आपको 6 मुख्तलिफ आयात नजर आएंगी इस बारे के अंदर, जिसमें सूरत निसा आयत 26 से आपको पता चलता है कि युरीदुल्लाहु लियुबय्यना लकुम वयहदियकुम सुनन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। अल्लाह ने हिदायत के रास्ते खोल दिए, पिछले लोगों के भी और अपने भी खोल दिए। फिर आयत 51 सूरत निसा से पता चलता है कि जो लोग जिद्द और तागूत के पीछे लग जाते हैं, यानी जादू टोने, किस्मत मालूम करना, हाथ दिखाना, वो असल में हिदायत के रास्ते से दूर हो जाते हैं। फिर आयत 68 सूरत निसा से पता चलता है कि जो अल्लाह, रसूल और नेक लोगों के तरीकों पे चलता है तो वला हदैनाहुम सिरातम मुस्तकीमा, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को सीधा रास्ता दिखाते हैं। उसके बाद आप देखें अगर सूरत निसा आयत 88 में तो अल्लाह ताला ने मुनाफिकों की 2 जमातों, 2 ग्रोहों की बात करके फरमाया, तुरीदून अन तहदू मन अदल्लल्लाह, क्या तुम उसको हिदायत देना चाहते हो जिसको अल्लाह ने भटका दिया। ये वो स्टेज होती है कि जब फिर बंदा खुद को बदलना नहीं चाहता तो फिर अल्लाह उसको हिदायत की तरफ आने नहीं देने चाहता। तो अगर आप आज तक हिदायत पे नहीं आए तो इसकी वजह अल्लाह नहीं है, आप हैं, क्योंकि आपने नहीं चाहा। लेकिन बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, अब आपने चाह लिया, अब अल्लाह आपको हिदायत जरूर देगा इंशाअल्लाह ताला बोलिए। और इसके बाद फिर आप देखिए कि हिदायत के एतबार से 98 में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला यहतदून सबीला, यानी कुछ लोग जब अल्लाह की तरफ नहीं पलटना चाहते तो फिर उनको हिदायत नहीं मिलती, ये सिर्फ उसको मिलेगी जो ये तलब रखेगा। और उसके बाद फिर 115 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں سورۃ نساء کی آیت میں کہ من بعد ما تبین له الہدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین, ایک شخص کا بہت برا انجام بتایا گیا ہے کہ جس نے ہدایت کو واضح ہونے کے بعد بھی ہدایت کا راستہ نہیں لیا. دعا کیجئے کہ میرا حال ایسا نہ ہو کہ میں یہ ساری باتیں سن سنا کر بھی ان باتوں کو نہ مانوں, اور پھر اس کے بعد 137 سورۃ نساء میں کیا پتہ چلا کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا سے لے کر پھر آمنوا پھر کفروا پھر کفر میں جانا, ایسے لوگوں کو راہ نہیں ملتی. یعنی بس سنا ہے تو عمل کر لیجئے, بیک اینڈ فورتھ نہ کیجئے صراط مستقیم پہ, اس سے توفیق چھن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بچا کے رکھے. پھر اس پورے پارے میں ہم پورے پارے میں سورۃ نساء پڑھیں گے. یہ بھی ایک بڑی خوبی ہے اس پارے کی کہ ایک ہی سورت پوری چلتی ہے آیت 24 سے 147 تک. اس سے یہ بھی دیکھیے کہ سورت نساء کتنی طویل ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ سورت ہے کہ ایک پارے میں شروع ہوئی, دوسرے پورے پارے میں اس کا مضمون, اور تیسرے میں پوری ہوئی. ایون سورت بقرہ میں بھی ایسا نہیں ہے, کیونکہ سورت بقرہ بھی ایسے ہی ہے تین پاروں پہ محیط, لیکن پہلے پارے میں آپ کو سورت الفاتحہ بھی دکھتی ہے اس کے ناطے سے. تو کیا کچھ ہے اس میں, یعنی اس ٹاپک کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیے, بنیادی جو میں نے اس بارے کو آبزرو کیا نا اس نام اس شکل سے اس سال, تو حرام اور حلال کا بیان ہے. اور میں ایک جملہ لکھ لیں, پہلے بھی بولا پھر بولتی ہوں, شریعت ورسس شہوت. اللہ کی دی ہوئی شریعت بھی اس میں پوری بیان ہے, جیسے آپ کو سورۃ البقرہ کا وہ پارٹ جس میں آیت بر کے بعد آپ کو اسلامک شریعت کی باتیں ملی تھی نا, وہاں یہود کے سنیریو میں تھی, یہاں آپ کو کرسچنز کے سنیریو میں دوبارہ ایک قسم کی پوری تذکیر کروائی گئی کہ اسلام میں کیا حلال ہے کیا حرام. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اس پارے کے اندر جو چیز ساتھ ساتھ آپ کو ملتی ہے وہ ملتی ہے کہ اللہ کے حلال کو حرام نہ کرو. تو اسلام میں پاکیزہ ماحول پسندیدہ ہے, یہ پورے پارے کے اندر سے آپ کو تھیم ملے گا. پھر ناحق مال کھانے کی ممانعت ہے, شہوات میں انسان ایسا پڑ جاتا ہے کہ کبھی دوسرے کا مال بھی کھانے لگتا ہے. پھر یہاں نکاح کی شرائط بھی ہیں, اور سب سے بڑی آیت جس پہ آپ نے اس پہ غور کرنا ہے وہ کبیرہ گناہوں کے بارے میں, کبائر گناہ کبیرہ کا تذکرہ اس بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں. پھر مہر کی بات ہے, گھر بسانے کی نیت سے شادی کی جائے, ولی کی کیا حیثیت ہے شادی میں, کتنا ضروری ہے اس موضوع کو پڑھیں اور پڑھائیں اپنے بچوں کے شادی کرنے سے پہلے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ مردوں کی قوامیت کی بات ہے, ایک مرد اور عورت کا گھر میں کیا رول ہے, آج اس بارے میں بڑی خوبصورت آیتیں آپ کے لیے آنے والی ہیں. پھر چھپی دوستیوں کی ممانعت ہے, لوگ کہتے ہیں چھپی نہیں ہم تو کھول کے دکھاتے ہیں, ہم نے تو ٹک ٹاک پہ بھی لگا دیا تھا اور ہم نے اسنیپ چیٹ میں بتایا کہ میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کھانا کھا رہی ہوں. تو یاد رکھیے کہ پھر یہ ایک امت کے مرد کے لیے بہت ہی بڑی بات ہے, باپ ہونے کی روک پہ بھی اور دوسرے رشتوں میں. ایسے مرد کو دیوس کہا گیا جو اپنی بیوی میں برائی دیکھے اور اس کے ماتھے پہ شکن نہ آئے اور باقی باتیں. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اسلام دین فطرت ہے اور عورت کے نشوز کا ذکر ہے, وہ کہاں ہے وہ جب آئے گا تو ہم دیکھیں گے. پھر ٹوٹتے ہوئے گھر کو بچانے کی باتیں, یعنی گھر کو بچانے میں ثالثی کا کردار کیا ہے, تھرڈ پرسن بنیے اور آج یہ کام کرنے کا ہے. الحمدللہ ہمارے پاس نور قرآن کے پلیٹ فارم پہ کاؤنسلنگ کا کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے دکھ سکھ کے نام پر. کئی گھر اللہ کی رحمت سے واپس اپنی جگہوں پہ آ گئے جو بالکل آخری تار کی طرح ٹوٹنے کے قریب تھے. تو گھر بچانے کے طریقے بھی بتائے جا رہے ہیں اس بارے میں. پھر جبت اور تاغوت کا بیان ہے, یعنی جادو ٹونا وغیرہ. پھر حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بیلنس, بیکار مشغلوں سے بچنے کی باتیں. پھر غفلت کی نماز سے بچنا, حسد کی قباحت ہے, تیمم کا بیان ہے, امانتوں کی ادائیگی ہے, شرک کی قباحت ہے, ناشکری اور کفر کا بیان ہے. آپ کہیں گے اتنا کچھ اس بارے میں, میں صرف ترجمہ پڑھوں نا تو یہ سب آپ کو مل جائے گا جو میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں. اللہ کا قرآن اتنا پروفاؤنڈ اور اتنا جامع ہے. پھر اس میں آپ کو ایک بہت ہی بڑا ٹاپک ملے گا, اطیع اللہ اور اطیع رسول کا, یعنی اللہ رسول اور اولی الامر کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے, کون ہے اس میں, وہ وہاں جا کے تھوڑی سی ہم بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور پھر اسی طرح اچھی آخرت تقوی والوں کی ہے, دین اسلام دلیل کا دین ہے, رسول کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت ہے. یعنی یہ کہنا کہ اچھا یہ بات قرآن میں نہیں ہے تو پھر ہم نہیں مانتے ضروری تو نہیں, تو یہ کہنا ہی اپنی جگہ گمراہی کی بات ہے. قوانین کا احترام کرنا سکھایا جائے گا, قرآن پاک پر تدبر کرنا सिखाया जाता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर मामले में हकम यानी बड़ा मानना कि जिनकी अहादीस की रोशनी में फैसले किए जाएं जिंदगी के, फिर नेक सिफारिश की नेक जजा और अल्लाह की मदद फी सबीलिल्लाह गिरोह के साथ है, जो अल्लाह के रस्ते में निकलेगा अल्लाह उसकी मदद जरूर करेगा, और फिर सलाम करने के आदाब के साथ साथ हलाल और हराम की इस लिस्ट में कत्ले खता और कत्ले अमद का बयान है, यकसू और हनीफ होकर जीने का क्या मजा है इसका तस्करा है इस बारे में, फिर इसी तरह लोगों के जाहिर पे कयास कीजिए, ये आप इस मौजू के साथ तो अभी से ही लिख लीजिए, कभी भी किसी के बारे में कोई ऐसी बात ना करें फलां का बेटा फलां की बेटी, हमने ये सुना हमने वो सुना, हमें इसकी इजाजत नहीं है। आप क्यों किसी के जाहिर को देखकर उसके बातिन पे कयास करें, तो ऐसी चीजों से भी अपने आप को इंशाल्लाह ताला बचाना है हमने। और फिर इसी तरह से अदल की गवाहियों की बात है, हिजरत के फवायद का बयान है इस बारे में, अल्लाह की नापसंदीदा महफिलें निफाक का बायस है, यदि इस बारे का एंड बड़ा स्ट्रांग है, अगर आप जल्दी में चले भी गए ना एंड पे तो बाद में मिस ना कीजिएगा, क्योंकि ये इतना बड़ा मौजू है कि जिसको आप इंशाल्लाह एंड पे रिलेट होता हुआ फील करके अल्लाह का लाख शुक्र करेंगे कि अल्लाह मैंने शुरू से लेकर आखिर तक इस बारे को सुना और फिर शैतान की चालें और आखिर में फिर तौबा और इस्लाह की बातें। अल्लाह ताला से दुआ है हमारे वक्त में बरकत देते हुए हमको इसके तर्जमे को ही कम अज कम समझ कर समझने की तौफीक अता फरमाए। अब हम चलेंगे टेक्स्ट के एतबार से देखने के लिए, इतनी बातें अगर मैं ना करूं तो आपका ये वक्त आपके ख्याल में बच जाता और मैं आपको सिर्फ तर्जमा ज्यादा दे देती, लेकिन वो भी अच्छी बात होती। लेकिन याद रखिए बहुत सारे हमारे प्यारे साथी जो सिर्फ रमजान में ही कुरान सुनते हैं, जो सिर्फ रमजान में ही ऐसी बातों को लेकर चलते हैं, तो अल्लाह करे कि ये बात उनके मजीद वक्त लगाकर कुरान को सीखने और सिखाने का जरिया बन जाए। चलिए अब अल्लाह का कलाम टेक्स्ट और आप कोशिश करूंगी कि बीच में कम से कम मैं आऊं ताकि आप इसको बेहतरीन तरीके से समझ भी सकें और आप इससे फायदा भी उठा सकें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما। لکھئے آیت 24 سے 25 اس کا ٹاپک نکاح کی شرائط। अब वक्त नहीं है वरना मैं आपको रोक रोक के थोड़ा पॉइंट आउट करती, लेकिन आप अभी आयतों पे ही गौर करें और तर्जमा सुनते वक्त बिल्कुल आपकी नजरें जमी हो आपके मुसफ पे और आप तर्जमे पे से गौर करते हुए इनको लीजिएगा। वल मुख्सनातु में हराम की गई औरतें, या पिछले पारे भी दे दूं साथ ही, पिछले पारे की आखिरी आयत में मुहरमात की किस लिस्ट थी, वो मुहरमात जिनको अबदी मुहरमात कहते हैं, यानी वो औरतें जिनसे किसी मर्द का किसी हाल में निकाह नहीं जायज, और उसमें से भी कुछ वो थी जो नसब से थी और कुछ रजात से थी कुछ सहर से थी। आज इस बारे में पहला ही लफ्ज उस पिछले के साथ है, इनको वक्ती मुहरमात कहते हैं, और उसमें पहली वो औरत जिस जो किसी भी और मर्द के निकाह में मौजूद उसके तस्करे के साथ शुरू होती है। देखेगा और हराम की गई शोहर वाली औरतें मगर जो तुम्हारी मलकियत में आ जाएं, या हर मर्द को पैगाम दे दिया, नजर तो वैसे ही झुकानी है, किसी और लड़की को वैसे भी नहीं देखना, लेकिन जब कोई औरत किसी के निकाह में आ जाए, वो चाहे शो बिजनेस की कोई खुद को दिखाने वाली बहन क्यों ना हो और कोई दीन की बात करने वाली क्यों ना हो, उसके बारे में कोई शहवत न रखिए, क्योंकि वो औरत आपकी बीवी नहीं बन सकती। अल्लाह ताला ने ये काम तुम पर फर्ज कर दिए हैं। अफसोस के साथ कहूं कि पहले तो अनमैरिड लोगों के अफेयर्स ज्यादा थे, अब शादीशुदा लोगों के भी कम नहीं है, किसकी बीवी किसका शौहर, और अब ऐसे फंक्शन आते लग गए कि जिसमें कुछ अरसे के लिए एक दूसरे से बीवियां एक्सचेंज करते हैं। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, इससे बड़ा मुसलमान उम्मत का सवाल और क्या होगा। अल्लाह ताला हमें इन सारों से बचा के रखे, और याद रखिए कि हमारी जिंदगी में अगर ये चीजें आ रही हैं तो कल क्या होगा, आजकल जो हालात है, मैं हदीस में पढ़ रही थी कि क़यामत के करीब की जो चीज़ें हैं उनमें से ये चीज़ आम होगी जो अब नज़र आ गई। और मैं इस रात को बात करते हुए अल्लाह ताला से कह रही थी, अल्लाह ताला बस वाह बनने दिखे हैं। कभी हम सोचते थे ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन अब वाकई उसका 10% तो सिर्फ इस एक हल में खुल गया कि नबी की अहादीस की सच्चाई आपको आज भी इस दुनिया में दिखने लग गई। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐसी सारी कबाख्तें, खराबियां और वो असबाब जो आज शुरू में ही आपको दे दिए हैं, उससे अल्लाह ताला हमें बचाए, हमारी नस्लें इन चीजों से बच जाए, वरना न जाने कल क्या होगा। हदीस में आता है क़यामत के करीब लोग जानवरों की तरह सड़क के इर्द गिर्द यानी रस्तों में जिना कर रहे होंगे। और ऐसे वक्त में अगर कोई उनको ये कहते कि भाई दीवार की ओट में चले जाओ, तो उसका वो आला मुकाम होगा जो किसी दौर में सहाबा का मुकाम था। तो अब देखिए, जिस दुनिया को गंदा करके प्लूट करके हम जा रहे हैं, अगर आज हम नहीं बचेंगे, सोचिए मेरी बेटी कल जब बड़ी होगी फिर क्या होगा, मेरा बेटा जब बड़ा होगा फिर क्या होगा, और अभी जो दुनिया में आई ही नस्लें, पोते नवासे, उनका क्या बनेगा। फिर इसके बाद आगे फरमाया, और इन औरतों के सिवा और औरतें तुम्हारे लिए हलाल की गईं, क्या अपने माल के महर से तुम इनसे निकाह करना चाहो, बुरे काम से बचने के लिए, ना कि शहवतरानी करने के लिए, इसलिए जिनसे तुम फायदा उठाओ इन्हें इनका मुकर्रर किया हुआ महर दे दो, और महर मुकर्रर होने के बाद तुम आपस की रजामंदी से जो तय कर लो, इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं, बेशक अल्लाह ताला इल्म वाला और हिकमत वाला है। और तुम में से जिस किसी को आजाद औरत यानी मुसलमान औरत से निकाह की पूरी ताकत और वसत न हो, तो वो मुसलमान लौंडियों से जिनके तुम मालिक हुए हो अपना निकाह कर ले, अल्लाह तुम्हारी खूबी जानने वाला है, तुम सब आपस में एक ही तो हो। आज इस आयत को पढ़कर कोई कह दे कि देखा कुरान कहता है, तो याद रखिए कि आज दुनिया में लौंडीज्म नहीं है। कुरान में बार बार मुख्तलिफ कफारों में एक लफ्ज आता है, फाइल लम तजीदू, आपस अगर तुम कोई गुलाम ना पाओ, गर्दन आजाद ना पाओ, ये इशारा है इस बात पे कि एक वक्त में दुनिया में गुलामी नहीं होगी। और ये इस्लाम का तोहफा है कायनात को कि आज दुनिया में न लौंडी है न गुलाम। तो घरों में काम करने वाली औरतें लौंडियां नहीं है, और जिस्म फरोशी के लिए खुद को बिचारी बहनें जो पेश करती हैं वो लौंडी के मत में नहीं आते। लिहाजा इस आयत को अपनी शहवत को पूरा करने के लिए कोई घर की मासी या बाहर की किसी औरत के लिए हलाल ना करे, क्योंकि अल्लाह ताला के दीन को खेल बनाने वाली ये बात होगी। इसलिए इनके मालिकों की इजाजत से इनसे निकाह कर लो, और कायदे के मुताबिक इनके महर इनको दो, वो पाक दामन हो, ना कि ऐलानिया बदकारी करने वालियां। नोट कीजिएगा, यानी एक लौंडी के साथ भी अगर उसके मालिक की इजाजत से निकाह होगा तो पहले छुपी दोस्ती नहीं होगी। आज आप देख लीजिए कि दोस्तियां पहले होती हैं और कुछ दोस्तियां माँ बाप कराते हैं। माजरत, मुझे माफ कीजिएगा, मेरी बहनें सारी जो मेरे शिमले से दुखी होंगी मुझे माफ कर दें कि कुछ बुराइयां तो माँ बाप खुद भी कराते हैं। क्या मंगनी हो गई है, जाओ जरा मंगेतर के साथ खाना खाओ, जाओ जरा मिल लो, क्यों आपस में दोस्ती कर लो, जरा अच्छा रहेगा, घर अच्छा बनेगा। ऐसी बीसियों मिसालें तो सिर्फ मेरे जैसे एक कमजोर बंदे के पास हैं। चार चार साल की मंगनी में वो ससी पुन्नू बने रहे, ही राजा बने रहे, इधर से उधर के मामले रहे, और शादी के सिर्फ चार माह के बाद घर टूट गया। और एक बच्ची ने अपना खुद आके काउंसलिंग में सुनाया, मैंने कहा क्यों, कहती शादी से पहले मेरी जूतियां उठा के फिरता था, और शादी के चार माह बाद मुझे पता चला कि वो मंगेतर था, ये शौहर है। आप अपने बच्चों को खुद जिना पे माइल करेंगे अगर आप उनको। फिर एक और उसका तरीका हमने अपना लिया जो इंतहाई और ही रंग है, जिसको अभी करने की जरूरत नहीं इधर। लेकिन याद रखिए, ऐसी कोई चीज जिससे शहवतें आम हो, आपके नसब दागदार हो, आज के दौर में ये मुसलमानों की शादियों में एक अपनी हमारी साथी है, अगर आप उनका नाम भी लेना चाहे, नंबर लेना चाहे, मैं दे सकती हूं, अगर आपको मेरी बात का गलत लगे, कि एक ऐसी शादी में गई कि बच्ची प्रेगनेंट थी, और एक ऐसी भी गवाही मौजूद है कि जाके देखा तो लड़का तो मुस्लिम तो छोड़ दीजिए, वो तो कोई ब्लैक था, और माँ बाप पूरे मेहंदी उपटन टप्पों के साथ शादी कर रहे हैं कि बच्चों की खुशी है, फिर क्या करें, आप किधर जा रहे हैं। देखिए, आप किसी खाई में गिरने वाले हो, 10 चीजें आपको बचाने के लिए मददगार हो जाती है। वहां आज उम्मत मुस्लिमा के माँ बाप भी इतने मजबूर हो गए औलादियों से कि अब इसकी फिर मेहंदी की क्या जरूरत थी, उपटन की क्या जरूरत थी, उधर से उस कल्चर को भी खुश करना है और इधर से अपनी जान भी बचानी है। अल्लाह की पनाह, जिस गंदगी में इस वक्त उम्मत चली है, याद रखिए इस उम्मत ने इस रास्ते से डूबना है। हमारा दीन आज भी बड़ा प्यारा है, जब दीन पीछे हो गया तो बाकी बातें तो यही होंगी। तो अपने बच्चों के और अपने और खुद भी, अगर आप खुद सुन रही हैं मेरी बात, आप यंग हैं, आपकी किसी से दोस्ती है, फौरन शादी, और आप अगर एक ब्रदर हैं, एक बेटा है, आप बेटे की उम्र है आपकी, आपको कोई लड़की अच्छी लगती है, साथ पढ़ती हुई, साथ काम करती हुई, आप उस लड़की को नहीं उसके बाप को लव लेटर भेजिए। देखिए आज हमारे बच्चे इतने बेचारे हैं कि मैं कहती हूँ कि हमने उनको दो वो पाटों में रख के पीसा है, चक्की के, वो कहते हैं ना सिल बट्टे में रख के बांट रहे हैं। घरों में हम उनको ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाते हैं, बाहर की दुनिया उनको बेखुदाइयत दिखा रही है, वो एथियस्ट हो रहे हैं। और दूसरी तरफ जो दुनिया और जो पूरा मीडिया आपके साथ लगा हुआ है, आप देख लीजिए। तो ऐसे सारे बच्चों के लिए हलाल तरीका किसी लड़की को अपनी बीवी बनाने का क्या है? आपको अच्छी लगी हो, लग सकती है, कोई बुरी बात नहीं, ज़ुय्यिना लिन्नासी हुब्बुश शहवात, इधर ही रोक लीजिए, जैसे मरसद बिन मरसद ने रोका। और आके अल्लाह के नबी से पूछ रहे हैं, अल्लाह के नबी मैं नाक से निकाह कर लूं? आप भी अपने माँ बाप को साथ डालिए और उस लड़की के बाप या अगर उसका भाई है जो फर्स्ट हैंड है उसको कहिए कि आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। अगर वो बाप पसंद करता है और आप वाकई रियलिस्टिकली देखते हैं वो एक अच्छी लड़की है आपके ख्याल में, दीन में अच्छी है या दुनिया में, तो निकाह हो जाए। और अगर बिलफर्ज उसका महरम उसका बाप नहीं है अगर, तो भाई वो नहीं मानता, तो फिर आप शहवत पे छुरी फेर दीजिए। अल्लाह आपको वो देगा, हदीस में आता है कि जो किसी औरत की ख्वाहिश रखे और फिर अल्लाह के डर से पीछे कर ले अपने आप को, अल्लाह उसके दिल को ईमान से भर देगा। निगाह उठी, एक औरत, एक लड़की, एक बच्ची अच्छी लगी, आप निगाह झुका लीजिए, इस लड़के को अल्लाह ईमान से भर देगा। तो ये कीजिए, आपको अल्लाह ऐसी प्यारी बीवी देगा कि आप सोच नहीं सकते। और सच बताऊं, अगर आपको वही मिलनी है ना, तो लड़की का बाप कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ने बाद में हालात ऐसे बना देने हैं कि वही लड़की आपको मिल जाएगी। तो लिहाजा ऐसी चीजों से आप अपने आप को बचाइए। ना खुफिया आशनाई करने वाली हों, यानी हिडन रिलेशंस, लिविंग टुगेदर, बॉय फ्रेंड गर्लशिप और जो कुछ भी इसको यारी दोस्ती कह ले, इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं। ये सब शहवतों को बढ़ाने वाले रस्ते हैं। तो जब आप किसी को रास्ता दिखा दें और फिर के मंजिल पे ना पहुंचो, तो ये आपकी बहुत बड़ी नासमझी होगी। बस जब ये लौंडियां निकाह में आ जाएं, फिर अगर ये बेहयाई का काम करें, तो इनको आधी सजा है। इस सजा से जो आजाद औरतों की सजा है, इस यानी जब किसी को हक पूरा नहीं मिला तो उसको फिर सजा भी पूरी क्यों मिले? कनीजों से निकाह का ये हुक्म तुम में से उन लोगों के लिए है जिन्हें गुनाह और तकलीफ का अंदेशा हो, और तुम्हारा जब्त करना बेहतर है। मैं यहां दुआ करूंगी अपनी उम्मत के उन सारे जवान बच्चे बच्चियों के लिए कि जिनकी शादियां नहीं हो रही, और जहां माँ बाप को फिर एक थोड़ी सी सख्ती बात करूंगी कि बच्चों की शादियां कर दीजिए। अमेरिका में आज से कई साल पहले एक पूरा सर्वे हुआ था कि आखिर शादियों के रास्ते की रुकावटें क्या हैं। तो एक लंबी लिस्ट नशर हुई थी जिसमें तालीम भी थी, एजुकेशन भी थी, पढ़ना पढ़ाना, और हमारे यहाँ कहते थे अभी अपने पांव पे खड़ा नहीं हुआ। अल्लाह के बंदो, एक साल का बच्चा पांव पे खड़ा हो जाता है। लेकिन आपको तो टॉप मोस्ट रीजन क्या थी हमारे देसी मुस्लिम कल्चर में? पेरेंट्स, माँ बाप के मुतालबे, अभी ये नहीं और अभी वो नहीं और अभी ये नहीं। लड़की नहीं पसंद आती माँ को, अल्लाह की पनाह, भाई बेटे को तो दिखा लो, शायद उसको अच्छी लग जाए। तुमने तो एक बुत ला के रखना पूछने के लिए। तो अल्लाह ऐसों को मैं दुआ देने लगी हूँ कि जो चाह रहे हैं बच्चे, जिनकी शादी की ख्वाहिश है नहीं हो रही, जब्त कीजिए, रोजे रखिए, ये भी शहवत का इलाज है। आपने जवानों को कहा था कि रोजा रखो, शहवत को दबाता है। गंदी चीजें मत देखिए, तन्हाई में किसी लड़की के साथ ना रहे, चिट चैट ना करिए, ऐसे सारे बॉक्सेस अपने बंद कर दीजिए, ऐसे सारे अकाउंट्स क्लोज कर दीजिए जिससे आप पे बोझ पड़ता है। और रियलिस्टिक होकर सिंपल तरीके से, हलाल तरीके से इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अल्लाह ने जो निकाह का मामला रखा है, अल्लाह आज हम देसी माँ बाप को तौफीक खास दे। दोनों मेरा जिक्र है, हाथ बड़े बड़े उठाऊं, हाथ उठा के कहो अल्लाह देसी माँ बाप को तौफीक दे के माँ बाप का बच्चों के रोजे लंबे ना करें, उनकी शादियों को आसान करें। जिंदगियां छोटी होती जा रही हैं और शादियां हमारी मुश्किल होती जा रही हैं। किसी कौम के नस्लों के बरीदा होने की यही अलामत होती है। तो फरमाया तुम्हारा जब्त करना बहुत मुश्किल है। खैर वो औरत, वो मर्द जो तन्हा है, अय्यम है, शादी हुई, मर्द पास नहीं, बेवा हो गई, मुतल्लिका हो गई, उन सब के लिए यहां दुआ है कि अल्लाह उनको इस पे बेहतरीन अजर अता फरमाए। अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और बड़ी रहमत वाला है। आगे आयत 26 से 28, हिदायत और रहनुमाई, ये टॉपिक है। युरीदुल्लाहु लियुबय्यिना लकुम वयहदियकुम, अल्लाह ताला चाहता है कि तुम्हारे वास्ते खूब खोल खोल कर बयान करे और तुम्हें सबसे, यानी तुम्हें तुमसे पहले के नेक लोगों की राह पर चलाए और तुम्हारी तौबा कबूल करे। और अल्लाह ताला जानने वाला और हिकमत वाला है, ये सिखाता है अल्लाह। देखिए हमारे बाप दादा पहले लोग कौन थे? आपके बाप, आपके दादा, उनने तो ये चीजें नहीं थी, आप में कहां से आ गई? तो अपने आप को कहिए कि अगर एंसेस्टर वर्शिप करनी है, आप बाप परस्ती करनी है, बाप दादा की को फॉलो करना, तो हया में देखिए कैसे घर में कानो कान खबर नहीं होती थी और शादियां हो जाती थी और बहुत कुछ था, क्योंकि अल्लाह ताला यही चाहते हैं कि हम अपने नामे अमाल को साफ कर लें और अल्लाह ताला चाहता है कि तुम्हारी तौबा कबूल करे। और जो लोग ख्वाहिशात के पैरो हैं वो चाहते हैं कि तुम इससे बहुत दूर हो जाओ, अल्लाह ताला चाहता है कि तुमसे तख़फ़ीफ़ कर दे, क्योंकि इंसान कमजोर पैदा किया गया। यहां हाईलाइट कर लीजिए, वो लोग जो यत्तबिउन शहवात, ये एक पूरा कल्चर है, एक पूरा गैंग है, आज पूरे मीडिया पे अक्सरियत इनकी है। मैं सबको ऐसा नहीं कहूंगी, बहुत अच्छे लोग हैं। इस वक्त हमारा अपना कितने चैनल से जाता है, बात नहीं है। आप कुरान सीखते हैं कि आप फिक्शन लेते हैं, ये आपका अपना टेस्ट है, ये चीजें बुरी नहीं है। एक वक्त था घर में टीवी होने पे कहते थे नमाज नहीं होती, क्योंकि तस्वीर आ गई घर में, और जहां तस्वीर होती है वहां नमाज नहीं होती। यहां याद रखिए ये मजा नहीं, मौजू नहीं, टेस्ट चेंज कीजिए, बस बात यही है। तो अल्लाह ताला चाहते हैं ख्वाहिशों को इसी मीडिया को यूज कीजिए, लीजिए ये बात और जाइए आप किसी टीवी चैनल पर चलाएं, आपको पूरी इजाजत है, आप रास्ता ढूंढिए, हम आपके साथ हैं। जहां से खराबियां और शहवात हों वहां से कुछ शरीयत नाम जलने लग जाए तो क्या बड़ी बात है। तो आज शरीयत को तो हमने पाबंद कर दिया एक नटशेल में घुटन के साथ, और ख्वाहिशात के पैरोकार तो हर वक्त हमारे बच्चे और हमारी नाल को टपकाते रहे, अल्लाह ने उनका जिक्र किया। अल्लाह ताला चाहता है कि तुमसे तख़फ़ीफ़ कर दे, क्योंकि इंसान कमजोर पैदा किया गया है। तो आप देखिए फ्लो चार्ट में आपको दिख रहा है युरीदुल्लाहु लियुबय्यिना लकुम वयहदियकुम, आयत 26 सूरह निसा। हिदायत अल्लाह की मेहरबानी है, इस वक्त आप हिदायत की तलब के साथ सुन रहे हैं ना, ये अल्लाह का प्यार है, ये अल्लाह की रहमत है आपके ऊपर, और ये अल्लाह के अता करदा कवानीन मुआशरत का सिखाना आपको इसलिए है ताकि आप हिदायत पे आ जाएं। हिदायत की जो तलब जाग गई, अल्लाह ताला आपको उसके ऊपर आगे से आगे बढ़ाना चाहता है, और सालेहीन के तरीकेकार की रहनुमाई है। आप बहुत दूर के सालेहीन पे मत जाइए, आइमा इकराम बुजुर्ग हैं, साहबा हैं, ताबईन, मत जाइए। लोग कहते हैं वो और दौर था, आज का दौर और है, सिर्फ एक नस्ल पीछे जाइए, आपके बाप कैसे थे, और उससे बस एक नस्ल ऊपर जाइए जो आपके प्यारे फेवरेट दादाजी थे। और पर दादा को तो ना देखा ना देखेंगे ना सुनेंगे, उनकी तो बातें भी भूल गई, नाम तक नहीं याद। तो बस पीछे जाइए, इंशाल्लाह अल्लाह हिदायत का रास्ता खोल देगा। आगे है 29 से 33, दोबारा तिजारत और सूद की हकीकत पे बात है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल, ऐ मन वालो अपने आपस के माल नाजायज तरीके से मत खाओ, मगर यह कि तुम्हारी आपस की रजामंदी से खरीदो फरोख्त हो, और अपने आप को कत्ल ना करो, खुदकशी सुसाइड, इस्लाम नहीं मानता इसको, यकीनन अल्लाह ताला तुम पर नहायत मेहरबान है। यहां नाहक माल की बात क्यों आई, कि जब शहवात की जिंदगी बसर होती है तो रिस्के हलाल में गुजारा नहीं होता। ऐसे लोगों को यहां बताया जा रहा है कि तुम दूसरों के माल को बातिल तरीके से ना खाओ। और जो शख्स नाफरमानियां सरकशी और जुल्म से करेगा तो अन करीब हम इसको आग में दाखिल करेंगे, और ये अल्लाह पर बहुत आसान है। रुकिए जरा, वकान ज़ालिकल्लाही यसीर। लोग कहते इतने लोगों को इकट्ठे आग में कैसे अल्लाह डालेगा, तो आज बताइए इतने लोगों को इकट्ठा मलकुल मौत कैसे उसकी रूह कब्ज कर लेता है। अल्लाह के लिए आसान है, सरकशी छोड़ दीजिए, जुल्म छोड़ दीजिए, अल्लाह आग को आपके लिए बुझा देगा। और उसके बाद वो आयत जिस पे आप गौर जरूर कीजिएगा 31, इन तजतनिबु कबाइरमातुन हौना अनहु नुकफ्फिरनकुम सय्यातिकुम वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अगर तुम इन बड़े गुनाहों से बचते रहोगे जिनसे तुमको मना किया जाता है, तो हम तुम्हारे छोटे गुनाह दूर कर देंगे और इज्जत और बुजुर्गी की जगह दाखिल फरमाएंगे। हिदायत की तलब रखने वाला दिल, इस आयत का नंबर नोट कर ले बस। और कबायर जिसकी कोई एक लिस्ट अल्लाह ने नहीं दी, हाँ 7 बड़े गुनाहों, इज्तनिब मोबिकात, सबल मोबिकात के नाम पे, जिसमें शिर्क से लेके माँ बाप की नाफरमानी, जादू, और उसमें जिना भी है और उसमें सूद भी है। अगर आप सिर्फ आज के मुआशरे पे जो कल्चर है उस पे नजर डालें, तो मैं एक डरते डरते जुमला बोल देती हूँ कि आज कबायर को आम करने की पूरी जको दको है, पूरी दुनिया इस वक्त। आप देखिए जिस्म परस्ती को, फिर आप देखिए कौम लूथियत को, सहाक को, और खुद लज्जती को, और इनको हक बनाकर पेश किया जा रहा है, और इसी तरह खुदा नहीं है एथियज्म को, ये सब कबायर हैं। और आज जो टॉपिक चल रहा है शहवात का, तो शहवत के जो आज के मौजूदा इन एंड वेरी फेमस फेज है, उसमें 90% सिन नहीं है, मेजर सिन्स है। امام زاہوی کی کتاب لے لیجئے، انگلش میں بھی ترجمہ ہوگا، اردو میں بھی ہے، اصل میں اردو میں کتاب تھی وہ الکبائر کے نام پہ، تو دیکھ لیجئے اور آج اپنی زندگی کو اس میگنیفائنگ گلاس میں ڈال کر دیکھیے کتنے کبائر ہیں میرے گھر میں، تو پھر سکون کہاں، پھر خوشی کہاں، پھر اطمینان کہاں، پھر اولادیں کیسے فرما بردار رہیں، پھر کیسے آپ کے رزق میں برکت ہو، پھر شوہر بیوی کا دل کیسے جڑے، یہ بات بات پہ جھگڑے کی ہوتے ہیں، یہ کسی نہ کسی کبیرہ میں گھسے ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ فرمایا اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے، مردوں کا اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً ہر چیز کا جاننے والا اللہ ہے۔ دیکھیے زنا ہو، بدکاری ہو، فحاشی ہو، عورت کا اپنا حصہ ہے۔ یہ آیت تو بہت ڈیٹیل طلب ہے لیکن اس وقت آپ کو مجھے اتنا پتا ہے کہ جو ٹاپک چل رہا ہے اس کے ناطے بے حیائی، شہوت رانی، گندگی، فحاشی کو پھیلانے میں صرف مرد برا نہیں ہے، عورت بھی بری ہے۔ عورت کیوں سج کے نکلی، عورت نے کیوں خود کو کٹ پتلی بنایا، وہ کیوں ایک بھمرے کا نشانہ بنی، وہ کیوں ایک تتلی بنی، اور اگر وہ عورت آج اگر کسی کوٹھے پہ بٹھا دی گئی تو پیچھے مرد کون سا ہے؟ آج آپ کے اپنے ملکوں کی گلیوں کونوں پہ ایسے دلال پھر رہے ہیں کہ جو مردوں اور عورتوں کو بیچتے اور بیچ میں پانچ پانچ دس دس ہزار کی کمیشن رکھ کے زنا کرواتے ہیں۔ یا آپ کے شہر قائد کی خبریں موجود ہیں کہیں میرے پاس کہ جہاں جس کو کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ تو ہم عورتیں، میں اس آیت کو اپنے لیے اس وقت سمجھ رہی ہوں کہ دنیا میں بے حیائی پھیلنے میں، فحش پھیلنے میں میرا کتنا حصہ ہے، پھر میری بیٹی کا کتنا حصہ ہے، میری بیٹی جو پہن کے نکلتی ہے اس کا کیا، پھر بیٹی سے پیار کیجئے، روئیے، دوئیے، محبت سے بتائیے کہ ان کپڑوں میں تم باہر جاؤ گی کیسی لگو گی۔ اور آپ دیکھیں کہ حکم ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک مرد اگر باہر جائے، رات جاتے کسی عورت کے حسن پہ نظر پڑی، خواہش آ گئی، کھڑا کر اپنی بیوی سے خواہش پوری کرے، کیا آپ اور میں مردوں کو اس طرح کا مجبور کر دیں گے؟ اور پھر جب ان کے پاس بیویاں نہیں ہوں گی تو وہ کسی اور گندی فلم کو آ کر دیکھیں گے؟ ایسی عورت کو زانیہ کہا گیا جو سچ سمر کر، خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرے کہ لوگ دیکھے، ایڑی چوٹی کا زور لگا کر عورت پہ سجا سنوار کر رکھا، تو کیا وہ ایسی چیزوں کو عام کرنے کے بعد یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ جا کر گھر میں قرآن پڑھیں گے؟ تو جب یاد رکھیے گا کہ ایسے طریقے آتے ہیں تو پھر مقصد تو گھوم گیا۔ آج امت کے اس قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، پڑھانے کا کہاں ہوگا اور دوسروں تک پہنچانے کا کہاں ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسی چیزوں سے ہم سب کو نکال دے۔ اس کے بعد تھوڑا سا پھر وصیت اور وراثت سے متعلقات ہیں۔ فرمایا ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ مرے، اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تم اپنے ہاتھوں سے معاہدہ کرتے ہو، یعنی جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا، یعنی ان کا حصہ دو، حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے۔ اس کے بعد آگے کی آیت نمبر 34 سے 35، زوجین کے حقوق۔ اس سے خوبصورت آیت آپ کو پورے فکشن میں، پوری دنیا کی چیزوں میں، بڑے بڑے پلیٹ فارم، این جی اوز، اور جو ویمن لپ کے نام پہ کام کرتے ہیں، ویمن رائٹس کے نام پہ کام کرتے ہیں، نہیں ملے گی۔ یہ ہے ایک گھر کو ہوم سویٹ ہوم بنانے کا نسخہ۔ پڑھتے جائیے، سنتے جائیے، اور اپنے اپنے گھروں کے حالات کو اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے دیکھتے جائیے کہ میرے گھر میں سکون کیوں نہیں۔ جب عورت مرد بن گئی تو پھر مرد تو بیچارہ عورت بنے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، پس وہ عورتیں جو نیک بخت ہیں اور خاوند کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو ان کو نصیحت کرو، اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو، اور انہیں مار کی سزا دو، پھر اگر وہ تابع داری کرے تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی والا اور بڑی بڑائی والا ہے۔ اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو، یعنی لڑائی کا، جھگڑے کا، کوئی کرائسس چل رہے ہیں، تو ایک منصف یعنی تھرڈ پرسن حکم مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو، اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں میں ملاپ کرا دے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ چند آیتوں میں اللہ نے ہوم سویٹ ہوم کا نقشہ دے دیا۔ آج شہوت رانی اور اشتہا پسندی کا ایک اور بہت بڑا دروازہ کھلتا ہے ہمارے لائف سٹائل سے۔ مرد قوام بنے، ٹیک کیئرر ہے، ذمہ دار ہے، ना तो यह इक्वलिटी है ना बराबरी है। देखिए आप समझिए, अल्लाह ने हर जगह कहीं ना कहीं साफ बराबर कर दिया है। मसलन औरत और मर्द, अब शोहर और बीवी के रूप में आते हैं, यहां तो उसकी बात है, लोग एतराज करते हैं मर्द बराबर औरत बराबर, हालांकि आप देखिए पीछे भी आप पड़े वाले ही हिन्ना दर्जा एक का फर्क है। बस आप अगर आप 10 लिखना चाहें, 10 लिखने के डिफरेंट रोल्स लिखिए, मिसाल देती हूँ 5 और 5 लिखिए, रिजल्ट 10 है। लिखिए जरा, ये एक्टिविटी करें आपको अंदाजा हो। 5 + 5 = 10, 6 + 4 = 10, 3 + 7 = 10, 2 + 6, 2 + 8, 2 + 8 = 10 और इसी तरह 1 + 9 = 10। रिजल्ट बराबरी है। इस्लाम अगर बीवी को मर्द के साथ बराबरी के साथ रखता है तो इसका फिगर है 49:51, 49:51 + 10 यानी 4 to 6 = 10। बीवी के सूरत में तो ये रखा, तो मां की सूरत में क्या है? 3 हिस्से मां के, बाप के कम, वहां वो रेशो पूरा होता है। जो जितना लगाता है शौहर बीवी पे लगाता है, वो घर बनाता है, वो मेहर देता है, वो उसके सोने का पलंग खरीदता है, वो उसके घर के खाने के इस्तेमाल की चीजें लाता है, इसलिए उसका दर्ज है। और औरत को अगर बराबर कर दिया जाए तो औरत तलाक लेती रहे, मर्द बेचारा कहां से इतना पैसा लाए। पर मसला क्या हुआ? वापिस दुखती रख माँ बाप माइंड ना करें। शादी में लड़की की शादी, बेटी की शादी, आज गरीब भी आवाज लगाता है, मासी भी आवाज लगाती है, बेटी की शादी करनी है, बाजी पैसे दो, ज़कात लगती है। हमसे लोग सवाल करते हैं बेटियों की शादियों के लिए देते हैं, ज़कात लगती है? तो मैं कहती हूँ ये कोई नहीं सवाल करता कि बेटे की शादी करनी है तो ज़कात लगती है। हालांकि देखा जाए कि इस्लाम ने शादी निकाह से लेके बाद की जिम्मेदारियां मर्द पे रखी। अब हाँ हो तो मामला उलट गया, आप सिर्फ मूवीज एंड फिल्मों में इंडियन गाने नहीं लगाते, आपने सारा कल्चर उधर से लिया। जहेज का तस्वुर इस्लाम में नहीं, बरात का तस्वुर इस्लाम में नहीं है, मेहंदी उपटन का तस्वुर इस्लाम में नहीं है। तो जिधर से आपने गाइडलाइन ली फिर आपको तो उधर जाना पड़ेगा। इस्लाम में ऐसी कोई चीज नहीं। तो जब शादी की बुनियाद सीधी कर लेंगे तो बाकी घर सीधा होगा। और अल्लाह ताला बीवी को सालेहात कानेतात बन के रहने वाला और मर्द को जिम्मेदार बनाए। फिर वो मर्द कैसे काम करे जो आपके वीजों पे आए? बेटी बेचारी ने घर लिया, काम किया, फिर मर्द को लाई, 2-4 साल में वीजा लगा, वो फारिग हो गया। ये है, ये नॉर्वे वालों ने मेरा जुमला समझ लिया होगा, और ये वेस्ट में गली गली ये बात है। आप क्यों उल्टी जूती पहनते हैं? मैं अपनी ही जूती जो मुझे बड़ी पसंद है, मैं पिछले 5 साल से पहन रही हूं और 10 दफा धो के उसको साफ कर चुकी हूं, मैं नहीं देती किसी को। क्यों नहीं देती? मुझे मजा आता है। वही जूती आज जाते हुए मैं उल्टी सीधे और सीधी उल्टे में डाल दूं, मेरे से चला ही नहीं जाएगा, फिर मैं गिरूंगी। तो जब जूती उल्टी पहनकर गिरूंगी तो शरीयत की जगह शहवत को लेकर उल्टे पांव पड़ेंगे, तो फिर जो हो रहा है वो देखिए, फिर क्यों रोते हैं? फिर आप देखिए, दर्जी का तो इतना यकीन है कि उल्टा इस आगे ना पहनो, पीछे का आगे ना पहनो, दर्जी का और जूता बनाने वाले का यकीन है, तो वो साहिब शरीयत का कोई यकीन नहीं। आज हम शहवात को प्रमोट करके जुल्म पे, और नाम क्या है? ये तो नहीं है, नाम है रस्म का, नाम है चौ का, नाम है मुआशरे में जाने का, प्यार, और क्यों कमाए? 98% पेरेंट्स की जिंदगी का मकसद अल्लाह के दीन की सरफराजी नहीं है, बच्चों की शादी है, घर बनाना। पहले अपना एक घर किस्तों पे लिया और उसमें भी इंटरेस्ट डाल दिया, फिर बच्चे का घर लिया उस पर इंटरेस्ट है। आपने तो तौबा कर ली है कुरान पढ़ के 10 साल के अंदर, अब बच्चे का अकाउंट क्यों खोल दिया आपने? नहीं सुनते नहीं है, तो फिर आप मान लीजिए कि आपकी कब्र में कोई एक खिड़की आपने खोल के रखनी है। कैसे हो सकता है? देखिए, घर में एक बंदा आग लगाए या कोई दूसरा लगा दे, घर जलेगा तो सारे जलेंगे। अपनी नस्लों को हाथ पकड़ कर रोकिए इन गंदगियों से, वरना हम तो डूबे हैं, तुमको भी ले डूबेंगे। आगे देखिए 36 आयत में हकूकुल्ला और हकूकुल इबाद का खूबसूरत नमूना, जिसमें आप कह सकते हैं बदीहात उम्मा, उम्महातु शरिया भी कह लीजिए, यानी बुनियादी बेसिक थिंग। और इसको आप कहिए एनजीओ बनानी है तो इस नाम पे बनाइए। आज हुकूकुल इबाद के नाम पे, वीमेन राइट के नाम पे, एनिमल राइट्स के नाम पे हम कहते हैं सारा काम वेस्ट कर गया। वेस्ट ने नहीं किया, ये आयत 36 बता रही है कि इस्लाम इज अ ह्यूमैनिटेरियन रिलीजन, इंसानियत को हकूक मिलेंगे तो इंसान से। और दर्द के साथ एक जुमला बोलूंगी, पिछले 300 साल से इंसानियत बिलख रही है, तरस रही है कि इस्लाम को नाफिज करो और लोगों को हकूक दो, लेकिन आज दिन ब दिन दायरा तंग से तंग हो रहा है। इसीलिए इस वक्त मेन कंट्रोल अल्लाह ने अपने हाथ में लिया हुआ है। एक बड़ा होता है लोगों को मौका देता है काम करने का, तुम कर लो, ट्रस्ट होता है, यकीन होता है, इतमाद होता है। एक वक्त आता है कि कुछ गड़बड़ होती है, एक दफा रोका, दो दफा रोका, बाप क्या कहते हैं बेटे को, इधर कर, देख गाड़ी मुझे, मैं चलाऊंगा, तुझे भी गाड़ी नहीं चलानी आती। इस वक्त ये कोरोना का साल 2020 से लेकर 21, बल्कि अब तो रमजान ही चल गया, उसमें से रमजान टू रमजान ये कंट्रोल अल्लाह ने लिया हुआ। आप और मैं मोहरे हैं। आपके अपने घर में कितने लोग आए हैं कंट्रोल पीछे कोई और कर है? डरते दबकते आप अपने मेहमानों को डील नहीं कर सकते। घर में दो मियां बीवी साथ बैठते हुए डरते होंगे कि पता नहीं कल ये भी पाबंदी ना लग जाए। आपको क्या हो गया है? ये कभी सोचा सुना? शहवाद वाली सोसाइटी में ये होगा। आज आप देखिए कि शहवत के दौर के सारे कैसीनोस, सारे नाइट क्लब्स अल्लाह ने बंद करा दिए। तुम नहीं बंद करते थे, मैं कराता हूं। पहले एड्स का खदशा डाल दिया कुछ सालों पहले, आज कोरोना का डाल दिया। शेक हैंड आप नहीं खत्म करा सके, अल्लाह ने खत्म करा दिया। हगिंग आप नहीं करा सके, गलत ताल्लुकात आप नहीं करा सके, अल्लाह ने कराए। और मैं रात को सोच रही थी कि अल्लाह वाकई अब क्यामत की वो निशानी बिल्कुल करीब है, क्योंकि हम अपनी आंखों से इसके मनाजिर देख रहे हैं। तो जरा से इन अगली आयतों को पढ़ते वक्त शरीयत वर्सेस शहवत को देखते रहिएगा। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैया, और अल्लाह ताला की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक न करो, और माँ बाप के साथ सलूक और एहसान करो, और रिश्तेदारों से और यतीमों से और मिस्कीनों से और करावदार हमसाये से और अजनबी हमसाये से और पहलू के साथी से और रास्ते के मुसाफिर यानी राह के मुसाफिर से और इनसे जिनके मालिक तुम्हारे हाथ हैं यानी गुलाम और कनीज। यकीनन अल्लाह ताला तकब्बुर करने वाले शेखी खोरों को पसंद नहीं फरमाता। अल्लाह ताला हमें इन अहकामात पे अमल की तौफीक दे। आगे आए 37 से 42 कुछ मजीद चीजें। टॉपिक है बुखल और रियाकारी की मजम्मत। अल्लज़ीन यबखलून व यामरून अन्नास बिल बुख्ल, जो लोग खुद बखीली करते हैं और दूसरों को भी बखीली करने को कहते हैं, और अल्लाह ताला ने जो अपना फजल इन्हें दे रखा है इसे छुपा लेते हैं। हमने इन काफिरों के लिए जिल्लत की मार तैयार कर रखी है, और जो लोग अपना माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करते हैं और अल्लाह ताला पर और क्यामत के दिन पर ईमान नहीं रखते, और जिसका हम नशीन और साथी शैतान हो तो वो बदतरीन साथी है। रुकिए जरा, शहवत का जिक्र आ गया। दिखावे पे माल कहाँ खर्च होता है? 8 लाख रुपए के फूल आते हैं आपके आज एक शादी के फंक्शन पे, और 10 लाख का आपके होटल का और आपके उस हॉल का डेकोर है जिसके लिए आपने ऑर्डर दिया, और 10 लाख लेता है मूवी मैन, और 5 लाख लेता होगा शायद फोटो सेशंस वाला। पढ़िए इस आयत को, और आज देखिए कोरोना नहीं आना चाहिए था। अल्लाह ने जो लिमिटेड वेडिंग करवा दी, ये हक था उसका। तुम दिखावे पे पानी को, पैसे को पानी की तरह बहाते हो। वो मेकअप जो चंद घंटे के बाद उतारना मुहाल हो जाएगा, जुड़ेल लगेगी लड़की उसके हालत में, अगर सो जाएगी सुबह उठेगी क्या भक से लगेगी, तुम उसके लिए 1-1 लाख देते हो। और मुझे आज बोलने दीजिए, शायद आज के बाद ना मैं बोलूं इस मौजू पे, कि पहले तो लड़कियों से शादियां करवा, लड़कियों पे दुल्हनों को तैयार कराते थे ना, घर की माएं बहने, चलो घर के कमरे में काम हो गया, चलिए कोई बात नहीं, आपको जरा सी और अच्छा होना है, थोड़ा आगे गए, फिर आपने पार्लर, फिर पार्लर से आप स्टूडियो पे आ गए, और आज आप लड़कों से अपनी दुल्हनें तैयार कराते हैं। टिकट देके जहाजों के पूरे पाकिस्तान में लड़कों को बुलाते हैं, आओ हमारी दुल्हन तैयार करो। हया भी मर जाए अपनी बेगैरती के इजहार से। वो शौहर तो कहीं बाद में उसको देखेगा जो सारे मर्दों ने उनकी नजरों को चुरा लिया, मूवी मैन जितने क्लोज सर्कट उसके कट्स लेगा और जो बनेगा। कहां जाते हैं माँ बाप? देखिए मेरा इस वक्त गुस्सा यंग्स पे नहीं है, माजरत के साथ, मैं आप मूवी बनाते हैं मुझे इससे कोई गिला नहीं है, मुझे इस वक्त किसी से बात नहीं करनी, क्योंकि मैं उर्दू बोल रही हूं और उर्दू बोलने वाले ज्यादा आज पेरेंट्स सुनने वाले हैं। बच्चों को तब उर्दू भी ना सिखाई वेस्ट में रहते हुए हमने, लेकिन शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। वाकई आज अंदाजे बयां शोख नहीं है, मैं मानती हूं, लेकिन ये सच है। वो माँ बाप अपने बच्चों की शादियों पे क्यों शरीक होते हैं? वो अपनी बेटी को क्यों दुआ देते हैं कि जा इस घर से, अब तेरा जनाजा ही आए, कि जिन्होंने उस बेटी की सारी हया पमाल कर दी। अगर आप अपने पैसे से अपनी बेटी का फोटो सेशन के पैसे दे रहे हैं, आपको माँ बाप कहलाने का हक नहीं है। आपने सारी जिंदगी मेहनत से कमाई की है, आपने 1-1 दिन लगाया, रातों को काम किया, दिन को किया, और आपका वो पैसा जाकर किसी शहवत के काम में चला गया, आपको बाप होने का हक नहीं। मत कमाइए, इससे तो बेहतर है सब छोड़ छाड़ कर बैठ जाएं, क्योंकि हदीस में आता है कि क्यामत के करीब 1 औरत 4 मर्दों को जहन्नुम में लेकर जाएगी। आप पहले बीवी के नाम पर मजबूर थे, बीवी ने मजबूर किया आपको, फिर माँ बाप भाई बहनों ने कर दिया मजबूर, और आज आप बेटियों के नाम पे क्या करें? बेटी का मामला क्यों, बेटी का मामला कहाँ से आई है ये बेटी, किसको दी आपने बेटी? तो आज दिखावा और शो ऑफ बहुत बड़ी वजह बन गया हमारे कल्चर में शहवत को आम करने का। अल्लाह ताला बचा के रखे। और अल्लाह कह रहे, मैं नहीं कह रही कैसे लोग शैतान के साथ ही है, वो मैं यकुन शैतान लहू करीना। अल्लाह ताला बचा के रखे हम सबको। फिर आगे देखिए जरा अंदाज को महसूस कीजिएगा, ऐसे लगता है कि जब जोश आता है ना तो आगे अल्लाह का प्यार होता है। अल्लाह ताला अब आगे दिलों को नरम करते हैं। मुझे पता है तुम गलत चीजों में आ गए हो, मुझे पता है तुम्हारी जिंदगी के तरीके बदल गए, मुझे पता है कि सारे माशरे में ये हो रहा है तो तुमने भी यही करना है। लेकिन वमा ज़ालैहिम लौ आमनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वअन्फ़क़ू मिम्मा रज़क़हुमुल्लाह वकान अल्लाह बिहिम अलीमा, भला इनका क्या नुकसान था। इस दर्द को महसूस कीजिए। ये अल्लाह ताला आपको तौबा की तरफ बुला रहा है, अल्लाह ताला आपको माइल कर रहा है। आओ तो सही, पीछे क्या, अल्लाह पीछे का नहीं पूछता, पीछे का दूसरे पूछते हैं। अल्लाह आपको तौबा की दावत देता है। अल्लाह पर ईमान लाना अगर मुश्किल लगे तो साथ ही कह दिया और क़यामत के दिन पर ईमान लाते और अल्लाह ने जो इन्हें दे रखा इसमें से खर्च करते, अल्लाह इन्हें खूब जानने वाला है। बेशक अल्लाह ताला एक जर्रा बराबर जुल्म नहीं करता, और अगर नेकी हो तो इसे दुगनी कर देता है और खास अपने पास से बड़ा सवाब देता है। क्या पता चला, जो माल शहवत के नाम पे लगा चुके थे उसको अगर अल्लाह के रस्तों में लगाया होता, अपने बच्चों के सदके और उनके ऊपर आने वाली वबाओं के सदके में, तो इनके घर बस जाते। करोड़ों लगाकर भी शादी चंद साल न चली, वो सारा माल तुम्हें कहा जाता है ना अल्लाह के रस्ते में दो, तो शायद पुराना कोई बचा खुचा नोट, कोई पुरानी खराब चीज निकाल कर करते कि लो पकड़ो ये दे दो। यानी आज जब हम अपने बच्चों की शादियों के ऊपर ऐसी बातें खर्च करें और दीन के नाम पर जब हम इस तरह की बातें करें तो उसका नुकसान क्या होता है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं। तो इस आयत में दावत है कि अपने पैसे पानी की तरह मत बहाओ, मत जाया करो इन चीजों को, अल्लाह ने तुम्हें जो दिया है उसको इस्तेमाल करो। फिर इसके बाद देखिए जुल्म की बात है ना, इंसान अपने कदमों पे खुद जुल्म करता है। अगली आयत में जरा सा इस दर्द को महसूस कीजिएगा जो अल्लाह सुभान व तआला देते हैं। किस चीज का दर्द, किस चीज का मामला, कि जिसमें क़यामत का दिन होगा। बिल्कुल अपने आप को तन्हा कीजिए, कोई इस वक्त भी आपके साथ कोई मामला नहीं कर सकता, आप हैं, दुनिया से रुख्सती हो चुकी, क़यामत का दिन आपके सामने है और आप वहां खड़े कर दिए गए और अल्लाह सुभान व तआला ने आपको वहां खड़ा करके आपसे अगर जिंदगी भर का सवाल पूछ लिया, क्या जवाब देंगे, किधर जाएंगे? अब इसको सुनिएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। फकैफ इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जीना बिकाला हाउलाई शहीदा। अल्लाह के नबी को जहन में लाइए, ये हैं वो आयतें कि जिस पे खड़े होकर आप रोने लग गए और सहाबी को परेशानी होगी कि अल्लाह के नबी इस तरह से क्यों सोच रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। बस क्या हाल होगा जिस वक्त के हर उम्मत में से हम एक गवाह लाएंगे और आपको इन लोगों पर गवाह बनाएंगे। रुकिए जरा, अल्लाह के नबी से मोहब्बत का दावा करने वाले हम सब मुसलमान, जद्दी पुश्ती मुसलमान, इस वक्त अपने आप को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करें और हमारे सारे नामे आमाल उनके पास सामने पेश किए जा रहे हैं, तो क्या हाल होगा, क्या बनेगा उस दिन? हम कैसे अल्लाह ताला के सामने जवाब देते देते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जवाब देंगे? इसी पे अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि अल्लाह तू गनी है, मेरा हिसाब न लेना क़यामत के दिन। यानी तुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं मेरे जैसे और बहुत सारे हैं, तो तू मेरा हिसाब ना ले। लेकिन अगर तूने वाकई लेना है तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छुपा कर लेना, क्योंकि मैं उनके सामने कल शर्मिंदा नहीं होना चाहूंगा। क्या कल हम अपनी ये लैविश वेडिंग्स और अपने लस्ट और शहवत और ख्वाहिश से भरे हुए कल्चर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होता देख सकेंगे? आज अगर अल्लाह के नबी दुनिया में मौजूद होते और हम उनको इनवाइट करते, हम तो किसी दीनदार को ना करें, क्योंकि एक तो इन्होंने आना कोई नहीं और आ गए तो फिर हम नहीं कर सकते वो मामले और जो ये करते थे इस तरह की बातें। तो लिहाजा क्या कहा, जिस रोज काफिर और रसूल अल्लाह के नाफरमान یعنی جس روز کافر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان لوگ آرزو کریں گے، کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا اور وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ بس اس پہ تو غور کیجئے، یہ تدبر کی آیت بنا لیجئے اس بارے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچائے، شرم سارگیوں سے بچائے۔ آگے آیت 43، غفلت کی نماز سے بچنا ہے۔ یہاں نماز کا تعلق دیکھیں گے آپ ابھی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے میں مست ہو کر نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی جب نشے میں ہو، جب تمہارے پاس کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو کبھی بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں بھی جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ہاں اگر رات چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ گویا کہ نماز کی جو موجودہ ہمارے پاس صورت ہے اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں ایک بات بتا دی، جب بندہ شہوت کی طرف بلائی جانے والی بڑی چیز شراب، ڈرگز، ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے تو اول تو نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اور نماز پڑھ لو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نماز میں ہم نے پڑھا کیا تھا اور کس طریقے سے پڑھا تھا۔ تو لہٰذا اس آیت کو پڑھتے وقت ایک دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں نمازوں کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے بعد آیت 44 سے 50، شرک کی قباحت۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، کیا تم نے نہیں دیکھا، کن کو، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا اور وہ گمراہی خریدتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ کتاب آنے کے بعد بھی گمراہ رہے اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے بھٹک جاؤ؟ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا کافی ہے۔ اللہ تمہارا بھی مددگار بن جا۔ بس یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور سن اس کے بغیر کہ تو سنا جائے اور ہماری رعایت کر، لیکن اس کہنے میں اپنی زبان کو پیچ دیتے ہیں اور دین میں تانا دیتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی اور آپ سنیے اور ہمیں دیکھیے، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر اور نہایت ہی مناسب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی ہے، پس یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ اہل کتاب، جو کچھ ہم نے نازل فرمایا، جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے، جو تمہارے پاس ہے، اس پر ایمان لاؤ، اس محبت کو محسوس کیجئے۔ اللہ تعالیٰ تو اہل کتاب کو بھی ایمان کی دعوت دے اور ہم اپنے ہی مسلمانوں سے اسلام اور ایمان کے دروازے بند کر دیں، تو ایسا ظلم نہ کیجئے۔ اور ساتھ ہی کہہ دیا، اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور انہیں الٹا کر پیٹ کی طرف کر دیں، یا ان پر لعنت بھیجیں جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی، اور ہے اللہ کا کام کیا گیا، یعنی اللہ اپنے کاموں کے لیے کسی کا محتاج نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشتا، اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ کہاں لکھی اس پہ جملہ؟ قیامت میں، مرنے کے بعد، دنیا میں نہیں، دنیا میں بڑے سے بڑے مشرک کی بھی اللہ کی توفیق سے بچنے کی اور اس کے توبہ کر کے پلٹنے کی گنجائش موجود ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے، اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا کہ آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیز کی اور ستائش خود کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے، کسی پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو کیا پتہ چلا کہ اپنی تعریفیں نہ کریں اور دوسروں کی برائیاں نہ کریں۔ یہ کوڈ لکھ لیجئے، اپنی تعریفیں اور دوسروں کی برائی نہیں کرنی چاہیے، زیادہ زیادہ کریے تو اپنے ہی دامن میں جھانک کر دیکھیے کہ میرے لیے اس بارے میں کیا ہے۔ دیکھو یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ حرکت صریح گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ آیت 51 سے 53، ہدایت پر کون؟ آپ نے اس کو سننا ہے، پامسٹری اور ستاروں کا حال معلوم کرنا، قسمت معلوم کرنا، تیر پان سے تاش کے پتے، یہ ساری شہوات کی طرف بلانے والی کچھ چیزوں کے بھائی بہن ہیں۔ کیسے؟ فرمایا، یومنون بالجبت والطاغوت، کیسے؟ அலம் தரையில் அல்ல சீன ஊத்து நசீபமெனல் கிதாபியூ மெனூன் அபில் ஜிப்தி வத்தாகூத். கியா ஆப்னே இன்னே நஹீ தேகா ஜின்ஹே கிதாப் கா குச் ஹிஸ்ஸா மிலா ஜோ புத் கா ஔர் பாதில் கா மாபூத் கா ஏதிகாத் ரக்தே ஹே, யானி ஜோ புத் கா ஔர் பாதில் மாபூத் கா ஏதிகாத் ரக்தே ஹே ஔர் காஃபிரோ கே ஹக் மே கஹதே ஹே கீ யே லோக் ஈமான் வாலோ ஸே ஜியாதா ராஹே ராஸ் பர் ஹே. யஹி வோ லோக் ஹே ஜின்ஹே அல்லாஹ் தஆலா நே லானத் கீ ஹே ஔர் ஜிஸே அல்லாஹ் தஆலா லானத் கர் தே தோ இஸ்கா கோய் மததகார் நா பாயேகா. கியா இன்கா கோய் ஹிஸ்ஸா சல்தனத் மே ஹே? அகர் ஐசா ஹோ தோ ஃபிர் யே கிஸீ கோ ஏக் கஜூர் கீ குட்லி கே ஷகாஃப் கே பராபர் பீ குச் நா தேங்கே. கோயா கேசே லோக் தில் கே சோட்டே ஹே. தோ இஸ்லாம் மே ஐசி தமாம் சீஸோ கீ முமானியத் ஹே. ஷஹவாத் கீ தரஃப் புலானே வாலி யே பீ சீஸே பலே ஹி ஷாதியா முஷ்கில் ஹே லோகோ கி. அப் கஹனே லகே கிஸ்மத் தேகேங்கே, பலே சித்தாரே தேகேங்கே, ஸ்டார்ஸ் மேச் கராயேங்கே, ஃபிர் தோ ஜின் பிச்சாரோ கி ஹோ ரஹி தி உன்கி பி நஹி ஹோகி. அல்லாஹ் தஆலா ஹமாரி நௌஜவான் நஸ்ல கோ இன் சாரி கபாஹத்தோ ஸே பச்சா கே ரக்கே. ஆயத் 54-57 ஹஸத் கி கபாஹத். அல்லாஹ் தஆலா இஸ்மே ஃபர்மாதே ஹே, அம் யஹ்ஸுதூன் நாஸ் அலா மா அலாமுல்லாஹு மின் ஃபத்லி. யா யே லோகோ ஸே ஹஸத் கர்தே ஹே இஸ் பர் ஜோ அல்லாஹ் நே இன்கோ அப்னே ஃபஜ்ல் ஸே தியா. பஸ் ஹம்னே தோ ஆலே இப்ராஹிம் கோ கிதாப் ஔர் ஹிக்மத் பி தி ஹே ஔர் படி சல்தனத் பி அதா ஃபர்மாயி ஹே. யஹாம் யாத் ரக்கியே கி ஜித்னா ஷஹவத் கா கல்ச்சர் ஆம் ஹோகா உத்னா ஹி ஹஸத் படேகா. சந்த் சமக்தே சேஹரே அகர் குச் லோகோ கி ரால் டபகாதே ஹே தோ பஹத் சாரி லட்கியோ கோ டிப்ரெஷன் மே டால் தேதே ஹே. ஷஹவத் கிதா புலானே லியே ஏக் சீஸ் பே ஜரூர் பாத் கருங்கி ஔர் வோ ப்ரொஃபைல்ஸ் பே லகி ஹுயி ஹூப்சூரத் தஸ்வீர் ஹே. ஆப்கி ஹூப்சூரத் தஸ்வீர் தேக்கர் ஜோ அஸல் மே ரியாலிட்டி ஹே கே நீ யே இஸ் வக்த் மௌஜூ நீ ஹே, கோய் வாஜிபி ஷக்ல கி லட்கி யா உஸ்கி ப்ரொஃபைல் பே லகி வோ ஷக்ல தேக்கர் உஸ்கா ரிஷ்தா நா ஹோனா கௌன் இஸ்கா நுக்ஸான் புக்தேகா. இஸ்லியே அப்னோ கோ திகாயியே, பியாரோ கோ திகாயியே, ஷோஹர் கோ அப்னி ஹூப்சூரத் போஸ் மே லகி ஹுயி தஸ்வீரே திகாயியே, பாப் ஔர் பாய் கோ திகா தீஜியே அகர் தில் சாஹதா ஹே, பேட்டோ கோ திகா லீஜியே அச்சே கப்டே, கரோ கோ கியூ திகாத்தே ஹே. இஸ்ஸே ஷஹவத் ஆம் ஹோத்தி ஹே. கித்னா அச்சா லகே ஹம் சப் கி ஐடி கே ஊபர், ஹம் சப் கி ஐடி கே ஊபர் அல்லாஹ் கி பாத் லகி ஹோ. யா ஏக் சோட்டி சி பாத் தில் மே ஆயி அகர் கர் சகே தோ கர் லே. ஜித்னே லிஸ்னர்ஸ் பாஹர் ஸே பி சுன் ரஹே ஹே ஔர் அதர் பி, ஆப் இஸ் வக்த் அப்னி ப்ரொஃபைல் பே யானி ஆஜ் ஜோ பாத்தே ஆப் சுன் ரஹே ஹே அகர் ஆப்கோ அச்சி லகி, ஆப்கோ ஃபாயதா லகா ஔர் ஆப்கோ லக்தா ஹே கி இஸ்கி தூஸ்ரோ கோ ஜ்ரூரத் ஹே, தோ கஹ்னே கி க்யா ஜ்ரூரத் ஹே, சாத்தி பனியே ஆயியே, டீம் கா ஹிஸ்ஸா பனே, ஹம் சப் கா காம் ஹி ஹே, கலி படக்கர் ஆயே, குந்தும் ஹைர உம்மத் நுக்ரிஜத் லின்நாஸ். தோ இஸ் வக்த் அப்னே ஸ்டேட்டஸ் பே, அப்னே ப்ரொஃபைல் வாட்ஸ்அப் ஹே யா வோ டிக்டாக் ஹே யா ஆப்கா வோ கோய் ஃபேஸ்புக் கா ஹே, ஆப் யே தௌரே குர்ஆன் கா ஃப்ளையர் லகா லீஜியே ஆஜ் கே லியே. கோய் பூச்சேகா தோ பதா தீஜியே, இஸ் பாரே கா லிங்க் தே தீஜியே. தோ இன்ஷால்லாஹ் மே துஆ தூங்கி கே ஜோ யே காம் கர்தே ஹே ஔர் இஸ் தரஹ கே ஔர் பீ கஹீ பீ கிஸீ கே சாத் கர் லீஜியே, ஜோ மேரா நீ சுன் ரஹே கிஸீ ஔர் கா சுன்தே ஹே உன்கா கர் லீஜியே, லேகின் அப்னே ஆப்கோ சல்தே ஃபிர்தே தாயி பனாயியே. ஆப்கி இன்ஸ்டாகிராம் பே ஹே, ஆப் கிஸி ஔர் சேனல் பே ஹே, ஆப்கி ப்ரொஃபைல் பே சப்கோ ஏக் ஹி தஸ்வீர் திகே, ஆப் ஹஜாரோ லோகோ கி பிக்சர்ஸ் கோ ஜப் லோக் தேக் கர் ஏக்தம் கஹேங்கே கி யே சப் க்யா கர் ரஹே ஹே, கோய் தோ பாத் ஹே. தேகியே யே பி ஏக் பாத் ஹோத்தி ஹே, ஜிஸ் துகான் பே பஹத் கிராஹக் கோ லோக் கஹதே கோய் அச்சா மில் ரஹா ஹோகா யா சஸ்தா ஹோகா, ஔர் ஜஹாம் கோய் நா தேகே லோக் கஹதே ஹே குச் பி நீ அச்சா ஹோகா, யே ஏக் பியர் ப்ரெஷர் ஹே. தோ ஆப் அப்னா ப்ரெஷர் பனாயியே, ஆப்கா சிர்ஃப் இத்தனி சோட்டி சி நேக்கி கா கர் லேனா ஹோ சக்தா ஹே பஹத் சாரே லோகோ கோ ஏக் புரே அஞ்சாம் ஸே பச்சா லே, ஜிஸ்கா தஸ்கரா ஆகே ஆ ரஹா ஹே. ஃபர்மாயே ஃபிர் இன்மே ஸே பாஸ் நே இஸ்கி தர் பாஸ் இஸ்ஸே ருக் கே, யானி கிஸீ கோ மான்னே நா மான்னா, நா மானே ஆப்கோ அஜர் மிலேகா. ஔர் ஜிஸ்கோ அல்லாஹ் கி பாத்தே சாரி ஜோ பி அம்பியா கிராம் கே தஸ்கரோ ஸே லேகர் தப் ஸே லேகர் ஆஜ் தக் ஆதி கயீ கோய் நஹீ மான்தா ஔர் ருக் கயா அபூ ஜஹல் ஜைசா அப்துல்லா பின் உபை ஜைசா, தோ கஹ தியா கே ஔர் ஜஹன்னும் கா ஜலானா ஃபிர் காஃபி ஹே. யானி பாஸ் இஸ்ஸே ருக் கே ஔர் ஜஹன்னும் கா ஜலானா காஃபி ஹே. ஜின் லோகோ நே ஹமாரி ஆயத்தோ ஸே குஃபர் கியா இன்ஹே ஹம் யகீனன் ஆக் மே டால் தேங்கே, ஜப் இன்கி கால்லே பக் ஜாயேங்கி ஹம் இன்கே சிவா ஔர் கால்லே பதல் தேங்கே தாக்கி வோ அஜாப் சக்தே ரஹே, யகீனன் அல்லாஹ் தஆலா ஗ாலிப் ஹிக்மத் வாலா ஹே. ஆஜ் சயின்ஸ் நே பதா தியா கி ஜல்னே கா அஸர் கால் பே ஹோதா ஹே, ஸ்கின் ஜல் ஜாயே தோ ஜல்னே கா தர்த் கத்ம ஹோ ஜாதா ஹே. அல்லாஹ் சுப்ஹான தஆலா நே யஹாம் யஹி பாத் கர் தி கி ஃபிர் மே காலை பதல்தா ரஹூங்கா தாக்கி முஸ்தகில் பேன், அல்லாஹும்ம லா தஜல்னா மின்ஹும். ஆப் டகே தோ அல்லாஹ் நே ஆப்கோ குஷ்கபரி பி சுனா தி, வல்லஜீனா ஆமனு வஅமிலு ஸாலிஹாத் சனுத்கிலுஹும் ஜன்னாத்தின் தஜ்ரி மின் தஹ்திஹா அல்அன்ஹார், ஔர் ஜோ லோக் ஈமான் லாயே ஔர் ஷாயஸ்தா அமல் கியே ஹம் அன் கரீப் இன்ஹே இன் ஜன்னதோ மே லே ஜாயேங்கே, ஜின்கே நீச்சே நஹரே பஹ் ரஹீ ஹே, ஜின்மே வோ ஹமேஷா ஹமேஷா ரஹேங்கே, இன்கே லியே வஹாம் சப் சுத்ரி பீவியாம் ஹோங்கி. ஹைலைட் கரியே இஸ் லஃப்ஸ் கோ, شہوت سے پاک معاشروں میں بیویاں صاف ستھری ہوتی ہیں۔ شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر فرسٹ پارٹنر ہوتا ہے جس سے وہ اپنی خواہش پوری کرتے ہیں۔ آج کے دور کے وہ لوگ جو اپنی شہوت کو اتنا بڑھا چکے کہ شادی سے پہلے ہی وہ اپنے آپ کو ان ٹیسٹ کو یوز ٹو کرا چکے، پھر ان کے لیے ایک دوسرے میں کشش نہیں رہتی۔ اللہ نے جنتی عورتوں کی بات کر کے یا ازواج مطہرہ کہہ دیا تو سوچئے دنیا میں یہ پھر کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ فرمایا ہم انہیں گھنی چھاؤں اور پوری راحت میں لے جائیں گے، اور ایسے ہی کپل خوش رہتے ہیں کہ جو واقعی ایک دوسرے کے لیے بالکل نئے ہوتے ہیں۔ سر حدیث لیجئے اس پہ، سنن نبی داؤد کی روایت 4903، سورۃ النساء 52 پہ یہ حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، تم لوگ حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا لیتا ہے جیسے آگ ایندھن کو کھا لیتی ہے، یا کہا کہ گھاس کو کھا لیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حسد سے بچائے، نیکیوں کے حسد سے بھی اور برائیوں کے حسد سے بھی۔ اچھا بندہ، یہ بھی نوٹ کیجئے گا، دیندار دیندار پہ حسد کرتا ہے اور دنیا دار دنیا دار پہ حسد کرتا ہے۔ ایک فیلڈ کا بندہ اپنے ہی فیلڈ کے لوگوں سے حسد کرتا ہے، تو حسد کے ساتھ جب برا کام جمع ہو گیا تو پھر دیکھیے کیسا برا فیل بنے گا۔ آیت 58 امانتوں کی ادائیگی کی طرف اشارہ ہے، بڑی فیمس آیت ہے اور بڑی خوبصورت طریقے سے یہ بیان کی اللہ کے نبی اور آپ کے بعد کے لوگوں نے۔ ان اللہ یا مرکم، امانتوں کی ادائیگی کی بات ہے کہ اللہ تعالی تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کو پہنچا دو، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے دیکھتا ہے، یعنی تم جو بھی کرو گے اللہ کی نگاہوں سے چھپو گے نہیں۔ پھر آیت 59 سے 63، ٹاپک لکھیے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ قرآن پاک کا یہ بہت اہم حصہ ہے، عطی اللہ اور عطی رسول کے موضوع کو سمجھنے کے لیے۔ اس پہ ہمارا ایک لیکچر تھا جو ہم نے لندن سے کیا تھا، جو کہہ لیجئے کہ پچھلے سال کے لاک ڈاؤن شروع ہونے سے پہلا تھا، ہماری آیت پہ آیت تفسیر تھی۔ اگر اس کا لنک ساتھیوں کو دے دیا جائے تو اس آیت کو جو ابھی صرف ہم ٹچ کریں گے، وہاں آپ اس کی ڈیٹیل تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے میں صرف اس ایک موضوع پہ بات ہوئی تھی۔ دیکھیے گا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی، اور فرما برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تم میں سے اختیار والوں کی، پھر اگر تم کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ بہت بہتر ہے اور با اعتبار انجام بہت اچھا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 47-49، آیت 59 کے 59 پہ سورۃ نساء کی، آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ دیکھ لیجئے کہ یہاں امیر کا لفظ ہے اور اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے، تو امیر سے مراد یہاں مذہبی رہنما بھی ہیں اور دنیاوی چیزوں میں بڑے، جیسے جہاز میں جائیں تو جو عملہ ہے وہ آپ کا امیر ہے، ان کی باتیں مانیے، رولز کو فالو کیجئے، اس میں حکمران بھی آتے ہیں، لیکن جہاں کوئی بات خلاف شرع آ گئی تو پھر ذمہ داری ساری کی ساری آپ پر ہے کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانیں گے۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ 3 سیکنڈ سوچئے، کیا ہم مسلمان آج اللہ رسول پر ایمان کے دعوے تو کرتے ہیں، کیا ہماری زندگی کے فیصلے بھی انہی کے مطابق ہوتے ہیں؟ حالانکہ انہیں حکم دیا گیا کہ شیطان کا انکار کر دیں، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دے۔ ان سے جب کبھی کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر رکے ہیں۔ نفاق والے دل کے ساتھ کتاب نہیں سنی جاتی، دعا کیجئے کہ اس کو اللہ نکال دے اور سنتے ہی رہنے کی توفیق دے، تاکہ ہمارے دلوں کی گندگی اور ہمارا میل دور ہوتا جائے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کرتوت کے باعث کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ملاپ ہی کا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید اللہ پر بخوبی روشن ہے، آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، یعنی اوور لک کیجئے ان کو۔ इन्हें नसीहत करते रहिए और इन्हें वो बात कहिए जो इनके दिलों में घर कर जाने वाली हो। मैं भी यहाँ यही दुआ करूंगी इस आयत पे कि अल्लाह ताला ने जो ये बात कह दी कि कौलन बलीगा वकुल लहुम फी अनफुसिहिम कौलन बलीगा, तो अल्लाह मेरी ये बात भी आपके दिलों में उतर जाए। आप देखिए कि इधर आयत 63 में अलकल्बुल आसिम का तस्करा आया, ना फरमान दिल कौन सा होता है, जरा सी इसकी बातें नोट कीजिए, क्योंकि शहवत का शिकार अलकल्बुल आसिम ही होता है। तो अल्लाह ताला ने जो बात कह दी कि नाफरमान दिलों को तरगीब दिलाइए बिल तरतीब, कैसे, अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए, यानी इसमें आपके मेरे करने के काम है एज अ पेरेंट और एज अ दाई दीन, एज अ मुबल्लिग, एज अ टीचर, और इससे भी बढ़कर जब भी लोगों को बात कहे अच्छे तरीके से बात कीजिए। देखिए दाग को या कपड़े खाने पे के किसी निशान को टेबल से साफ करने के लिए अगर आप गंदा कपड़ा इस्तेमाल करेंगे तो वो और बढ़ जाएगा। आज हम तबलीग के नाम पे बदतमीजी और गुस्ताखी पे आ जाते हैं, ये दुरुस्त तरीका नहीं। फिर इस तरह तन्हाई में नसीहत कीजिए, और ऐसे तमाम साथी जो मेरी ये बात अगर सुने और किसी किस्म की मुश्किल का शिकार हो चुके शहवत के नाते से, पूरी इजाजत है कि आप अकेले में बात करके मैसेज पे जो हमारी सर्विस है हमारे डिफरेंट एडमिन्स के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाती है, आप अपना कोई ऐसा इशू जो आप किसी दूसरे के सामने नहीं शेयर करना चाहते आप उस पर ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा कि आप कैसे इन सारी चीजों से अपने आप को निकाल सकें। फिर इस तरह अल्लाह के अजाब से डराइए, क्योंकि अल्लाह के अजाब में बहुत शिद्दत है। फिर इस्लाह की मोहलत दीजिए, आपके घरों में शोहरों में कोई गड़बड़ हो सकती है, बीवियों को कोई बुरी लत पड़ गई, बच्चों को पड़ गई, बेटों को बेटियों को, मौका दीजिए और फिर चेस कीजिए, और फिर उस मुद्दत के गुजरने के बाद फिर जरा सा थ्रेट भी दे दीजिए ताकि उनको ये ना लगे कि आप सिर्फ बातें ही करते हैं। फिर सिर्फ मुसालेहाना तदबीर इख्तियार कीजिए, हिकमत से बात करें, बेटा है तो गोद में सर रख कर उसका बात कीजिए, हाथ पकड़कर बात कीजिए, और फिर अदर और इंसाफ के साथ बात कीजिए कि एग्जैजरेट ना कीजिए, ऐसा ना कीजिए कि वो आपकी बात सुनकर और स्टबन होने लगे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह इस वक्त की उम्मत में जितने लोग किसी ऐसी शहवत का शिकार है या किसी ऐसे शो बिजनेस में है कि जहां फिर इंसान वो फिसलता ही जाता है और वो व्हील उसका घूमता जाता है, उनको निकाल दें और उन सब को बेहतरीन तरीके से इस किताब से जोड़ दे और हमें हिदायत का जरिया बना दे। आयत 64 से 68 हमारे आगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर मामले में हकम बनाइए, ये टॉपिक है इसका। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, इस पे भी जरा गौर कीजिए कि अल्लाह के नबी सिर्फ नमाज की सुन्नतें सिखाने ही नहीं आए बल्कि मरने जीने, शादी ब्याह, गम खुशी, तरबियत इत्तफाल, माल कमाने, हर तरीके की रहनुमाई के लिए आए। अब इस नारियों में सुनिएगा, हमने हर रसूल को सिर्फ इसलिए भेजा कि अल्लाह के हुक्म से इसकी फरमाबरदारी की जाए, और अगर ये लोग जब उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था तेरे पास आ जाते और अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करते और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनके लिए इस्तिग़फ़ार करते तो यकीनन ये लोग अल्लाह ताला को माफ करने वाला और मेहरबान पाते। देखिए ये सर्विस नबी की जिंदगी में मौजूद थी, आज नहीं है। गुनाह का गिल्ट होता है, शहवतों में पड़े लोग वाकई फिर बाद में दुखी होते हैं, शुरू में नहीं पता चलता, बाद में गिल्ट, डिप्रेशन, कहा अल्लाह के नबी के पास आके रो धो लो। अब आज क्या करें, अल्लाह के नबी की किताब की तरफ रजू कीजिए, किसी अल्लाह वाला जिसको आप समझते हैं कि वो आपका मसला समझकर आपको हर लिहाज से गाइड कर सकता है, जिसमें आपके मिलान को देखकर दीन और दुनिया के मुख्तलिफ तरीके साइकोलॉजी को सामने रखते हुए करे, उसके साथ जाकर बात करें और फिर उससे उसकी बातों पे फिर अमल भी कीजिए। सो कसम है तेरे परवरदिगार की, ये मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तमाम आपस के इख्तलाफात में आपको हाकिम न मान लें, फिर जो फैसले आप इनमें कर दें इनसे अपने दिल में किसी तरह की तंगी और नाखुशी ना पाएं और फरमाबरदारी के साथ कबूल कर लें। और अगर हम इन पर यह फर्ज कर देते हैं कि अपनी जानों को कतर कर डालो, अपनी जानों को कतल कर डालो या अपने घरों से निकल जाओ, तो ऐसे में इनमें से बहुत से कम लोग हुक्म बजा लाते, यानी अल्लाह देखिए हमें कह रहा है मैंने तुम्हें ये तो नहीं कहा खुद को मारो, बनी इसराइल को कहा था। आज इस्लाम के कामात ऐसे तो नहीं है कि अपने आप को कत्ल करो, पीछे पड़ चुके हैं कि देर इज नो रूम फॉर सुसाइड इन इस्लाम। इस्लाम खुदकुशी को मना करता है, अपनी जान लेना किसी की जान लेना, तो अल्लाह कहते हैं तुम्हें छोटे छोटे हुक्म इतने मुश्किल लगते हैं, सोचो अगर तुम्हें तुम्हारी जान लेने का हुक्म देता फिर क्या करते। और अगर ये वही करें जिसकी इनको नसीहत की जाती है तो यकीनन यही इनके लिए बेहतर और ज्यादा मजबूती वाला हो, और तब तो इन्हें हम अपने पास से बड़ा सवाब दें और यकीनन इनको राह रास्त दिखा दें। हाईलाइट कर लें शायद को, वैज़ल्लातैनाहुम मिन लदुन्ना अजरन असीमा वलहदैनाहुम सिरातम मुस्तकीमा। आपकी हिदायत से मुतल्लिक आयत आ गई है। अल्लाह पे डाल दीजिए अपने आप को, फिर अल्लाह आपकी हिदायत के रास्ते बनाता ही रहेगा, और उसके लिए जरूरत है। ये अगली आयत वो है जिसको आप आज सूरत अल फातिहा में हमेशा कहते हैं कि सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो इनाम वाले लोग कौन, आयत 69 से 70। अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों की इताअत का इसमें तज़किरा है। तो सूरत अल फातिहा की आयत का जवाब है इन आयतों में, वमन युतिअल्लाह वर्रसूल, और जो भी अल्लाह ताला की और रसूल की फरमाबरदारी करे वो इन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया, जैसे नबी और सिद्दीक और शहीद और नेक लोग, ये बेहतरीन रफीक है, ये फजल अल्लाह की तरफ से है और काफी है अल्लाह ताला जानने वाला। अल्लाह हमें भी अच्छी रिफाकतें दे दे। बैड कंपनी को निकाल दीजिए, क्योंकि हम असबाब में पड़ चुके कि बुरी सोहबत से शहवत फैलती है। आगे 71 से 76 जिहाद फी सबीलिल्लाह की कुछ बातें हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़रकुम, ए लोगो ए मुसलमानो अपने बचाओ का सामान ले लो, फिर गिरोह गिरोह बनकर कूच कर दिया करो, या कूच करो या सब के सब इकट्ठे होकर निकल खड़े हो, और यकीनन तुम में से बस वो भी हैं जो पसो पेश करते हैं, फिर अगर तुम्हें कोई नुकसान होता है तो वो कहते हैं कि अल्लाह ने मुझ पर बड़ा फजल किया है कि मैं इनके साथ मौजूद न था, और अगर तुम्हें अल्लाह का कोई फजल मिल जाए तो इस तरह के गोया तुम में इनमें दोस्ती थी ही नहीं, कहते हैं काश मैं भी इनके हमराह होता तो बड़ी कामयाबी को पहुंचता। नोट कीजिए, आपने सूरह बकरा में, फिर सूरह आले इमरान में, और अब यहां, और आगे सूरत अल अनफाल, सूरत तौबा, और आगे फिर सूरत साफ और सूरत हज और सूरत फत, और फिर आखिर में सूरत हदीद और सफ, सब जगह के लिए एक असूल ले लीजिए। जहां जिहाद का जिक्र आएगा वहां निफाक का जिक्र साथ साथ आएगा, यह अभी आपने देख लिया। क्योंकि जब दीन के रस्ते की किसी जिद्दोजहद का मौका आता है तभी तो फिर ईमान और निफाक का फर्क मिटता है। निफाक वाले दिल के साथ नमाज पढ़ी जा सकती है, इस पारे कैंट पे आज हम देखने वाले हैं, रोजा भी रखा जा सकता है, हज भी कर दिया सकता है, दीन की जिद्दोजहद नहीं की जाती। तो जरा सा अपने ऊपर गौर करके देखें हम सब, कहीं मेरा दीन की जिद्दोजहद में हिस्सा ना पड़ना उसकी वजह कोई ऐसा उजर तो नहीं। और फिर ऐसे लोगों का आगे मजीद क्या मामला है, आयत 73, अलम तरइल्लज़ीन क़ील लहुम कुफ़ू, यह आयत हमने पीछे पढ़ी, और साथ ही इसमें अल्लाह सुबहान तआला ने क्या फरमाया, और अगर तुम्हें अल्लाह ताला का कोई फजल मिल जाए तो इस तरह के गोया इनमें तुम्हें दोस्ती ही ना थी। यानी मुनाफिक हमेशा फवायद को सामने रखता है। बस जो लोग दुनिया की जिंदगी को आखरत के बदले बेच चुके हैं, रुकिए पहले इधर, खुद को अपनी शहवत के हवाले कर देना, असल में अपनी आखिरत को बेचकर दुनिया खरीदना। आप देखिए कोई चीज कब बिकती है, जब बड़ी मजबूरी हो, घर बिके तो कितना दुख होता है, गाड़ी बेच के अपना कोई कर्जा उतारना पड़े तो कितना दुख होता है, सेलफोन बेचकर कुछ कर्जा दूर हो तो कितना मुश्किल। सोचिए सेलफोन फिर आ जाएगा, गाड़ी फिर आ जाएगी, घर फिर बन जाएगा, अगर आखरत बिक गई और दुनिया भी ना मिली और जो मिली वो छोड़ के जाना पड़ा तो कितनी हसरत होगी। अब इस सारे सिनेरियो के ऊपर इस आयत को सुनकर दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें आखरत को ना बेचने लगना। और ये भी आपने देखा, पहले बेकार चीजें बिकती हैं, चलो इसकी जरूरत नहीं इसको बेच दें, चलो इसके बगैर गुजारा होगा ये बेच दें। कुछ लोगों के लिए आखरत और हिदायत इतनी बेकार फालतू चीज होती है, कहते पहले इसको तो बेचो, जान छोड़ो, ये किताबें दो, कहीं मूविंग होनी हो किताबें दे दो किसी को, अच्छा ये भी दे दो, जब घर की सफाई होती है वो बुकलेट्स उठाकर मस्जिद में डाल दो। कहीं हम कहीं आखरत को इस तरह तो अपनी जिंदगियों से निकालते तो नहीं जा रहे। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमा दे। तो फरमाया कि जो लोग दुनिया की जिंदगी को आखरत के बदले बेच चुके हैं इन्हें अल्लाह ताला की राह में जिहाद करना चाहिए, और जो शख्स अल्लाह ताला की राह में जिहाद करते हुए शहादत पा ले या गालिब आ जाए यकीनन हम इसे बहुत बड़ा सवाब इनायत फरमाएंगे। اے اللہ یہ اچھا انجام ہمارا کرنا، دنیا میں اس چیز کی تڑپ رکھیے، طلب رکھیے، اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو آپ کی نیت پہ شہادت کی موت دے گا۔ بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتوان مردوں، عورتوں اور ننھے ننھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو، جو یوں دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمارے پروردگار ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے، اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے، اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا دے۔ آپ دیکھیے کہ آیت 75 میں جو دعا ہے یہ بھی قرآن دعاؤں میں سے ایک حصہ ہے، لیکن یہ وہ دعا ہے کہ جو ایک خاص حالات کے مطابق مانگی جاتی ہے، خاص طور پہ قنوت نازلہ کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہت ساری دعائیں ہمیں سکھائیں۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی دنیا کے حصے میں جو مسلمان پس رہے ہوتے ہیں ان کو دعاؤں میں شامل کریں۔ تو آئیے ہم اس وقت دعا کرتے ہیں روزے کی حالت میں، قرآن پڑھتے ہوئے، رمضان کے مہینے میں داخل ہو کر، کہ اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو مستضعفین کے زمرے میں، چاہے کسی وبا کی صورت میں، کسی جگہ رزق نہ ہونے، روٹی نہ ہونے، سیلاب آنے کی صورت میں، یا کسی کے ظلم اور بربریت کی صورت میں، اے اللہ ان سب کی مدد فرما۔ آپ دیکھیے کہ اس لاک ڈاؤن اور ان ساری چیزوں نے اتنا مشغول کیا کہ اب وہ خبریں پتہ نہیں آتی بھی ہیں تو ہوں گی، میرے تک تو کمی پہنچ رہی ہیں کہ فلاں جگہ ظلم ہو رہا ہے، فلاں مسلمانوں کے ساتھ فلاں جگہ، تو شاید اس وقت اللہ نے چابک اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچا کے رکھے اپنی پکڑ سے۔ پھر دیکھ لیجئے، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ تاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، کیسے؟ شہوت کے راستوں کو بند کر کے دعا کیجئے۔ دیکھیے یہ ہے کفر جو ہمیں کرنا ہے، طاغوت کا کفر، شیطان کے راستوں کو بند کرنے والا معاملہ۔ یقین مانو کہ شیطانی ہیلا نہایت بودا اور سخت کمزور ہے، یعنی دیکھنے میں بہت بڑا لگتا ہے لیکن اصل میں نہیں۔ آیت 76 کے اس تضاد کو ذرا سے ایک فلو چارٹ کی روشنی میں دیکھیے گا۔ عمل ایک ہی ہے، مقاصد فرق ہے، یعنی مسلم اور نافرمان دونوں ہی جنگ کر رہے ہیں۔ مومن اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، نافرمان طاغوت اور کفر کے غلبے کے لیے لڑتے ہیں۔ یعنی محنت تو سبھی ہی کرتے ہیں۔ آپ کہیں کہ اگر آپ نیک بننے اور بنانے کے لیے محنت کر رہے ہیں تو کیا غلط کام کرنے اور بگاڑنے والے محنت نہیں کرتے؟ بعض دفعہ ایک ایک مووی میں ایسے سے پکچرائزیشن کے سین ہوتے ہیں کہ ٹانگ ٹوٹنے کا ڈر ہو۔ تو محنتیں تو سب کی ہیں، ایک طرف اللہ کے رستے میں، ایک طرف شیطان کے۔ لیکن یاد رکھیے کہ شیطان کا داؤ بڑا کمزور اور بودا ہے۔ اللہ ہمیں جس طرح کفر اور گندگی کی طرف ہم محنت کرنے والے ہیں، اس کی جگہ ہمیں اچھے راستوں پہ لگا دے۔ یہ آپ کی دعا آپ کے لیے، میری دعا میرے لیے۔ آگے آئے 77 سے 84 ٹاپک ہے، اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے کوئی چیز باہر نہیں۔ الم تر الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ جنہیں حکم کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو اسی وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے، اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ جینے دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ دنیا کی سود مندی یعنی فائدہ تو بہت ہی کم ہے، اور پرہیزکاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے۔ تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ستم روانہ کیا جائے گا، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تم کو آ پکڑے گی، وہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں یہ تیری طرف سے ہے، انہیں کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اور انہیں کیا ہو گیا کہ کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں ہے۔ ذرا سے اس آیت پہ غور کرتے جائیے، اچھے کاموں میں ہوں کہ بروں میں، موت تو میری تعاقب میں لگی ہے، دوا کھا لوں، ویکسین لگوا لوں، اپنے آپ کو تنہائی میں کر لوں، سٹرلائز سرس یوز کر لوں، وٹ ایور، لیکن موت تو فی بروج مشیدہ میں بھی آ جاتی ہے۔ دعا یہ کیجئے کہ موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، اور جس طرح باقی پریکاشنز لیتا ہے انسان، اس طرح گناہوں کا پریکاشنز بھی لینا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بات کس کو نہیں سمجھ آتی؟ نفاق والوں کو، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے. علماء کہا کرتے تھے کسی کو کوئی بات نہ سمجھ آتی تو اس آیت پہ آ کے روتے کہ اللہ مجھے کیوں نہیں قرآن پڑھ کر بھی سمجھ آ رہی. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت پیغام ہے, تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے. ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے. ذرا سے اس کو صورت حال سے آج کے حالات میں جو اپ ٹو ڈیٹ چیزیں اس سے ریلیٹ کرتی ہوں, کسی کو بھی کرونا پازیٹو آئے تو فوراً ڈھونڈتے ہیں کہ اس کو کہاں سے لگا. ٹھیک ہے, کوئی بری بات نہیں, پینڈیمک میں ایسا ہی ہوتا ہے. ذرا سے اس آیت پہ بھی غور کیجئے گا, آپ ہی کو کیوں افیکٹ ہوا, اوروں کو بھی تو وہ ملا ہوگا, کسی اور سے بھی تو شیک ہینڈ کیا ہوگا. آپ کہیں گے چونکہ وہ امیونٹی کا مسئلہ ہے, ایسے ہی ہوتا ہے نا, اندر سے امیون سسٹم اسٹرانگ ہے, آپ کرونا پیشنٹ کو مل بھی لیں تو کچھ نہیں ہوگا, ہر ایک کا تو پتہ بھی نہیں چلتا آپ کو, پھر بھی آپ کو نہیں ہوتا. الحمدللہ کیوں نہیں ہوتا, آپ کا امیون سسٹم تیز ہے. لکھیے, مومن کا امیون سسٹم بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, وہ برائی کے ماحول کے پاس سے بھی گزرا ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ کسی نے آپ کو ایک دفعہ ہاتھ بڑھا کر برائی دکھائی تو آپ اسی کی طرف چل پڑے. اس رسول کی جو اطاعت کرے اسی نے اللہ کی فرما برداری کی, اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. یعنی پہنچانا بتانا مقصد ہے, پیچھے پڑنا نہیں. بات پہنچ گئی اس کے بعد تھوڑے دن چھوڑ دیجئے, پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں ان کو ضرور دین کی طرف, ہدایت کی طرف بلائے گا. یہ کہتے ہیں کہ اطاعت ہے, پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت جو بات آپ نے کہی یا آپ نے یا اس نے کہی ہے اس کے خلاف راتوں کو مشورہ کرتی ہے, ان کی راتوں میں بات چیت اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے, تو آپ ان سے منہ پھیر لیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں, اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے. کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن. بالکل یہی انداز آپ کو سورت محمد میں ملے گا 26 پارے میں. اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے. الحمدللہ 5 پارے تو آپ کے بھی ہونے لگے, کوئی بات آپ کو اختلاف کی دکھی کہ پیچھے کچھ اور تھا اور آگے اور تھا, پیچھے کہا گیا شرک کر لو اور آگے آ کے کہا ایسا نہیں, شرک نہ کرو. تو یہ قرآن ہے وہ خوبصورت کلام کہ جس کو پڑھنے کے بعد, جس کو پانے کے بعد اللہ کی بات سمجھ آتی ہے. اور اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے اشارے میں کہ علم کی محفل میں دل کی حالت اور ہوتی ہے, ہر بات آسان لگتی ہے, ہاں یہ بھی ہو جائے گا, یہ بھی کر لیں گے, تو یہاں بیٹھ کر فیصلے کیا کریں. اچھے اچھے فیصلے ادھر کیجئے, جان مال وقت لگانے کے فیصلے یہاں کیجئے, راتوں کو تو نہ جانے پھر کیا سرگرمیاں شروع ہو جائیں. پھر آگے فرمایا, ایسے ہی لوگ جو الٹی سیدھی باتیں باہر جا کر پھیلاتے تھے, ادھوری باتیں آدھے ٹوٹے ٹکڑے ادھر کی بات ادھر, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے کہہ دو کیا ان کا حال کیا ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ, جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا. حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت تم لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں, اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو چند کے سوا تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے. لکھ لیجئے 83 النساء, اس بات کی دلیل ہے کہ واٹس ایپ پہ ہر بات آگے مت کیجئے, سنی سنائی باتیں آگے نہ کریں. اور تیسری بات کہ جو عمل کے نقطے خود ہی نہ بتاتے رہے, اللہ کے رسول کی حدیث یا قرآن کی آیت سے بتائیے, ہر بندہ مفتی بننے کی کوشش نہ کرے. ادھر یہی بات سمجھ میں آتی ہے. اور فرمایا, تم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہو, تجھے صرف اپنی ذات کی نسبت حکم دیا جاتا ہے, ہاں ایمان والوں کو رغبت دلاتے رہیے, بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو روک دے, اور اللہ تعالیٰ سخت قوت والا ہے اور سزا دینے میں بھی سخت ہے. گویا کہ بتا دیا کہ جب لوگ تمہاری نہ مانے تو تم تو اپنی مانو. ہم بعض دفعہ دوسروں کو کہتے ہیں اور خود کو نہیں مانتے, دوسروں کو سارے میسیجز آگے کرتے ہیں خود کوئی بھی نہیں سنے ہوتے, خود دوسروں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ آپ نے خود دوسروں کو آگے کیا ہوتا ہے. اور بہت پیاری آیت ہے 85, نیک سفارش کی نیک جزا. اس کو سنتے وقت بھی نیت کیجئے گا کہ ہم نے ضرور اچھے کام کی رغبت دوسروں کو دلانی ہے. کیا ہے آیت؟ میں یشفع شفاعتن حسنا, جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا, اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لیے بھی اس میں ایک حصہ ہے, और अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। तो अच्छी सिफारिश कीजिए, नियत करें, कोई अच्छा काम करने की दावत दूसरों को दूंगी। और आयत 86, सलाम करने के आदाब। इस्लाम में सलाम करना यानी अस्सलाम वालेकुम कहना, ये एक बहुत बड़ा रिचुअल भी है और बहुत बड़ी नेकी भी है। आइए इसके कुछ मैनर्स एंड एटिकेट्स देखते हैं। व इजा खुशी तुम भी तहैयतिन फहैयु बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा, और जब तुम्हें सलाम किया जाए तो तुम इसका अच्छा जवाब दो या इन्हीं अल्फाज को लौटा दो। बिला शुबा अल्लाह ताला हर चीज का हिसाब लेने वाला है। हम क्या करते हैं? हेलो, हाय, थक, और क्या कहते हैं? सलाम क्या था? आपको सलामत रखा, दुआ दी आपको किसी ने, हादसे से सलामत, कोरोना से सलामत, फिक्शन में पढ़ने से सलामत, शहवत में पढ़ने से सलामत। तो आज नियत कीजिए अस्सलामु अलैकुम, बड़ी धीमी ठंडी आवाज से सलाम कीजिए और इसको आम कीजिए, क्योंकि बाकी नामों का, बाकी लफ्जों का तो कोई माना भी नहीं है। आगे कुछ जिक्र फिर निफाक का है, बोझिल दिल के साथ पढ़ेंगे। आयत 87 से 91, दो रुखे लोगों का तस्करा। ये दो रुखे कौन लोग हैं? जिनको अल्लाह ताला बताता है, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो तुम सबको यकीनन क़यामत के दिन जमा करेगा, जिसके आने में कोई शक नहीं। अल्लाह ताला से ज्यादा सच्ची बात वाला और कौन होगा? जवाब दीजिए, कोई भी नहीं। फमा लकुम फिल मुनाफिकीन फियतैन, तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकों में दो गिरोह हो रहे हो? इन्हें तो इनके अमाल की वजह से अल्लाह ताला ने ऊंधा कर दिया है। अब क्या तुम ये मंसूबे बना रहे हो कि अल्लाह ताला के गुमराह किए हुओं को तुम राह रास्त पर ला खड़ा करो? जिसे अल्लाह राह बुला दे तो हरगिज इसके लिए आप कोई राह न पाएंगे। इनकी तो चाहत है कि जिस तरह के काफिर वो हैं, तुम भी इनकी तरह कुफर करने लगो और फिर सब यकसा हो जाओ। फिर जब तक ये इस्लाम की खातिर वतन न छोड़े, इनमें से किसी को हकीकी दोस्त न बनाओ, फिर अगर ये मुंह फेर लें तो इनको पकड़ो और कत्ल करो जहां भी ये हाथ लग जाएं। खबरदार इनमें से किसी को अपना रफीक और मददगार न समझना। क्या मतलब है इस आयत का? बाहर जाओ, कोई गैर मुस्लिम दिखा तो गोली मार दो। देखिए, ये है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें जो आज कुरान ना समझने वालों ने की और उनसे मंसूब की गई। कुरान क्या कहता है कि हर आयत को उसके कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ो। यहाँ बातें तो मक्का वालों की चल रही हैं। कुछ लोग मक्का वालों की बातों को हर बात के अंदर पेश करते हैं। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को पूरी तरह से बेहतरीन तरीके से A to Z यानी फातिहा से नास तक पढ़ने वाला बना दे। फरमाए, सिवाय इनके जो इस कौम से ताल्लुक रखते हो, जिनसे तुम्हारा मुआहदा हो चुका हो, या वो जो तुम्हारे पास इस हालत में आए कि तुमसे जंग करने से भी तंग दिल हैं और अपनी कौम से भी जंग करने में तंग दिल हैं, और अगर अल्लाह चाहता तो इन्हें तुम पर मुसल्लत कर देता और वो तुमसे यकीनन जंग करते। बस अगर ये लोग तुमसे किनारा कशी इख्तियार कर लें और तुमसे लड़ाई न करें और तुम्हारी जानिब सुलह का पैगाम डालें, तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इन पर कोई राह लड़ाई की नहीं की। आप लिख सकते हैं कि ये आयतें मुसलमानों की खारिजा पॉलिसी है, यानी मुसलमान मुल्क के इर्द गिर्द वाले मुल्कों के साथ मुसलमान क्या करें। आपको लग रहा है कुरान मुकम्मल गाइड बुक है? आपको मुल्की सतह पे एक हुक्मरान होते हुए भी हिदायत चाहिए थी तो अल्लाह ने आपको वो भी दे दी, और इससे छोटे दर्जे पर भी है। इसीलिए फिर आगे फरमाया, सतजीदूना खरीन युरीदून या मनुकुम, तुम कुछ और लोगों को भी ऐसा पाओगे जिनकी बजाहर चाहत है कि तुमसे भी अमन में रहे और अपनी कौम से भी अमन में रहे, लेकिन जब कभी फितना अंगेजी की तरफ लौटाए जाते हैं तो उन्दे मुंह इसमें डाल दिए जाते हैं। बस अगर ये लोग तुमसे किनारा कशी न करें और तुमसे सुलह का सिलसिला जानबदाराना न करें, यानी एक तरफ न हो जाएं, मुराद ये है, और तुमसे सुलह का सिलसिला न रखें और अपने हाथ न रोक लें, तो इन्हें पकड़ो और मारो जहां कहीं भी पाओ। यही है वो जिन पर हमने तुम्हें जाहिर हुज्जत अनायत फरमाई है। जाहिर की नायतों में उन लोगों का जिक्र है जिन्होंने अल्लाह के नबी को सताया, और हिजरत पे माइल किया। सही बुखारी की रिवायत आयत 89 के मुताबिक से 4900 जैद बिन अरकम कहते हैं कि मैं एक गज़वे में था जिसका नाम तबूक है। मैंने मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई को ये कहते हुए सुना कि जो लोग मुहाजरीन मुराद थे रसूलुल्लाह के पास जमा हैं, इन पर खर्च ना करो ताकि वो खुद ही अल्लाह के रसूल से जुदा हो जाएं। इसने ये भी कहा कि अगर हम मदीना लौट जाएंगे तो इज्जत वाला वहां से जिल्लत वालों को निकाल देगा। यानी असल में इसको मैं अपने लफ्जों में थोड़ा सा बता देती हूँ कि निफाक वाले लोग जो अल्लाह के नबी के इर्द गिर्द ही रहते थे, वो हर मौके पे आपके रास्ते में रोड़े अटकाते थे। उनकी ये ख्वाहिश होती थी कि वो आपको कहीं ना कहीं दूर करें। तो इस तरह की आयतों का तज़किरा इस हदीस में, इससे क्या पता चलता है आपके मेरे लिए, इसको नोट कीजिएगा कि हर दौर में निफाक वाले लोग मौजूद होते हैं और जितना शहवत का कल्चर आम होगा उतना निफाक आम होगा, क्योंकि सच्चे दिल वाले ऐसे निफाक को कभी भी कबूल नहीं करते। आयत 92-93 कत्ले खता और कत्ले अमद का तस्करा है, यानी एक्सीडेंटली किसी का कत्ल हो जाए या विलिंगली कोई कत्ल कर दिया जाए तो क्या होगा। बमा कान अली मोमिन नहीं युक्तल मोमिन इल्ला खता, किसी मोमिन को दूसरे मोमिन का कत्ल कर देना जेबा नहीं, यानी ये नहीं करेगा वो, मगर गलती से हो जाए तो ये और बात है। जो शख्स किसी मुसलमान को बिला कसद मार डाले, इस पर एक मुसलमान गुलाम की गर्दन आजाद करना और मकतूल के अजीजों को खून बहा पहुंचाना है, हाँ ये और बात है कि वो लोग बतौर सदका माफ कर दे। और अगर मकतूल तुम्हारी दुश्मन कौम का हो और हो वो मुसलमान, तो सिर्फ एक मोमिन गुलाम की गर्दन आजाद करानी लाजमी है। और अगर मकतूल इस कौम से हो कि तुम में और इनमें अहदो पैमान है, तो खून बहा लाजिम है जिसके कुंबे वालों को पहुंचाया जाए, और एक मुसलमान गुलाम का आजाद करना भी जरूरी है, बस जो ना पाए इसके जिम्मे लगातार 2 महीने के रोजे हैं। अल्लाह ताला से बख्शवाने के लिए, और अल्लाह ताला बखूबी जानने वाला है और हिकमत वाला है। यहां से देखिए कि जानबूझ के कोई कत्ल कर दे तो उसका कोई कफारा नहीं, वो तो जब तक अल्लाह से और घर वालों से उसके मकदूल के साथियों से मामला ना सीधा करे उसको निजात नहीं मिलेगी। और जो कोई किसी मोमिन को कसदन यानी इरादतन कत्ल कर डाले, इसकी सजा दोजख है जिसमें वो हमेशा रहेगा। इस पर अल्लाह का गजब है, इसे अल्लाह ताला की लानत, इस पर अल्लाह ने लानत की है और इसके लिए बहुत बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। तो इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस। तकाबुल देखिएगा आयत 92-93 में जो कत्ले खता की सजा और कफारा है, और कत्ले अमत यानी एक वो है जहां गलती होगी, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, बस उलट गई, ड्राइवर की गलती थी कि नहीं, अब उसमें गिल्ट बहुत होता है, हाय मेरी वजह से किसी की जान चली गई, तो उसकी सजा मोमिन गुलाम को आजाद करना, ये ना हो तो मकतूल के वारिसों को खून बहा देना, और गुलाम ना मिले तो 2 महीने के मुसलसल रोजे रखना, और इसके साथ साथ तौबा और इस्तिग़फ़ार करना है, जबकि जानबूझ के कत्ल कर देना जहन्नुम, अल्लाह का गजब, अल्लाह की तरफ से लानत और दर्दनाक अज़ाब है। आप में से कोई सुबह सुना रहा था कि बेटे ने माँ को कत्ल किया कि बाप को, जी बाप को बेटे ने, बाप बहुत बड़ा लॉयर नॉर्वे में और दौलत पैसा शोहरत सब होगी, और उसी के बेटे ने उसको कत्ल कर दिया। बीवी को भी कत्ल करने की कोशिश की थी लेकिन शायद वो बच गई। तो इस्लाम ऐसी नस्लें नहीं चाहता कि जो अपने ही माँ बाप के सरों पे तलवार रख दें। आयत 94 में एक वाकया आ रहा है, आगे से चलता जाएगा, बहुत खूबसूरत वाक्य है और आपके मेरे लिए अमल का नुक्ता है कि लोगों के जाहिर पर कयास कीजिए और ये हिदायत की तरफ बढ़ते हुए नए नए प्यारे प्यारे लोगों पे बदगुमान ना हो। हम बाज़ लोगों की बुरी चीज को मशोहरत में देखकर उसके हिदायत में आने से मायूस होते हैं। यह आयत आपको बताती है कि ऐसा न करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा दरबतुम फी सबीलिल्लाह, ऐमन वालो जब तुम अल्लाह की राह में जा रहे हो तो तहकीक कर लिया करो, और जो कोई तुमसे अस्सलामु अलैकुम कहे तुम इसे ये ना कह दो कि तू ईमान वाला नहीं। तुम दुनियावी जिंदगी के असबाब की तलाश में हो तो अल्लाह ताला के पास बहुत सी गनीमतें हैं, पहले तुम भी तो ऐसे ही थे, फिर अल्लाह ताला ने तुम पर एहसान किया, लिहाजा तुम जरूर तहकीक और तफ्तीश कर लिया करो, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से बाखबर है। इसमें माजरत के साथ कहूंगी उन लोगों को भी एक नसीहत है जो कुरान थोड़ा जल्दी पढ़ चुके होते हैं दूसरों की निस्बत, तो हर बात पे जजमेंटल फतवे, ये नहीं बचेगा, ये खराब है, और फिर उन पर तनकीद ना कीजिए। दुआ कीजिए। कभी आप भी तो कुरान से दूर थी, कभी किसी की बुराई दिखे ना तो सोचा करे अगर मेरे हाथ में ये कुरान की शम्मा ना होती तो न जाने मैं कितने अंधेरों में होती। और जितना ज्यादा आप इस चीज के ऊपर अपने आप को जमाएंगे आपका अखलाक और खूबसूरत से खूबसूरत होता जाएगा। और आगे आयत 95 से 100, हिजरत के फवायद। दुआ कीजिए अल्लाह हमें गुनाहों से हिजरत करके नेकियों की तरफ ले आए, लाने वाला बना दे, और हराम से हिजरत करके हलाल की तरफ ले आए, और शहवत से हिजरत करके शरीयत की तरफ ले आए। हर हिजरत का एक वक्त और एक मौका होता है। बड़ी हिजरत जो मक्का से मदीना हुई वो तो बाद की बातें हैं, अभी पहले हम बीच की छोटी हिजरतों को तो कर ले। और अल्लाह इस वक्त हिदायत के तालिबीन को गुमराही से हिदायत की तरफ हिजरत करने वाला बना दे। कैसे? मुझ समेत, मैं अपने आप को ये जुमले बोलती हूँ, जिस मामले में मैं हक पे नहीं या जिस मामले में मेरे अमल में कमी है, ऐ मेरे मालिक तू मेरी वो कमी दूर कर दे। ला यस्तविल काइदून मिनल मोमिनीन, अपनी जानों और मालों से अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले मोमिन। अल्लाह हमें इनमें कर दे, अपने लिए दुआ करें। और बगैर उजर के बैठ रहने वाले मोमिन, अल्लाह अगर मैं इनमें भी हूं तो मुझे इनसे निकाल दे, बराबर नहीं है। अपने मालों और अपनी जानों से जिहाद करने वालों को, बैठ रहने वालों पर अल्लाह ताला ने दर्जों में बहुत फजीला दे रखी है। और यूं तो अल्लाह ने हर एक को खूबी और अच्छाई का वादा दिया है, लेकिन मुजाहिदीन को बैठ रहने वालों पर बहुत बड़े अजर की फजीलत दे रखी है। हाईलाइट कीजिए, आज के दौर में इस आयत पर गौर कीजिए। जब इस्लाम इतना दबा हो, जब मुसलमान जहालत में हो, अपने ही मुसलमान ना इस्लाम पे हो तो गैर क्या हो, उस वक्त अगर आप अपने वक्त जान माल को नहीं लगाते इस्लाम को नशर, इस्लाम को आगे करने में, नशर इशात में, इस दीन को सीखने सिखाने में, तो कल अल्लाह के यहाँ क्या जवाब देंगे। और यहाँ इस आयत पे आकर तो दिल करते फूट फूट कर इंसान रोए कि अल्लाह तू हमें इस रस्ते में खपा दे। इस पे आप कहिए कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अपना माल, अपना वक्त, अपनी जान लगा दीजिए इस रस्ते पे। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या इस इल्म की कोशिशों पे जो दिन रात होती हैं इधर उधर, क्या उस पे जकात का माल सदकात लगते हैं और किस पे लगेंगे? सवाल तो ये है, इस आयत को पढ़ के पूछिए। भूखों को खाना खिलाने वाले भी बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर ऐसे भूखों को आपका खाना पहुंच जाता है कि जो भूख मिटाकर कुरान पढ़े, इससे अच्छे कौन होंगे? और ऐसी जमीनों और ऐसी जगहों पर, ऐसी बुनियादों और इमारतों पर आपका पैसा लग जाए कि जहां बैठकर लोग कुरान पढ़े, और किस पे लगेगा? आज के दौर पर उम्मत मुस्लिमा के हर सदके खैरात और जकात का मसरफ लोगों को अल्लाह के दीन से करीब करना। वो तो था दुश्मन आ गया फी सबीलिल्लाह में, उस पे बात होती है, यहां तो कह के वो तो हमारे जहनी सरहदों पे आ गया। आज वो बच्चे जो शहवतों का शिकार हुए, क्या आप उस मुआशरे से जिहाद नहीं करेंगे? तो दुआ कीजिए हम खप जाएं। अपने लिए दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे अंसारुल्लाह बना दे, मेरा वक्त, मेरा माल, मेरा पैसा, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी गाड़ी, सब कुछ अपने रस्तों में कपा दे। तो आप देखिए अल्लाह के वादल हुस्ना की बातें हैं। और ये आयत बताती है कि असाबिकुन अलवलून में वो लोग होंगे जो अल्लाह के दीन की खिदमत कर रहे थे। आप उनको कोई भी नाम दे दीजिए, अल्लाह जाने और उसके बंदे जाने, शहवात के मुकाबले में शरीयत के पैरोकारों को अल्लाह ताला यहाँ बड़े खूबसूरत वादे अता फरमाता है। अल्लाह इसमें शामिल फरमा दे। और इस पे भी बस नहीं, बल्कि आगे दरजात मिन्हु व मग़फ़िरतुन व रहमा, अपनी तरफ से मर्तबे की भी और बख्शिश की भी और रहमत की भी। और अल्लाह ताला बख्शिश करने वाला, रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ताला हमें ये सारी खुशखबरियों का मिसबाक बना दे। इसके बरक्स आगे बहुत ही दिलसोजी वाली आयत है, आयत 97। जो लोग सिर्फ अपने हालात का रोना रोते रहे, मजबूरियों के नाम पर गलत जगह ना छोड़े, गलत माहौल ना छोड़े, शहवतों में पड़े रहें, शरीयत की तरफ ना आए, उनकी मौत का वक्त बहुत सख्त होगा। सुनिएगा, मलकुल मौत आ गया अपनी जमात के साथ, फरिश्ते साथ हैं, और क्या कहते हैं? इन्नल्लज़ीन तवफ्फाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अन्फुसिहिम, जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं, जब फरिश्ते इनकी रूह कब्ज़ करते हैं तो पूछते हैं तुम किस हाल में थे? ये जवाब देते हैं कि हम अपनी जगह कमजोर और मगलूब थे। फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह की जमीन कुशादा न थी, कि तुम हिजरत कर जाते। यही लोग है जिनका ठिकाना दोजख है और वो पहुंचने की बुरी जगह है। पता चला जानबूझ के खुद को गुनाह के माहौल में नहीं रखना चाहिए, फौरन छलांग लगा दें। देखिए जहाज में आग लग जाए तो लोग वो पैराशूट के जरिए या वो जो भी जैकेट्स होते हैं उससे छलांग लगाते हैं, यानी पता नीचे जाके पता नहीं कहां फंसेंगे। आग लग जाए तो बंदा घर से बाहर भाग जाए। तो आपको पता चल गया कि ये आग का सौदा जो आप कर रहे हैं, तो जल्दी से छलांग लगा दीजिए ताकि बुरे अंजाम से बच जाए। मगर जो मर्द औरतें और बच्चे बेबस हैं, जिन्हें ना तो किसी चारेकार की ताकत और ना किसी रास्ते का इल्म है, बहुत मुमकिन अल्लाह ताला इनसे दरगुजर करे। अल्लाह ताला दरगुजर करने वाला और माफ करने वाला है। बास बीवियां कहती हैं हमारे शोहर हिदायत पे नहीं, और बास शोहर बीवियों के लिए, तो ये आयत उनके लिए। दुआ करते रहें, कोशिश करते रहें और इस्लाह की उम्मीद रखें। जब कोई अल्लाह की राह में वतन को छोड़ेगा, वो जमीन में बहुत सी क्याम की जगह भी पाएगा और कुशादगी भी। और जो कोई अपने घर से अल्लाह ताला और इसके रसूल की तरफ निकल खड़ा हुआ, फिर इसे मौत ने आ पकड़ा, तो भी यकीनन इसका अजर अल्लाह के जिम्मे साबित हो गया, और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। मेरी ये आयत सिर्फ उसको समझ आएगी जिसने जिंदगी में कभी सिर्फ एक बार ही सही, लेकिन अल्लाह के रस्ते में जगह छोड़ी हो, घर मुल्क शहर छोड़ा हो, वतन छोड़ा हो, माहौल छोड़ा हो, या फिर कोई रिवॉर्ड जो इस्लाम कबूल करने के बाद अपने पूरे खानदान को छोड़ देता है। ये आयत उनको समझ आती है। और मैं हिदायत की तलब पर उस हर इंसान को कहूंगी कि जो इस्लाम की तरफ आने का सोचता है लेकिन खानदान बिरादरी फैमिली मुआशरा उसका डर रोक लेता है, और जो बेहिदायते से हिदायते पे आता है वो लोगों के डर से पीछे होता है, तो ये आपके लिए है आयत। देखिएगा फ्लो चार्ट। ऐसे लोग जो जिहाद करते हुए अपने नफ्स के साथ बुराइयों से नेकियों की तरफ आए, मुखलस हो रहे हैं, हिजरत करना चाहते हैं, तो अल्लाह ने यहां उनको बुलंद दरजात का, मगफरत और रहमत का और फजीलत का बेहतरीन तरीके से वादा दिलाया है। और ऐसे लोगों को अल्लाह सुबहान तआला उनके उजर भी दूर कर देगा इंशाल्लाह। ये अबू दाऊद की रिवायत है 2497। इसी आयत की रोशनी में इब्ने उमर रावी हैं, आपने फरमाया कि मुजाहिदीन की कोई जमात ऐसी नहीं जो अल्लाह की राह में लड़ती हो फिर माले गनीमत हासिल करती हो, मगर आखरत का दो तिहाई सवाब इसे पहले ही दुनिया में हासिल हो जाता है और एक तिहाई आखरत के लिए बाकी रहता है, और अगर इसे माले गनीमत नहीं मिला तो आखरत में इनके लिए मुकम्मल सवाब होगा। आपके मेरे तनाजर में हम जिस जिद्दोजहद की बात करते हैं इस कुरान को आम करने की, क्या खुशखबरी है। आपकी इन कोशिशों से या तो दुनिया में दीन के पौधे पे बहार आ जाएगी, लोग कुरान सीखने लग जाएंगे, तो आखिरत में भी आपको अजर मिलेगा, दुनिया में भी आपकी आंखें ठंडी होंगी, और अगर कभी किसी की कोशिशों से दुनिया में ना भी कुछ खैर फैले तो इंशाल्लाह आखिरत का आपका अजर तो मौजूद है। ये सौदा करके कभी कोई हारा नहीं है। आयत 101 नमाज कसर। ये बीमार आपको ये डिवाइडर्स बहुत फायदा देंगे इंशाल्लाह। आगे जाकर आयतों के नंबर्स के साथ आप बाद में सर्च कर सकते हैं, और आपका ये दौरे कुरान आपका एक छोटा सा इंसाइक्लोपीडिया बन रहा है इस वक्त आयतों के टॉपिक्स के साथ साथ। फरमाया वह इजा दरफ तुम फिलर दी, जब तुम सफर पर जा रहे हो तो तुम पर नमाजों की कसर करने में कोई गुनाह नहीं, अगर तुम्हें डर हो कि काफिर तुम्हें सताएंगे, यकीनन कुफार तुम्हारे खुले दुश्मन है। सलातुल कसर के मसाइल हम नमाज नबी में भी पढ़ते हैं। मैं ख्वाहिश करूंगी कि जो हमारे साथी हैं वो नमाज नबी जो रिसेंटली हमने पढ़ी भी थी इसी साल के अंदर में, तो उसका लिंक दे दीजिए सलातुल कसर का साथियों को, ताकि वो इससे भरपूर फायदा उठा सके। इसके बाद सलातुल खौफ है आयत 102 से 103 में। वह इजा कुन तफी फकमत लहुमुस्सलाह, जब तुम इनमें हो और इनके लिए नमाज खड़ी करो तो चाहिए कि इनकी एक जमात तुम्हारे साथ अपने हथियार लिए खड़ी हो, फिर जब ये सजदा कर चुके हैं तो ये हटकर तुम्हारे पीछे आ जाएं, और वो दूसरी जमात जिसने जमात नमाज नहीं पढ़ी वो आ जाए और तेरे साथ नमाज अदा करे और अपना बचाओ और अपने हथियार लिए रहे। काफिर चाहते हैं कि कभी तुम अपने हथियारों से और अपने सामान से बेखबर हो जाओ तो वो तुम पर अचानक धावा बोल दें। हाँ, अपने हथियार उठा रखने में इस वक्त तुम पर कोई गुनाह नहीं जबकि तुम्हें तकलीफ हो, या बवजह बारिश के, या बसबब बीमार हो जाने के, और अपने बचाव की चीजें अपने साथ लिए रखो। साथ लिए रहो, यानी कभी बैग उठाना पड़ता है, कभी बच्चे को उठाकर नमाज पढ़नी पड़ती है। यकीनन अल्लाह ताला ने मुनकिरों के लिए जिल्लत की मार तैयार कर रखी है। फिर जब तुम नमाज अदा कर चुको तो उठते बैठते और लेटे अल्लाह का जिक्र करते रहो, और जब इत्मीनान पाओ तो नमाज कायम करो। यकीनन नमाज मोमिनों पर मुकर्रर वक्तों पर फर्ज है। दो जुमले बोल देती हूँ। सलातुल खौफ में आपने एहतमाम देखा जमात की नमाज का, अल्लाह के नबी के साथ साथियों का। सवाल यह है कि वो लोग जो आम हालात में भी जमात की नमाज का एहतमाम नहीं करते, उनका क्या बनेगा? और दूसरी बात, आयत का आखिरी हिस्सा जिसमें नमाज के बाद जिक्र अज़कार की बात है, तो ये वो वक्त होता है जब अल्लाह दुआएं कबूल करता है। हम उस वक्त दुआएं मांग रहे होते हैं, हालांकि वो जिक्र का वक्त है। दुआ नमाज के अंदर और जिक्र अज़कार नमाज के बाहर। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। आयत 104, अल्लाह की रहमत की उम्मीद दिलाई जा रही है हम सब को। एक वाक्या भी है और आगे कुछ और भी चीजें हैं। वला तहिनु फि इब्तिगाइल कौम, इन लोगों का पीछा करने से हारे दिल ना होकर बैठ जाओ। अगर तुम्हें बेआरामी होती है तो इन्हें भी तुम्हारी तरह बेआरामी होती है, और तुम अल्लाह से वो उम्मीदें रखते हो जो उम्मीदें इनको नहीं, और अल्लाह ताला दाना और हकीम है। पीछे आपने गज़वे बदर और उहद के तनाजर में ये बात सुनी थी, यहां सुन रहे हैं कि तुम नेकियां करने में, अल्लाह के बंदे बनने में मशक्कत में तकलीफ महसूस करते हो, तो लोग गलत कामों में और गुनाहों में भी तो थकते हैं। तुम्हें तो अल्लाह से उम्मीद है, उनको तो उम्मीद भी नहीं है। अल्लाह ताला हमें नेकियों में खपने वाला और उसमें अपने आप को खपाने वाला बना दे। आयत 105 से 113, अल्लाह के नबी की जिंदगी में एक वाकया हुआ था। कुछ लोगों ने अल्लाह के नबी को भी धोखा देने की कोशिश की और झूठा सच्चा इल्जाम किसी और पे लगाने की कोशिश की। अल्लाह के नबी कोई ऐसी बात कह देते जो आपके शान रिसालत के मुनाफी थी, अल्लाह ताला ने ये आयात नाजिल करके आपको मुझे जो इसमें पैगाम दिया है वो क्या है कि सिर्फ खानदान और बिरादरी के नाम पे बेजा हिमायत नहीं करनी किसी की। आइए देखते हैं अल्लाह के नापसंदीदा लोग और उनके रवैये हैं ये सारे। इन्ना अनज़लना इलैकल किताब बिल हक, यकीनन हमने आपकी तरफ हक के साथ अपनी किताब नाजिल फरमाई है, ताकि लोगों में इस चीज के मुताबिक फैसला कीजिए जिससे अल्लाह ताला ने आपको शनासा किया है, और खयानत करने वालों के हिमायती ना बनिए। आपके मेरे लिए भी यही बात है, ज़ात बिरादरी का नाम लेकर गलत को ठीक मत कीजिए, गलत को ठीक मत कहिए, और अल्लाह से बख्शिश मांगो। बेशक अल्लाह ताला बख्शिश करने वाला मेहरबानी करने वाला है। और इनकी तरफ से झगड़ा न करो जो खुद अपनी ही खयानत करते हैं। यकीनन दगाबाज गुनाहगार अल्लाह ताला को अच्छा नहीं लगता। वो लोगों से छुप जाते हैं लेकिन अल्लाह ताला से छुप नहीं सकते। वो रातों के वक्त जब के अल्लाह की नापसंदीदा बातों के खुफिया मशवरे करते हैं, इस वक्त भी अल्लाह उनके पास होता है। इनके तमाम आमाल को वो घेरे हुए है। अमल का नुक्ता नोट करें, रात की तन्हाइयों में या शहनाइयों में दो ही गुना है, कुछ तन्हाई में होते हैं गुना और कुछ शहनाइयों के नाम पे होते हैं। ये जान लीजिए कि अल्लाह भी इस महफिल में मौजूद है अपने इल्म और अपनी समात और अपनी बसारत के एतबार से। हाँ तो ये हो तुम लोग के दुनिया में तुमने इनकी हिमायत की, लेकिन अल्लाह ताला के सामने क़यामत के दिन इनकी हिमायत कौन करेगा, और वो कौन है जो इनका वकील बनकर खड़ा हो सकेगा? गलत हिमायत ना कीजिए, फेवरेटिज्म की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। जो शख्स कोई बुराई करे या अपनी जान पर जुल्म करे फिर अल्लाह से इस्तग़फार करे तो अल्लाह को बख्शने वाला मेहरबानी करने वाला पाएगा। किसके लिए ये जुमला? हिदायत के तालिब दिल के लिए। और जो गुनाह करता है इसका बोझ उसी पर है, और अल्लाह ताला बखूबी जानने वाला और पूरी हिकमत वाला है। और जो शख्स कोई गुनाह या खता करके किसी बेगुनाह के जिम्मे थोप दे, इसने बड़ा बुख्तान उठाया और खुला गुनाह किया। लिखिए इस आयत पे अमल की बात। कभी अपने किसी गलत काम को शोहर के नाम पे मत लगाइए, और बच्चों के नाम पे तो बिल्कुल ना लगाएं बेचारे। बहुत सारे लोग उन्हीं के नाम पे लगाकर करते मजे अपने हैं और नाम उनके लगा देते हैं। फरमाए वलौल फजलुल्लाहि अलैका व रहमा, अगर अल्लाह तआला का फजल व रहम तुझ पर न होता तो इनकी एक जमात ने तो तुझे बहकाने का कसद कर ही लिया था। मगर दरअसल ये तो अपने आप ही को गुमराह करते हैं, या आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह ताला ने आप पर किताब और हिकमत उतारी है और आपको वो सिखाया जिसे आप नहीं जानते थे, और अल्लाह ताला का तुझ पर बड़ा भारी फजल है। دعا کیجئے جیسے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عین وقت پہ ان لوگوں کی اصل بتا دی. اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں کی حقیقت دکھا دے جو در پردہ نقصان دینے کی کوششوں میں ہوتے ہیں اور ظاہر میں وہ فائدوں والے بنتے ہیں. آیت 108 میں آپ نے القلب الخائن کو دیکھا ہے, بد دیانت دل کون سا ہوتا ہے. جب یاد رکھیے کہ راہ جاتے کی ایک دوسرے کی ہمدردیاں لینے کے لیے ناموں اور اپنے خاندان اور برادریوں کو بڑا بنایا جاتا ہے تو یہ دل سامنے آتا ہے. تو ولا یستغفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون کہہ کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو جتھے بازیاں کرتے ہیں, یعنی اللہ کے نبی کے خلاف ایک گروپ بنا لیا تھا ان لوگوں نے اور سارے خاندان کے نام پہ اس گروپ میں ایک دوسرے کو ایڈ کرتے جا رہے تھے, تو اللہ میں جتھے بندیوں سے بچائے. یا ایک عمل کی بات لکھ لیجئے, گروپ ود ان گروپ کبھی نہیں پنپتا. ایسے لوگ خائن ہیں کہ جو کسی گروپ میں صرف اس وجہ سے آتے ہیں کہ یہاں کے کانٹیکٹس لے کر دوسروں کو دیں اور ادھر بھی لگے رہیں تاکہ یہاں کے لوگوں کو بھی اپنے پرسنل میسیجز دے دے کر اپنے پرسنل منصوبوں کے شامل کریں اور کبھی پیسے روپے بھی مانگ لیں. آج کے دور میں یہ سب باتیں بہت عام ہیں. اللہ تعالیٰ میں صرف اور صرف جس مقصد کے لیے ہم یہاں بیٹھے اسی پہ فوکس کرنے والا بنا دے. تو کون کرتے ہیں گروہ بازی؟ جو اسباب پرستی کرتے ہیں, عصبیت ہوتی ہے جن میں, اور مجرمین کی سرپرستی کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں. آگے آیت 114, خفیہ سرگوشیوں سے روکے. اسلام تو اتنا مہذب دین ہے کہ دو لوگوں کو کان میں بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا جبکہ کوئی تیسرا وہاں موجود ہو. تو دیکھے گا, لا خیر فی کثیر من نجواہم, ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں, ہاں بھلائی اس کے مشورے میں ہے. جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرنے کا یا صلح کرانے کا حکم کرے, اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے, اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے. نجوہ اجتماعی خیانت کو کہتے ہیں, اور ایسی چیزیں کانوں میں باتیں کرنا, ضرور اس کے اندر کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوتی ہے. پھر آیت 115 بڑی زبردست آیت ہے, یعنی سورۃ نساء کے عمود کی بات کر دوں تو بھی کوئی مبالغہ نہیں ہے, اور اللہ کے نبی کی حیثیت اس آیت سے بھی آپ کو دکھے گی. ٹاپک لکھیے, واضح ہدایت. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی, پوچھئے خود کو, پانچ پاروں میں اللہ کی مرضی سمجھ آ گئی, ہدایت اور گمراہی کا فرق پتہ لگ گیا, الحمدللہ. جتنے ایشوز آئے ہیں کم از کم اس کا تو ہمیں پتہ لگ گیا نا. الفاتحہ سے لے کے بکرا اور اس کے بعد آج تک کے سارے موضوعوں کو ذہن میں رکھیے, پتہ لگ گیا, یس پتہ لگ گیا, علم آ گیا, جی آ گیا, پہلے شعور نہیں تھا, شعور آ گیا, اب آگے کیا کرنا ہے؟ دو راستے ہیں, اللہ نہ کرے وہ راستہ ہو جس کا یہاں تذکرہ. دوبارہ آیت شروع سے سنتی ہیں, جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول اللہ کے خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے, ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہوگا. نولہ ما تولہ, اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے. جدھر جائیں گے ادھر جانا آسان لگے گا, ہدایت کی طرف آئیں گے یہ دن بدن آسان ہوگا, اور واپس گمراہیوں میں پلٹنا چاہیں گے تو آپ کے لیے وہی آسان ہوگا, اور آخر میں پھر اسے دوزخ میں ڈال دیں گے, وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے. یہ عرشوں کا مالک کہتا ہے جس نے آپ کو مجھے ہدایت کی یہ کتاب دی. تو اللہ تعالیٰ سننے کے بعد اب ہمیں سن نہ کر دے اور پھر عمل کے وقت ہم کورے کے کورے نہ ہوں. فلو چارٹ دیکھیے گا, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ پہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنا, اس کا کیا نقصان ہے؟ نمبر ایک, اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے, گیٹ آؤٹ, جاؤ, میں کوئی تمہاری مدد نہیں کرتا, پھر نہ مجھ سے دعائیں مانگنا, پھر مجھ سے نہ آ کر رونا دھونا کہ یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا, اور دوسری بات ہے کہ اس کو اللہ بہت بڑی سزا دیتا ہے, اپنے گلٹ میں مار دیتا ہے کہ میں کہتی کیا ہوں اور میں کرتی کیا ہوں. پھر آیت 116, شرک ظلم عظیم ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اسے اللہ تعالیٰ قطن نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے. ہر شرک کے علاوہ جو گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے, اور جو کہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے. اور وہ کیا ہوتی ہے؟ شرک پھر شہوات پہ لے جاتا ہے. لکھ لے, جہاں مشرک ہوگا وہاں شہوات کثرت سے ہوں گی. آیت 117 سے 121, شیطان کی کچھ چالیں جو اسی طرح شرک اور شہوات کے ساتھ چلتی جاتی ہیں. ای یدون من دونی ہی اللہ اناسا, ये तो अल्लाह ताला को छोड़कर सिर्फ औरतों को पुकारते हैं, उनकी देवियों की तरफ इशारा है। अक्सर बहुत फीमेल होते हैं, इसके ऊपर गौर कीजिएगा। और दरअसल ये सिर्फ सरकश शैतान को पूछते हैं, जिसे अल्लाह ने लानत की और इसने बेड़ा उठाया कि तेरे बंदों में से एक मुकर्रर शुदा हिस्सा लेकर ही रहूंगा और इन्हें राह से बहकाता रहूंगा। जरा शैतान की चालें तो देखिए, यह आपके मेरे और हमारी नस्लों के खिलाफ बोल रहा है। और बातिल उम्मीदें दिलाता रहूंगा और इन्हें सिखाऊंगा कि जानवरों के कान चीर दें, और इनसे कहूंगा कि अल्लाह ताला की बनाई हुई सूरत को बिगाड़ दें। सुनो, जो शख्स अल्लाह को छोड़कर शैतान को अपना रफीक बनाएगा, वो शरीक नुकसान में डूबेगा। वो इनसे जुबानी वादे करता रहेगा और सब्ज बाग दिखाता रहेगा, मगर याद रखो, शैतान के जो वादे इनसे हैं, वो सरासर फरेबकारियां हैं। ये वो लोग हैं जिनकी जगह जहन्नुम है, जहां से इन्हें छुटकारा न मिलेगा। क्या पता चला हिदायत के तालिब को कि अगर अभी भी नहीं छोड़ोगे तो ये बुरी कंपनी, बुरे साथी, शहवतों के तलबगार तुम्हें भी अपने साथ जहन्नुम के अंधेरों में ले जाएंगे। इस आयत में शैतान ने जो तब्दीली की बात की थी, इसको हदीस की रोशनी में सुन लीजिए। बुखारी की रिवायत है 4886, सूरत निसा 119 के तर्जमे के साथ देखेंगे तो आपको मतलब समझ आ जाएगा। अल्लाह ताला ने गूदने वालियों और गुदवाने वालियों यानी टैटूज बनाने और बनवाने वालियों पर लानत भेजी, चेहरे के बाल उखाड़ने वालियों कौन से भवें प्लकिंग, और हुसन के लिए आगे के दांतों में कुशादगी करने वालियों पर लानत भेजी है कि ये अल्लाह की पैदा की हुई सूरत में तब्दीली करती हैं। हदीस के लफ्ज ही काफी हैं, मुझे एक लफ्ज कहने की जरूरत नहीं इस वक्त। और अगर आपको भी ये मुश्किल लगता है क्योंकि आपका हिदायत की तरफ नया नया सफर है, तो पहले बुनियादी चीजों पे आइए, इंशाल्लाह ये भी आसान हो जाएगा। पहले अपने अकीदे, नमाज, रोजे और शहवात को पीछे कीजिए, अल्लाह एक से एक नेकी आपके नसीब में करता जाएगा। आयत 122 से 124, आमाल के बदले। वल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात, और जो लोग ईमान लाएं और भले काम करें, हम इन्हें इन जन्नतों में ले जाएंगे जिनके नीचे चश्मे जारी हैं, जहां ये अबदुल आबाद तक रहेंगे। ये है अल्लाह का वादा जो सरासर सच्चा है, और कौन है जो अपनी बात में अल्लाह से ज्यादा सच्चा हो, बोलिए कोई एक भी नहीं। हकीकत हाल ना तो तुम्हारी आरजू के मुताबिक है और न अहले किताब की उम्मीदों पर मौकूफ है। कौन सी हकीकत कि जन्नत में मैं जाऊंगी, कौन जाएगा जन्नत में, कौन जहन्नुम में, उसका अल्लाह ने असूल बता दिया। जो बुरा करेगा इसकी सजा पाएगा, और किसी को ना पाएगा जो और किसी को ना पाएगा जिसकी हिमायत और मदद अल्लाह के पास कर सके। जो ईमान वाला हो, मर्द हो या औरत, और वो नेक अमाल करे, यकीनन ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे, और खजूर की गुठली के शगाफ के बराबर भी इनका हक न मारा जाएगा। तो अगर आप छोटी सी भी नेकी कर रहे हैं तो अल्लाह उसको भी कबूल करेगा, और छोटे से छोटे गुनाह के ऊपर भी यही असूल मुंतबिक कीजिए। आयत 125 से 126, यकसू हनीफ बनना है। कैसे? वमन अहसनु दीना मिम्मन असलम वजहहु लिल्लाह, दीन के एतबार से इससे अच्छा कौन है जो अपने आप को अल्लाह के ताबे कर दे और हो भी नेकुकार। साथ ही यकसुई वाला इब्राहिम के दीन की पैरवी कर रहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी कर रहा हो। पहले तो दुआ कीजिए ये तीनों खूबियां अल्लाह मेरे अंदर डाल दे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना दोस्त बनाया, अल्लाह हमें भी अपनी दोस्ती नसीब फरमा। आसमान और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है, अल्लाह ताला हर चीज को घेरने वाला है। अल्लाह ताला हमें अपनी रहमतों में ले ले। आगे 127 से 130, इंसानी नफ्स की तंग दिली, बुखल और हिर्स की बात है, यानी फितरत का कुछ अमल बयान किया जा रहा है। वयस्तफ्तू नकफिन निसा, आपसे औरतों के बारे में हुक्म दरियाफ्त करते हैं। आप कह दीजिए कि खुद अल्लाह ताला इनके बारे में हुक्म दे रहा है, और कुरान की वो आयतें जो तुम पर इन यतीम लड़कियों के बारे में पढ़ी जाती हैं, जिन्हें इनका हक मुकर्रर हक तुम नहीं देते और इन्हें अपने निकाह में लाने की रग़बत रखते हो, और कमजोर बच्चों के बारे में, और इस बारे में कि यतीमों की कारगुजारी इंसाफ के साथ हो। तुम जो नेक काम करो, बिला शुबा अल्लाह ताला इसे पूरी तरह जानने वाला। पीछे औरत के बिगाड़ की बात थी, यहां मर्द के बिगाड़ की बात आ रही है। अगर किसी औरत को अपने शोहर की बददमागी और बेपरवाही का खौफ हो तो दोनों आपस में जो सुलह कर लें इस पर कोई गुनाह नहीं। सुलह बहुत बेहतर चीज है। तमा हर नफ्स में शामिल कर दिया गया, तमा हर हर नफ्स में शामिल कर दी गई है। अगर तुम अच्छा सलूक करो और परहेजगारी करो तो तुम जो कुछ कर रहे हो इस पर अल्लाह ताला पूरी तरह खबरदार है। यानी अल्लाह ने औरत को भी अपना हक लेने का तरीका सिखा दिया। तुमसे ये तो कभी न हो सकेगा कि तुम अपनी तमाम बीवियों में हर तरह अदल करो, वो तुम इसकी कितनी ही ख्वाहिश और कोशिश कर लो, इसलिए बिल्कुल ही एक तरफ माइल होकर दूसरी को उधर लटकती हुई न छोड़ दो। इस आयत को जरा सूरत निसा की इब्तदाई आयात से जोड़कर सुनिए, तो फिर दो क्या, तीन क्या, चार क्या तौबा करेगा इंसान के मैं चार क्या, मैं तो दो भी नहीं शादियां निभा सकता। इतनी सख्त शर्त है दो बीवियों को रखने वालों के लिए। और अगर तुम इस्लाह करो और तकवा अख्तियार करो तो ये बेशक अल्लाह ताला बड़ी मगफरत और रहमत वाला है। और अगर मियां बीवी जुदा हो जाएं तो अल्लाह ताला अपनी वुस्सत से हर एक को बेनियाज कर देगा। अल्लाह ताला वुस्सत वाला हिकमत वाला है। यानी अगर एक दरवाजा बंद हो गया तो कोई बात नहीं, हराम में पड़ने की बजाय बेहतर है कि अपने आप को अलग कर लो और अल्लाह से आगे जिंदगी में बेहतरी की उम्मीद रखो। हम एक छोटी सी कोशिश करके मायूस हो जाते हैं और नतीजा क्या निकलता है कि सारी जिंदगी के लिए कहते हैं अब इस लड़की को कभी खुशी ना मिलेगी, इस लड़के को कभी ना मिलेगी, तो ये भी हद से बड़ी हुई बात है। पारे का इख्तिताम शुरू होता है आयत 131 से 133 में। आप तीन दफा देखेंगे अल्लाह की बादशाहत और उसकी वुस्सतों का तस्करा है। तो आसमानों जमीन में सब अल्लाह का है। महसूस कीजिए, आप उठने से पहले अपने आप को रिलैक्स कीजिए। वलिल्लाहि मा फिस्समावाति वमा फिल अर्द, जमीन व आसमान की हर हर चीज अल्लाह ही की मलकियत में है। और वाकई हमने इन लोगों को जो तुमसे पहले किताब दिए गए थे और तुमको भी यही हुक्म दिया है कि अल्लाह से डरते रहो, अगर तुम कुफर करो तो याद रखो कि अल्लाह ताला के लिए है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में, और अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज और तारीफ किया गया है। अल्लाह के इख्तियार में आसमानों की सब चीजें और जमीन की भी, और अल्लाह ताला कारसाज काफी है। अगर इसे मंजूर हो तो ऐ लोगो वो तुम सबको ले जाए। सोचिए जरा, अल्लाह ना करे अगले सालों में कोई ऐसा वायरस आ जाए सब मरते जाए। और रात को जो गौर व फिक्र था मेरा, उसमें एक ये भी हदीस जहन पे थी कि क़यामत के करीब एक हवा चलेगी, हर ईमान वाला अपने ईमान की निस्बत मरता जाएगा, ऐसे सुला देगी लोगों को, मौत आएगी एक। तो आज तो बिल्कुल हालात ऐसे ही हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं सबको मारना या सबको एक साथ ले जाना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह ताला इस पर पूरी कुदरत रखने वाला, बस ये देखो कि मरते वक्त कर क्या रहे थे। जो शख्स दुनिया का सवाब चाहता हो तो याद रखो कि अल्लाह ताला के पास तो दुनिया और आखिरत दोनों का सवाब मौजूद है, और अल्लाह ताला बहुत सुनने वाला और खूब देखने वाला है। अल्लाह में दुनिया और आखिरत का हसनात आ फरमाए। आयत 135, अदल की गवाहियां देनी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कव्वामीन, ए ईमान वालो अदल इंसाफ पर मजबूती से जम रहने वाले, मजबूती से जम जाने वाले और खुशनुदी रब के लिए सच्ची गवाही देने वाले बन जाओ, गो वो खुद तुम्हारे अपने खिलाफ हो या अपने माँ बाप के या रिश्तेदार अजीजों के। वो शख्स अगर अमीर हो या फकीर हो तो दोनों के साथ अल्लाह को ज्यादा ताल्लुक है, इसलिए तुम ख्वाहिश नफ्स के पीछे पड़कर इंसाफ न छोड़ देना। और अगर तुमने कच बयानी की या पहलू तही की तो जान लो कि जो कुछ तुम करोगे अल्लाह ताला इससे पूरी तरह बाखबर है। अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह की तौफीक दे। और आयत 136 से 137, गुमराही में कौन, अपने हिदायत की तलब के सफर को जारी रखते हुए सुनिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनु आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, देखिए ईमान वालों को दोबारा ईमान लाने की दावत दी जा रही है। यूनिक आयत है, दो दफा लफ्ज आमनु अराब के फर्क के साथ मौजूद है। ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला पर और इसके रसूल पर और इस किताब पर जो इसने अपने रसूल पर उतारी है और इन किताबों पर जो इससे पहले नाजिल फरमाई हैं ईमान लाओ। जो शख्स अल्लाह ताला से और इसके फरिश्तों से और इसकी किताबों से और इसके रसूलों से और क़यामत के दिन से कुफर करे तो बहुत बड़ी दूर की गुमराही में जा पड़ा। गिनिएगा कितनी ज्यादा गुमराहियों का इकट्ठा तस्करा। जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और फिर गए, फिर ईमान लाकर फिर कुफर किया, फिर अपने कुफर में भड़ गए, यकीनन इन्हें ना बख्शेगा अल्लाह और इन्हें ना हिदायत की राह सुझाएगा। लिखेगा इस जुमले को, आंख मिचोली है ईमान और हिदायत की। अगर आपके दिल में हिदायत की तलब आ गई है तो कोई बात नहीं, फिर गुनाह औरत इट्स ओके। लेकिन ये बात है मेरे और आप उन लोगों जैसों के लिए जो कई कई साल से सुनने के बाद भी किसी एक अमल पे अपने आप को जमा ही नहीं पाते। देखिएगा फ्लो चार्ट, इन्नल्लज़ीना आमनु सुम्मा कफरु सुम्मा आमनु, इसका नाम ही मैंने रखा हुआ आंख मिचोली। हिदायत ईमान वालों को मिलती है, कौन से वाले? वो ईमान जो दिलों में साबित और मुस्तकर रहता है, करार पकड़ा हुआ ईमान। हिलती जुलती गाड़ी में तो आपको भी चक्कर आते हैं, हिलती हुई प्लेट के अंदर ग्लास आप रखेंगे तो वो भी करेगा। ईमान ऐसे हिलते जुलते दिल में हिदायत कैसे रहे? वो ईमान नहीं जो दिलों में आरजी तौर पर रहता है तो हिदायत पे इस्तकामत की दुआ करते हैं। और अब आखिरी आते हैं मुनाफकत से मुतल्लिक। पारे का शुरू था वल मुहसनात से, और वहां अल्लाह ताला ने इस्लाम का मिजाज बताया कि शरीयत बमानी शहवत। पारे के एंड पे निफाक है। लिखे, शहवत में पड़ने वाला खुद को निफाक से नहीं बचा सकता, कहीं ना कहीं अपनी इज्जत और शर्म रखने के लिए नाम का इस्लाम तो फिर दिखाना ही पड़ता है। आइए देखते हैं टॉपिक क्या है कि इज्जत तो अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनीन के लिए है। बशरिल मुनाफिकीन बिअन्न लहुम अज़ाबन अलीमा, मुनाफिकीन को इस बात की खबर दे दो। किस बात की? कि इनके लिए दर्दनाक अजाब यकीनी है, जिनकी हालत ये है कि मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते फिरते हैं। मैं ऐसा सब बोल रही हूँ, 1-2 लिख लें। ये सारी अलामतें इस बात की दलील है कि आप निफाक में पड़ चुके हैं और शहवत आपकी अब बढ़ती हुई निफाक में बदल रही है। क्या इनके पास इज्जत की तलाश में जाते हैं? यानी इनके रंग ढंग में रचेंगे तो बड़े बाइज्जत कहलाएंगे, फेमस हो जाएंगे, मॉडल बन जाएंगे। तो याद रखें कि इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह ताला के कब्जे में है, और अल्लाह तुम्हारे पास अपनी किताब में ये हुक्म उतार चुका कि जब तुम किसी मजलिस वालों को अल्लाह ताला की आयतों के साथ कुफर करते और मजाक उड़ाते हुए सुनो तो इस मजमे में इनके साथ कभी न बैठो जब तक कि वो इसके अलावा और बातें न करने लगे, वरना तुम भी इस वक्त इन्हीं जैसे हो। यकीनन अल्लाह ताला तमाम काफिरों और सब मुनाफिकीन को जहन्नम में जमा करने वाला। नियत कीजिए, ऐसी महफिल में नहीं बैठूंगी जहां अल्लाह की सुन्नतों का मजाक हो, अल्लाह की बातों का मजाक हो, नबी की सुन्नतों का मजाक हो। और दुख के साथ कहूं कि आज तुम्हारे मुसलमानों की अपनी शादियां ब्याह इस पे आ गए, क्या करें, किधर जाएं, अपने प्यारों को छोड़ें, क्या करें? देखिए, प्यारों का प्यार बुलाता है लेकिन अल्लाह की नाफरमानी रोकती है। कभी इसको समझिएगा, क्यों नहीं आप वो फंक्शंस करते जिसमें सारे प्यार वाले भी हों और अल्लाह वाले भी हों? क्यों शैतानी महफिलों में जाकर हम अपने प्यारे बच्चों की खुशियों को मनाते हैं? अल्लाह ताला कहता है नहीं बैठना ऐसे लोगों के साथ। और जो ये हिजरत करेगा, ये करेगा, अल्लाह उसको हिदायत के एक स्टेप से उठाकर दूसरे स्टेप पे ले जाएगा। अल्लाह ताला मुझे आपको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। और आप देखिए कि जहां कुफर होता है, मजाक होता है, जरा सा सुनिए और इसके ऊपर गौर व फिक्र करते हुए अपने आप को आगे से आगे लेकर चले तो आपको पता चलेगा कि जिन लोगों के साथ दुनिया में रहेंगे वहां भी उधर होंगे। आखिरी इसे पे गौर कीजिए कि अल्लाह सब को फिर ऐसे कुफार और मुनाफिकीन को जहन्नुम में जमा करने वाला है। जैसे दुनिया के टेस्ट होते हैं आखिरत में वैसे ही होगा, सेम पीपल लिव टुगेदर वाली बात है। ये लोग तुम्हारे इंजाम कार का इंतजार करते रहते हैं, फिर अगर तुम्हें अल्लाह फता दे तो ये कहते हैं क्या हम तुम्हारे साथी नहीं थे, यानी आपके फायदों के बस हरीस हैं। और अगर कुफार को थोड़ा गलबा मिल जाए तो इनसे कहते हैं हम तुम पर गालिब ना आने वाले थे, और क्या हमने तुम्हें मुसलमानों के हाथों से ना बचाया था? बस क़यामत में खुद अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा और अल्लाह ताला काफिरों को ईमान वालों पर हरगिज़ राह ना देगा। ये तो थी मजलिसों में होने वाली बातों का निफाक, खुशियों, दावतों, पार्टियों और इस तरह के नाम पर और बेदीन महफिलों पे, बिदअत और शिर्क वाली महफिलों पे। आप पारे के आखिर में आपको तन्हा करके अल्लाह ताला आपकी नमाजों पे गौर व फिक्र की दावत देता है। आयत 142 से 145, नमाजों में सुस्ती दिखावा और रियाकारी निफाक की अलामत। कैसे? इन्नल मुनाफिकीन युखादिउन अल्लाह वहुवा खादिउहुम, बेशक मुनाफिक अल्लाह ताला से चालबाजियां कर रहे हैं और वो इन्हें इस चालबाजी का बदला देने वाला। और जब नमाज को खड़े होते हैं तो बड़ी काहली की हालत में खड़े होते हैं, सिर्फ लोगों को दिखाते हैं और याद इलाही तो यूं ही सी बराए नाम करते हैं। अपनी नमाज को चेक कीजिए, वो दरमियान में ही मुअल्लक यानी हैंगिंग डगमगा रहे हैं, शेकी ना पूरे इनकी तरफ ला इलाहा उलाई और न सही तौर पर उनकी तरफ वला इलाहा उलाई। और जिसे अल्लाह तआला गुमराही में डाल दे तो तू इसके लिए कोई राह ना पाएगा। क्या आज अक्सर दरमियाने तबके के लोगों की यही हालत नहीं हो गई? ना पूरे दीनदार, ना पूरे दुनियादार, ना पूरे दीन पे चलने वाले, ना पूरे गुनाहों पे चलने वाले। मस्जिदों में आते हैं, मजबूरी है, शौक है, तलब है, तो फिर दूसरी जगहों पे जाना पड़ता। और आगे देख लीजिए 144:5 में वजह फिर दोबारा वही है जो पीछे भी आ गई। क्या ईमान वालों, मोमिनों को छोड़कर कुफार को दोस्त ना बनाओ। क्या तुम ये चाहते हो कि अपने ऊपर अल्लाह ताला की साफ हुज्जत कायम कर लो? मुनाफिक तो यकीनन जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में जाएंगे। इन्नल मुनाफिकीन फिद्दर्किल असफल मिनन नार। और आप जानते हैं तन्नूर में सबसे नीचे सबसे ज्यादा गर्मी होती है। उस बड़े से तन्नूर को जहन में ले आइए। हाविया लफ्ज लिखिए, ये सबसे निचला दर्जा क्या है? हाविया। और हाविया में जाएंगे हवा परस्त, और हवा परस्तों को कहते हैं शहवत परस्त। ये था आपका आज का पारा, जो दुनिया में शरीयत के मुकाबले में शहवत को मानने वाले वो हाविया में गिरेंगे, ख्वाहिश परस्त। नामुमकिन है कि इनका तू कोई मददगार पाए। अब तो जान ही निकल गई। देखिए ना, अपने आप को उस जगह पे लेके जाए ना कि जहां खड़ा है कोई ऐसी जगह पे, तो फिर क्या हुआ? डर गए, खौफ आ गया, जहन्नुम में नहीं जाना, सबसे निचले दर्जे में नहीं जाना, तो दुनिया में बुरी कंपनी छोड़नी होगी। तब अगली आयत जो पारे की आखिरी आयतों में से एक आयत, निफाक से बचने का चार नुकाती नुस्खा, कुछ बातें 146 में देखिएगा। तौबा, इस्लाह और इखलास नियत। इल्लल्लज़ीना ताबू वस्लहू, हाँ जो तौबा कर ले और इस्लाह कर ले और अल्लाह ताला पर कामिल यकीन रखें और खालिस अल्लाह ही के लिए दीनदारी करें, तो ये लोग मोमिनों के साथ हैं। अल्लाह ताला मोमिनों को बहुत बड़ा अजर देगा। अपनी चेकलिस्ट खुद बनाइए, कोई आपकी नहीं बनाएगा। आपको वेलकम रमजान में कुछ चेकलिस्टें दी गई थी, उन्हीं को खोल लीजिए। नंबर एक, तौबा। हर छोटे बड़े जाहरी बातनी कबीरा सगीरा गुना पे तौबा, क्योंकि आप हिदायत की तरफ चल पड़े हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहां बैठे बैठे तौबा कीजिए, अल्लाह तो ऐसे ही कबूल करेगा कि बारिश शुरू हो जाती है और मूसा को नहीं पता चलता कि गुनाहगार ने तौबा कर ली है। फिर दूसरी बात, इस्लाह कीजिए आज से, रिफॉर्म योर सेल्फ। जिस जिस चीज में आपको अपनी गलती दिख रही है फौरन इस्लाह। और तीसरी बात, अल्लाह पे कामिल यकीन करेगा। आई कैन कम आउट ऑफ सिंस, मैं शहवत से निकल सकती हूँ, मैं बेहयाई से निकल सकती हूँ, मैं हराम से निकल सकती हूँ। और फिर एक दिन आएगा खालिस अल्लाह के लिए दीनदार हो जाएंगे, फिर इखलास भी आ जाता है। टाइम लगता है, एक दिन में नहीं सब होगा, डोंट वरी। तो फिर आपको अल्लाह मोमिनों का साथ देगा और मोमिन होंगे जन्नतों में, आला दर्जों में, जिसका जितना दर्जा उतनी बड़ी जन्नत। और आखिरी आयत को अपने दिल पे लीजिएगा 147, अल्लाह ताला बेहतरीन कदरदान है। मा यफ़लुल्लाहु बियज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। इस प्यार को, अल्लाह के मोहब्बत नामे को, इस लव मैसेज को मेरे दिल पर महसूस कीजिए। ये नेकों को नहीं मिल रहा, ये बदों को मिल रहा है, ये अपने आप को बदलने वालों की ख्वाहिश रखने वालों को मिल रहा है। और वो क्या है? अल्लाह ताला तुम्हें सजा देकर क्या करेगा? अल्लाह ने तुम्हें आग में जाने के लिए नहीं बनाया। कोई माँ अपने बच्चे को इसलिए तो नहीं पैदा करती और पालती पोसती कि उसको आग में डाल दे, तो अल्लाह ताला कैसे डालेगा? दो शर्तें हैं बस। अगर तुम शुक्रगुजारी करते रहो और बा ईमान रहो तो अल्लाह ताला बहुत कदर करने वाला और पूरा इल्म रखने वाला। ये है आपके मेरे करने के दो काम। आपको मुझे ये करना है।
शुक्रगुजार बने। देखिए इस आयत पे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, इतना बड़ा फोल्डर है मेरे पास तफसीर का, और अभी आज जब हमने इसको किया था आयत आयत में बहुत डिटेल से किया था, सुन लीजिए उसको। अभी इतनी बात है, पहले शुक्र फिर ईमान। उसका तरीका क्या है? बैठे बैठे नेमतों को याद करें, मुझे अल्लाह ने क्या क्या दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी नेमत है। इस वक्त कदर करो नेमतों की। मैं जिस जिस सोच से गुनाह करती हूं वो अज़ाब मुझे किसने दिए? लिखे, जुबान, आंख, कान, दिल, शर्मगा किसकी दी हुई है? क्या उसकी दी हुई चीज की ना कदरी करूंगी ना शुक्री करूंगी तो फिर वो मुझे जन्नत देगा? नहीं। यहां बैठ के कहिए कि अल्लाह मैं कदरदान हो गई, और अल्लाह की दी हुई नेमतों को, उसकी जो अल्लाह ताला ने आप पे नवाजे किए ना, उसको इस वक्त एक लिस्ट की सूरत में महसूस करें। और फिर आमन तुम कहिए, बोलिए आमन तो बिल्ला, अल्लाह मैं ईमान ले आई। और फिर आखिरी बातें आपके लिए हैं अलामा इकबाल के अशार की सूरत में, इसकी उम्मीदें कलील, इसके मकासिद जलील, इसकी अदा दिल फरेब, इसकी निगाह दिल नवाज, नरम दमे गुफ्तगु गरम दमे जुस्तजो, रस्म हो या बज्म हो पाक दिलो पाक बास। ये था पारा नंबर 5 आपका। दिल भी पाक करना है इस सफर में, जिस्म को भी पाक करना है, बज्म को भी पाक करना है, महफिलों को, पार्टियों को, और अपनी रज्म को भी पाक करना है। और इसके लिए जरूरत है इस बात की कि हम अल्लाह की तरफ पलट आएं। उम्मीदें छोटी कीजिए, बहुत लंबे ख्वाब देखने की ख्वाहिश में हराम को हलाल ना कीजिए। शहवत होती ही वहां जहां उम्मीदें बहुत होती हैं। अल्लाह ताला आपसे मुझसे राजी हो। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व तूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तूब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ए हमारे रब, तू हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है, और हम पर रहमत और मगफरत की नजर फरमा, और बेशक तू बहुत तौबा कबूल फरमाने वाला मेहरबान है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।